आगे सबक देखिए भाई, व इन काला कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु फहुवा हुर्रुन बादा गदिन, औ काला कुल्लु ममलूकिन ली फहुवा हुर्रुन बादा गदिन, वलहु ममलूकुन फश्तरा आखरा सुम्मा जाअ बादु गदिन अतकल्लदी फी मिल्किही यौमा हलफा। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर खावन अपनी दो बीवियों में से एक गैर मुअय्यन को तलाक दे, मसलन यूं कहता है खावन कि इहदाकुमा तालिकुन, तुम दोनों में से एक को तलाक है, और फिर खावन के बयान करने से पहले ही इन दो बीवियों में से एक का इंतकाल हो गया, तो दूसरी बीवी जो है वो तलाक के लिए मुतायन हो जाएगी। वजह यह है कि एक बीवी का तो इंतकाल हो चुका है, तो वो तलाक का महल ही ना रही, उसको बयान ही नहीं किया जा सकता, तो दूसरी बीवी तलाक के लिए मुतायन हो गई। इसी तरह अगर एक शख्स की दो बीवियां हैं और उनसे वो यही लफ्ज कहता है कि इहदा कुमा तालिकुन, और फिर बाद में बयान से पहले वो इन दो बीवियों में से किसी एक के साथ सोहबत कर लेता है, तो इसके सोहबत करने का मतलब यह है कि इस बीवी के अंदर वो अपनी मिलके निकाह को बाकी रखना चाहता है, तो दूसरी बीवी जो है वो तलाक के लिए मुतायन हो जाएगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स की दो बांदियां हैं और वो उनसे कहता है इहदाकुमा हुर्रतुन, कि तुम दोनों में से एक आजाद है, तो अब आका ने इन दो बांदियों में से एक गैर मुअय्यन को आजाद किया है और उसके लिए बयान चाहिए, बाद में आका ने बयान से पहले इन दो बांदियों में से किसी एक के साथ सोहबत कर ली, तो साहिबैन फरमाते हैं कि मालूम हुआ कि इस बांदी के अंदर आका अपनी मिल्कियत बाकी रखना चाहता है। वजह यह कि आजाद होने के बाद तो बांदी आका के लिए हलाल नहीं रहती, और आका ने इन दोनों में से एक को आजाद किया है, तो दोनों में से एक गैर मुअय्यन आका पर हराम हो चुकी है और एक हलाल है, अब उसके लिए बयान चाहिए था, तो आका का यह वती करना उसके लिए बयान बन जाएगा। मालूम हुआ यह बांदी जिसके साथ आका ने सोहबत की है इसके अंदर आका ने अपनी मिल्कियत बाकी रखी है, और दूसरी बांदी आजादी के लिए मुतायन है वो आका पर हराम हो चुकी है। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बांदियों के मसले में एक बांदी के साथ आका का सोहबत कर लेना इसको बयान करार नहीं दिया जा सकता। वजह यह कि आका ने जिस बांदी को आजाद किया है वो है गैर मुअय्यन, और जिस बांदी के साथ आका सोहबत कर रहा है वो है मुअय्यन, तो इस मुअय्यन को उस गैर मुअय्यन के लिए बयान करार नहीं दिया जा सकता। चुनांचे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मजहब के मुताबिक अब भी ये दोनों बांदियां आका के लिए हलाल हैं, लेकिन साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इस मसले पर फतवा नहीं दिया जाएगा। वजह यह कि इमाम साहिब मसले की इंतहाई गहराई में चले गए, इतनी गहराई में चले गए कि आम लोगों के लिए, आम उलमा के लिए उस गहराई तक पहुंचना मुमकिन न रहा, तो लिहाजा लोग इमाम साहिब पर एतराज करेंगे कि इमाम साहिब ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया। जब आका ने इन दो बांदियों में से गैर मुअय्यन को आजाद किया है तो अब दोनों आका के लिए हलाल नहीं हो सकती, दोनों में से एक को आका के लिए हराम होना चाहिए, लेकिन इमाम साहब क्या फरमा रहे हैं, दोनों बांदियां आका के लिए हलाल हैं, तो लोग तो एतराज के लिए मौका ढूंढते हैं, लिहाजा इमाम साहब के कौल पर फतवा नहीं दिया जाएगा। और फिर साहिब हिदाया ने वजाहत भी फरमाई इमाम साहब के मजहब की, और फरमाया कि यहां दो सूरतें बनती हैं, या तो दो बांदियों में से एक के अंदर आजादी आ चुकी है या अभी आजादी आई ही नहीं। अगर ये कहें कि आजादी आ चुकी है तो फिर दोनों बांदियां कैसे हलाल हो सकती हैं, और अगर यह कहा जाए कि अभी किसी एक बांदी के अंदर भी आजादी नहीं आई, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपने एक आकिल बालिग शख्स के कौल को लघव करार दे दिया, बेकार करार दे दिया, उसका कोई फायदा ही नहीं। आका ने तो दोनों में से गैर मुअय्यन को आजाद किया है, लेकिन आपने उसके कलाम को लग्व करार दे दिया, और हालांकि आकिल बालिग के कलाम को वैसे ही लग्व करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई, तो फिर साहिब हिदाया ने दोनों सूरतों को लेकर जवाब दिया कि यह भी कहा जा सकता है कि यहां आजादी नाजिल हो चुकी है और यह भी कहा जा सकता है कि अभी यहां आजादी नाजिल ही नहीं हुई, अभी आजादी आई ही नहीं है। तो लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आजादी अभी यहां नाजिल ही नहीं हुई, क्योंकि आजादी के लिए बयान चाहिए था और जब तक बयान नहीं आया तब तक आजादी भी नहीं आएगी। यह इसी तरह है जैसे कोई शख्स अपने गुलाम की आजादी को शर्त के साथ मुअल्लक करे कि गुलाम से कहे अगर तुमने फलां काम किया तो तुम आजाद हो, तो जब तक वो गुलाम वो काम नहीं करेगा तब तक वो आजाद नहीं होगा। तो यहां पर भी जब तक बयान नहीं आएगा तब तक कोई बांदी भी आजाद नहीं बई। मालूम हुआ आजादी अभी आई ही नहीं क्योंकि बयान नहीं आया। और दूसरी सूरत है कि यूं भी कहा जा सकता है कि आजादी आ चुकी है लेकिन गैर मुअय्यन के अंदर आई है, लेकिन गैर मुअय्यन के अंदर आई है। तो लिहाजा ये आजादी उस हुक्म के हक में तो जाहिर होगी जिसको गैर मुअय्यन कबूल कर लेता है, लेकिन उस हुक्म के हक में ये आजादी जाहिर नहीं होगी जिसे गैर मुअय्यन कबूल नहीं करता। अब देखो एक है बै और एक है वती। याद रखो बै जो है वो गैर मुअय्यन की भी जायज है क्योंकि बै जो है वो एक अकद का नाम है, वो एक मानवी चीज है। मेरे और आपके दरमियान ईजाब और कबूल हो गया तो बै हो गई, लेकिन इस बै की शक्ल हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि बै कोई हिस्सी चीज नहीं है जो आंखों से नजर आए, बल्कि वो एक मानवी चीज है, वो दो अफराद के दरमियान मुआहदे और अकद का नाम है भाई। तो बै एक मानवी चीज है, वो आंखों से नजर नहीं आती। और याद रखो गैर मुअय्यन की बै भी हो सकती है। मसलन एक शख्स के दो गुलाम हैं और वो इन दोनों गुलामों में से गैर मुअय्यन को दूसरे शख्स के हाथ फरोख्त करता है और यूं कहता है कि इन दोनों गुलामों में से एक गुलाम मैंने आपको 10 लाख रुपए के इवज फरोख्त कर दिया, जिस गुलाम को भी आप इन दोनों में से लेना चाहें। और वो मुश्तरी कहता है मुझे कबूल है। तो देखो बै हो गई और गैर मुअय्यन गुलाम के अंदर बै हुई है, तो मुश्तरी इन दोनों गुलामों में से जिस गुलाम को भी लेना चाहे ले सकते है। मालूम हुआ बै जो है वो ऐसा अकद है जिसे गैर मुअय्यन भी कबूल कर लेता है। इसमें चीज का मुअय्यन होना जरूरी नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में जो वती है, वती वो तो फेल मानवी नहीं है, वो तो फेल हिस्सी है जो आंखों से नजर आता है, जिसका मुशाहदा होता है। लिहाजा वती जो है वो कभी भी गैर मुअय्यन के अंदर नहीं हो सकती। वती जब भी की जाएगी वो किसी मुअय्यन के अंदर की जाएगी। तो लिहाजा वती ऐसा फियल है जिसे गैर मुअय्यन कबूल नहीं करता और बै ऐसी चीज है जिसे गैर मुअय्यन भी कबूल कर लेता है। तो यहां बात चल रही थी कि यहां पर आजादी आ चुकी है लेकिन गैर मुअय्यन के अंदर आई है, लिहाजा यह आजादी उस चीज के जरिए जाहिर हो सकती है जिसे गैर मुअय्यन कबूल कर ले, जैसे कि बै है। मसलन आका ने अपनी इन दो बांदियों में से एक बांदी को बेच दिया, तो आका का यह बेचना बयान बन जाएगा। मालूम हुआ आजादी के लिए दूसरी बांदी मुतायन है भाई। तो यह आजादी नाजिल हो चुकी है एक गैर मुअय्यन के अंदर, तो इसके लिए ऐसे फेल को बयान बनाया जा सकता है जिसे गैर मुअय्यन कबूल कर लेता है, जैसे बै है। तो बै इसके लिए बयान बन सकती है, लेकिन वती जो है, वती वो तो हमेशा मुतायन के अंदर होगी, तो वती को इस गैर मुअय्यन आजादी के लिए बयान करार नहीं दिया जा सकता, तो वती बयान नहीं बनेगी, लेकिन बै जो है वो बयान बन जाएगी भाई। बात समझ में आ गई। और नी साहिबैन ने इस बांदी के मसले को कियास किया था बीवी के मसले पर कि जैसे दो बीवियों में से गैर मुअय्यन को तलाक दी जाए तो फिर एक बीवी के साथ जब सोहबत कर लेगा तो दूसरी बीवी तलाक के लिए मुतायन हो जाएगी। तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने इमाम साहिब की तरफ से कि बांदी के साथ जो सोहबत की जाती है वो कजाए शहवत के लिए होती है, वो शहवत पूरी करने के लिए है, जबकि बीवी से जो सोहबत की जाती है वो औलाद के लिए की जाती है, क्योंकि निकाह का मकसद ही क्या है कि वती हलाल हो जाए और बीवी से औलाद हासिल हो गई। तो तो बीवी के साथ जो सोहबत की जाती है उसका मकसद और है और बांदी के साथ जो सोहबत की जाती है उसका मकसद और है। लिहाजा आप बांदियों के मसले को तलाक के मसले पर कयास नहीं कर सकते। जब खावन ने दो बीवियों में से गैर मुअय्यन को तलाक दी और फिर उसके बाद बयान से पहले वो इन दोनों में से एक के साथ सोहबत करता है, मालूम हो वो इस बीवी से औलाद चाहता है, क्योंकि ये वती कहां तक पहुंचाने वाली है? औलाद तक। लिहाजा मालूम हुआ इसके अंदर वो अपनी मिल्कियत को बाकी रख रहा है ताकि औलाद हासिल हो और औलाद का नसब साबित हो सके। औलाद का नसब साबित हो सके तभी औलाद की हिफाजत होगी, और अगर औलाद का नसब ही साबित नहीं है फिर तो बच्चा महफूज नहीं है, कोई उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नहीं लेगा, फिर तो बच्चा जाया हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। जबकि बांदी के साथ जो सोहबत की जाती है वो तो सिर्फ शहवत पूरी करने के लिए है। लिहाजा आप बांदी के मसले को बीबी के मसले पर कयास नहीं कर सकते। भाई बात समझ में आ गई। और उसके बाद फिर आपने मसला पढ़ा कि आका ने अपनी बांदी से कहा कि अगर पहला बच्चा जिसे तुमने जन्म दिया अगर वो लड़का हुआ तो तुम आजाद हो, और बांदी ने फिर एक लड़के और लड़की को इकट्ठे जन्म दिया। अब एक सूरत यह है कि किसी को भी इलम नहीं है कि लड़का पहले पैदा हुआ है या लड़की पहले पैदा हुई है, तो इस सूरत में मतन के अंदर मसला जिक्र हुआ था कि निसफ वो बांदी आजाद हो जाएगी और निसफ उसकी बेटी आजाद हो जाएगी, जबकि लड़का उसी तरह गुलाम रहेगा। वजह यह कि यहां पर दो सूरतें बनती हैं कि हो सकता है लड़का पहले पैदा हुआ हो और हो सकता है लड़की पहले पैदा हुई हो। अगर लड़का पहले पैदा हुआ है तो लड़के के पैदा होते ही मां आजाद हो गई और उसके बाद आजाद मां ने बेटी को जन्म दिया तो बेटी भी आजाद हुई। तो अगर लड़का पहले पैदा हो तो मां भी आजाद और बेटी भी आजाद, और अगर लड़की पहले पैदा हुई है तो मां भी बांदी है और बेटी भी बांदी है। तो यहां दो सूरतें बनती हैं, एक सूरत में मां और बेटी दोनों आजाद और एक सूरत में मां और बेटी दोनों बांदियां हैं। तो हमने दरमियानी सूरत को इख्तियार किया, हमने यह भी नहीं कहा कि दोनों आजाद हैं, हमने यह भी नहीं कहा कि दोनों उसी तरह बांदियां हैं, बल्कि हमने कहा निसफ निसफ दोनों का आजाद है, निसफ मां आजाद और निसफ उसकी बेटी आजाद है। भाई ये एक सूरत थी। तो मतन के अंदर ये मसला इसी तरह जिक्र है, लेकिन मैंने आपको बतलाया कि शम्सुल अइमा इमाम सरखसी रहमहुल्लाह किसानियात के हवाले से फरमाते हैं कि किसानियात के अंदर इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि ये इस मसले का जवाब नहीं है कि अगर किसी को भी इलम ना हो तो निसफ मां आजाद हो जाए और निसफ लड़की आजाद हो जाए, यहां ऐसा नहीं होगा। बल्कि जब शर्त के वजूद का पता न चल रहा हो कि शर्त पाई गई है या शर्त नहीं पाई गई, तो फिर इस सूरत के अंदर वो जो मुनकिर होता है उसके जिम्मे कसम होती है, यानी यहां आका को कसम दी जाएगी कि वो कसम खाए कि उसे इलम नहीं है कि लड़का पहले पैदा हुआ है, तो उसके अदम इलम पर उसको कसम दी जाएगी। तो अगर वो कसम खा लेता है तो मां भी बांदी और लड़की भी बांदी, और अगर वो कसम से इनकार कर देता है तो इनकार करने का मतलब है वो एतराफ कर रहा है लड़के के पहले पैदा होने का। लिहाजा इस सूरत में मां भी आजाद हो जाएगी और लड़की भी आजाद हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहां किसानियात का जिक्र आया। याद रखना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताबें दो किस्म पर हैं, कुछ को जाहिरे रिवायत कहते हैं और बाकी को नवादिर कहते हैं। जाहिरे रिवायत आप जानते हैं छह किताबें हैं भाई, जामे सगीर जामे कबीर, सियरे सगीर सियरे कबीर, मबसूत और ज्यादात। तो ये किताबें जो हैं जाहिरे रिवायत कहलाती हैं, फिर इनकी रिवायत बड़ी जाहिर है। वजह यह कि इन किताबों को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से नकल करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, यानी तवातुर के हद तक पहुंचे हुए हैं। लिहाजा मालूम हुआ यह कतई तौर पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताबें ही हैं, इनमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं हुआ। जबकि बाकी किताबें जो हैं वो इस तरीके पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से मनकूल नहीं है, उनको नकल करने वाले इतने ज्यादा नहीं है, तो लिहाजा वो नवादिर कहलाती हैं। भाई नवादिर जमा है नादिर उनकी या नादिरतुन की। भाई नादिरुन की जमा भी नवादिर आती है और नादिरतुन की जमा भी नवादिर आती है। तो नवादिर जो हैं उनके फिर कई नाम हैं, बाज जो हैं वो केसानियात कहलाती हैं, बाज जो हैं वो जुर्जानियात कहलाती हैं, बाज जो हैं वो रकियात कहलाती हैं, बाज जो हैं वो हारूनियात वगैरह कहलाती हैं। केसानियात, जुर्जानियात, हारूनियात, मरकियात वगैरह भाई, और ये सब निस्बतें हैं इनके नकल करने वालों की तरफ या उस इलाके की तरफ जिसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने ये मसाइल लिखवाए। बाज़ औक़ात एक इलाके के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कुछ मसाइल लिखवाए उलमा को, तो वो उसी इलाके की निस्बत से मशहूर हो गए। जैसे रकियात भाई, ये रक़ा शहर के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मसाइल लिखवाए थे उलमा को, तो ये रकियात के नाम से मशहूर हैं। इसी तरह हारूनियात को हारून नाम के आलिम फकीह नकल करते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से, तो ये हारूनियात कहलाती हैं। इसी तरह जुर्जानियात हैं, इसी तरह जो है वो केसानियात हैं। तो ये नाम जो हैं ये उन इलाकों की निस्बत से इन मसाइल का नाम है या इनको नकल करने वालों की निस्बत से इनका नाम है। तो ये नवादिर में से हैं। तो नवादिर के अंदर केसानियात के अंदर इमाम सरखसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि यहां जो मतन के अंदर जो मसला जिक्र है इसका यह जवाब नहीं है कि निसफ बांदी और निसफ लड़की आजाद होगी, बल्कि इस सूरत में आका पर कसम आएगी। बात समझ में आ गई। तो पहली सूरत तो यह जिक्र हुई किताब के अंदर कि जब किसी को भी इलम नहीं है कि लड़का पहले पैदा हुआ है या लड़की पहले पैदा हुई है। दूसरी सूरत यह है कि मां ने दावा कर दिया कि लड़का पहले पैदा हुआ है और आका उसका इनकार कर रहा है, तो इसमें दो सूरतें हैं, या तो वो लड़की जो है अभी नाबालिगा होगी या ये बालिग हो चुकी है। तो पहली सूरत मसलन लड़की अभी नाबालिगा है, मां ने दावा किया कि लड़का पहले पैदा हुआ है और लड़की नाबालिगा है और आका इसका इनकार कर रहा है, तो इस सूरत में आका पर कसम आएगी। अगर आका कसम खा लेगा तो फिर मां भी बांधी और लड़की भी बांधी ही रहेंगी, और अगर आका ने कसम से इनकार कर दिया तो इसका मतलब है कि वो दावे का एतराफ कर रहा है, लिहाजा मां भी आजाद और लड़की भी आजाद। और अगर लड़की बालिग हो चुकी है और उसके बाद मां ने दावा किया तो फिर इस दावे के जरिए सिर्फ मां आजाद हो सकती है अगर आका इनकार करेगा, इसके जरिए लड़की आजाद नहीं, क्योंकि लड़की बालिगा है, उसको मां के ताबिया करार नहीं दिया जा सकता, उसे अलग दावा करना पड़ेगा। तो आका के इनकार से सिर्फ दावा साबित हुआ है और दावा तो सिर्फ मां का है, लिहाजा सिर्फ मां आजाद होगी। और अगर लड़की ने दावा किया बालिग होने के बाद और आका ने कसम से इनकार किया तो फिर इस सूरत में सिर्फ लड़की आजाद होगी, मां आजाद नहीं होगी भाई। और साहिब हिदाया ने फरमाया कि बाकी सूरतें हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र की हैं। मैंने आपको बतलाया था कि यहां कुल छह सूरतें बनती हैं। एक सूरत तो वो थी जिसमें सबका इत्तेफाक था कि इलम ही नहीं है कौन पहले पैदा हुआ। एक सूरत यह थी कि मां ने दावा किया है, आका इनकार कर रहा है और लड़की अभी नाबालिगा है। तीसरी सूरत यह है कि मां ने दावा किया है और आका इनकार कर रहा है और लड़की बालिगा है। और चौथी सूरत यह है कि लड़की ने दावा किया है और आका उसका इनकार कर रहा है। पांचवीं सूरत यह है कि सब इत्तेफाक कर लें कि लड़की पहले पैदा हुई है। छठी सूरत यह है कि सब इत्तेफाक कर लें कि लड़का पहले पैदा हुआ है। तो अगर सब इत्तेफाक कर लें लड़की पहले पैदा हुई है तो इस सूरत में फिर कोई भी आजाद नहीं, और अगर सब इत्तेफाक कर लें कि लड़का पहले पैदा हुआ है तो फिर इस सूरत में मां भी आजाद और उसकी बेटी भी आजाद है भाई। उसके बाद साहिबे हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि दो आदमियों ने एक शख्स के खिलाफ गवाही दी कि इसने अपने दो गुलामों में से एक गैर मुअय्यन को आजाद किया है, तो इमाम साहब के नजदीक यह गवाही बातिल है, इसको नहीं सुना जाएगा और ना इस पर फैसला किया जाएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यह गवाही सही है और इस पर फैसला किया जाएगा और आका को मजबूर किया जाएगा कि अब वो इन दो गुलामों में से एक को आजाद कर दे। इस सिलसिले में सबसे पहले याद रखें, मैंने आपको बतलाया था कि एक है हकुल अब्द और एक है हक शरा। हकुल आबद के अंदर दावा जरूरी होता है। किसी बंदे का हक है तो उसकी तरफ से दावा भी होना चाहिए, बगैर दावे के वहां गवाही नहीं सुनी जाएगी। जबकि हक शरा जो है, शरीयत का जो हक है, अल्लाह का जो हक है, उसके अंदर दावा जरूरी नहीं है भाई। तो यहां पर इमाम साहब और साहिबैन के अंदर इख्तिलाफ है कि जो गुलाम की आजादी है यह हकुल आबद है या हक शरीयत है। इमाम साहब के नजदीक यह हकुल आबद है, वजह यह कि इस आजादी की वजह से गुलाम को हर तरह के तसरुफात का इख्तियार मिल जाएगा। यह गुलाम अपनी मर्जी से निकाह कर सकता है, यह गुलाम अपनी मर्जी से अब तिजारत कर सकता है, यह गवाही दे सकता है, यह काजी बन सकता है। तो इस गुलाम को आजादी की वजह से हर तरह के तसरुफात का हक मिल जाएगा। मालूम हुआ यह हकुल अब्द है, यह बंदे का हक है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि जो गुलाम की आजादी है यह हक शरीयत है, यह अल्लाह का हक है, यह शरीयत का हक है। वजह यह कि ये जो इताक है यह गुलाम के कबूल करने का मोहताज नहीं, गुलाम के कबूल करने का मोहताज नहीं। आका अपने गुलाम से कह दे तुम आजाद हो तो गुलाम फौरन आजाद हो जाता है, चाहे गुलाम कबूल करे चाहे कबूल ना करे। मालूम हुआ यह हकुल अब्द नहीं। अगर यह हकुल अब्द होता, गुलाम का हक होता, तो फिर तो यह गुलाम के कबूल पर इसका दारोमदार होता। गुलाम कबूल करता तो आजाद होता, गुलाम कबूल न करता तो आजाद न होता। तो यह हक शरा है क्योंकि इसमें गुलाम के कबूल का कोई दखल नहीं है, और नीस गुलाम के रद्द करने से भी यह रद्द नहीं होता। यह भी इस बात की दलील है कि यह गुलाम का हक नहीं है, क्योंकि अगर यह गुलाम का हक होता तो गुलाम के रद्द करने से और इनकार करने से यह रद्द हो जाता। और नीस इताक जो है उसको शर्त के साथ भी मुअल्लक किया जा सकता है। यह इस बात की दलील है कि यह हक शरा है, हकुल अब्द नहीं। अगर हकुल अब्द होता तो फिर इसको शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता था। जैसे बै जो है दो बंदों का मामला है, यह हकुल अब्द है भाई, लिहाजा बै को किसी शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता कि अगर तुमने यह काम कर लिया तो बै हो गई, अगर ना किया तो बै ना हुई। तो बै क्या है? हकुल अब्द है, लिहाजा उसको शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता, लेकिन इताक को शर्त के साथ मुअल्लक किया जा सकता है। मालूम हुआ यह हक शरीयत है भाई। तो इन सब चीजों से मालूम होता है कि इताक शरीयत का हक है, बंदे का हक नहीं। तो साहिबैन के नजदीक इताक जो है वह हक शरा है भाई, जबकि इमाम साहिब के नजदीक इताक जो है वह हकुल अब्द है, और हकुल अब्द के अंदर दावा जरूरी होता है, बगैर दावे के वह साबित नहीं हो सकता। और यहां पर यह दोनों गवाह गवाही दे रहे हैं कि आका ने अपने दो गुलामों में से गैर मुअय्यन को आजाद किया है, तो यहां मुद्दई मौजूद नहीं है, दावा मौजूद नहीं है, और बगैर दावे के तो हकुल अब्द साबित नहीं हो सकता। लिहाजा इमाम साहब फरमाते हैं यह गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो सवाल पैदा होता है मुद्दई किस तरह मजहूल है भाई? ये दोनों गुलाम मुद्दई हैं, ये दावा करने वाले हैं, ये दोनों गुलाम मुद्दई हैं, ये दावा करने वाले हैं। तो जवाब यह कि नहीं, ये दोनों गुलाम जो हैं ये मुद्दई नहीं बन सकते, क्योंकि इताक एक गुलाम का हुआ है, दोनों का इताक नहीं हुआ। और दोनों में से एक गुलाम भी मुद्दई नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों में से किसी एक का भी इताक यहां मुतायन नहीं है भाई। अगर किसी एक मुतायन का इताक होता तो फिर तो वह मुद्दई बन सकता था, लेकिन यहां तो इताक मुतायन ही नहीं है। तो लिहाजा दोनों गुलाम भी अगर मुद्दई बनना चाहें तो वो भी मुद्दई नहीं बन सकते। तो यहां मुद्दई मजहूल है, और मजहूल मुद्दई की तरफ से दावा नहीं हो सकता, लिहाजा इस गवाही को नहीं सुना जाएगा इमाम साहिब के नजदीक, जबकि साहिबैन के नजदीक इस गवाही को सुना जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में हक शरीयत के अंदर दावे की जरूरत नहीं है। मसलन जैसे देखो तलाक, तलाक जो है उसकी वजह से तहरीमुल फर्ज आएगा, बीवी की शर्म का खावन के लिए हराम करार दी जाएगी। तो लिहाजा ये जो तहरीमुल फर्ज है ये हक शरीयत है। जैसे मैंने मिसाल से वजाहत की थी कि हर मर्द के लिए अजनबी औरत हराम है। और यह हराम क्यों है? यह शरीयत का हक है, अल्लाह ने हराम करार दिया है, यह हकुल अब्द नहीं है। तो लिहाजा मालूम हुआ तहरीमुल फर्ज जो है वह हक शरीयत है, और तलाक के अंदर भी तहरीमुल फर्ज होता है, लिहाजा यह भी हक शरीयत है। तो इसके अंदर दावे की जरूरत नहीं। दो गवाह आ जाते हैं कि फला आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दी है, तो इसके अंदर दावे की जरूरत नहीं, इस गवाही को सुना जा सकता है। बात समझ में आ गई। इसी तरह बांदी की जो आजादी है, बांदी की आजादी की वजह से भी तहरीमुल फर्ज होता है, आका पर वो बांदी हराम हो जाती है, तो लिहाजा वो भी शरीयत का हक है, लिहाजा उसके अंदर भी दावा जरूरी नहीं, बगैर दावे के भी गवाही को सुना जा सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आका ने अपनी दो बांदियों में से एक गैर मुआयन को आजाद किया और यूं कहा इहदा को माहुर्रतुन, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि यहां पर भी गवाही को नहीं सुना जा सकता। अगरचे बांदी का एताक हक शरीयत है क्योंकि इसके अंदर तहरीमुल फर्ज होता है, लेकिन आप पढ़ चुके हैं इमाम साहब के नजदीक गैर मुआयन बांदी के अंदर एताक किया जाए तो फिर भी दोनों बांदियां आका के लिए हलाल रहती हैं, आका के लिए दोनों से वती जायज होती है। मालूम हुआ इस सूरत में तहरीमुल फर्ज नहीं आता, तो इसकी मुशाबहत भी हो गई गुलामों के एताक के साथ, और गुलामों के एताक के अंदर तो दावा जरूरी था, लिहाजा यहां दो बांदियों में से गैर मुआयन के एताक के अंदर भी दावा जरूरी है, उसके बगैर गवाही को नहीं सुना जा सकता भाई। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि यह सारा उस सूरत में है जब सेहत की हालत में एक शख्स ने अपने दो गुलामों में से गैर मुआयन को आजाद किया है, या सेहत की हालत में एक शख्स ने अपनी दो बांदियों में से एक गैर मुआयन को आजाद किया है, तो इस सूरत में इमाम साहब के नजदीक गवाही को नहीं सुना जाएगा क्योंकि दावा नहीं है यहां पर। लेकिन अगर यह एताक मरजुल मौत में हुआ या मुदब्बर बनाना है, चाहे सेहत की हालत में है चाहे मरजुल मौत की हालत में, तो उसके अंदर गवाही को सुना जाएगा। वजह यह कि मरजुल मौत के अंदर जो एताक होता है वो वसीयत के हुक्म में होता है। इसी तरह मुदब्बर बनाना, चाहे सेहत में मुदब्बर बनाए चाहे मरजुल मौत में, मुदब्बर भी वसीयत के हुक्म में होता है, तो उस सूरत में फिर गवाही को सुना जाएगा। और यह हुक्म इस्तेहसानन है, वसीयत की सूरत में इस्तेहसानन जो है गवाही को सुना जाएगा। अगरचे कियास यहां भी यही तकाजा करता है कि मुद्दाई मजहूल है, जब मुद्दाई मजहूल है तो दावा नहीं है, जब दावा नहीं है तो लिहाजा गवाही को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन वसीयत के मसले में गवाही को इस्तेहसानन सुना जाएगा। और उस इस्तेहसान की दो वजह जिक्र फरमाई साहिब हिदायत ने, एक वजह यह कि वसीयत की सूरत में जो मैयत है वो उसको तकदीरन मुद्दाई मान लिया जाता है कि गोया मैयत मुतालबा कर रही है कि मेरे माल के अंदर मेरी वसीयतों को नाफिज किया जाए, और मैयत उसका तो इंतकाल हो चुका है लेकिन उसका नाइब मौजूद है यानी वसी, वो शख्स जिसे मैयत ने जिम्मेदार बनाया था अपने बाद बाकी अपने मामलात का, वो वसी मौजूद है, या अगर वसी नहीं है तो वो जो वारिस हैं वो मैयत के नाइब मौजूद हैं, तो मुद्दाई मौजूद है, जब मुद्दाई मौजूद है तो लिहाजा अब गवाही को सुना जाएगा। या दूसरी वजह यह जिक्र की कि मौत के बाद जो एताक है वो एताक जो है दोनों गुलामों या दोनों बांदियों में मुश्तरका करार दिया जाएगा, जब दोनों के दरमियान एताक मुश्तरका हुआ तो दोनों मुद्दाई बन सकते हैं, तो जब दोनों मुद्दाई बन गए तो अब मुद्दाई मालूम हो गया, लिहाजा गवाही को सुना जाएगा। और फिर साहिब हिदायत ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर किसी शख्स के मरने के बाद दो गवाहों ने गवाही दी कि इसने सेहत की हालत में दो गुलामों में से गैर मुआयन को आजाद किया था, तो इस सूरत में इस गवाही को सुना जाएगा या नहीं, तो बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि इस गवाही को नहीं सुना जाएगा क्योंकि वो सेहत की बात कर रहे हैं, और सेहत की हालत में जो एताक होता है वो तो वसीयत नहीं होता, लिहाजा इस एताक का हुक्म वसीयत वाला नहीं, तो इसके अंदर मुद्दाई मजहूल है, लिहाजा इस गवाही को नहीं सुना जाएगा। जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि इस गवाही को सुना जाएगा, वजह यह कि मौत के बाद ये अताक दोनों गुलामों में मुश्तरका है, दोनों में फैल जाएगा, तो दोनों गुलाम मुद्दाई बन जाएंगे, जब मुद्दाई बन गए तो मुद्दाई मालूम हो गए, जब मुद्दाई मालूम हो गए तो अब गवाही को सुना जा सकता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने बाबुल हल्फ बिल इत्क शुरू किया था कि अगर गुलाम की आजादी को शर्त के साथ मुअल्लक कर दिया जाए तो उसका क्या हुक्म था। और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर किसी शख्स ने अपने गुलाम से कहा कि इदा दखल तु दारा फकुल्लु ममलूकिन ली यौम इज़िन फहुवा हुर्रुन, कि जब मैं उस घर में दाखिल हूं तो उस दिन मेरा जो भी ममलूक है वो आजाद है, तो इस सूरत के अंदर उस घर में दाखिल होते वक्त जो भी आका का ममलूक होगा वो आजाद हो जाएगा, चाहे कसम उठाते वक्त ये उसका ममलूक था चाहे इसने उसको बाद में खरीदा हो। इसलिए क्योंकि आका ने खुद क्या कहा है, यौम इज़िन अय्यौम इज़ दखलतु दारा, जिस दिन मैं घर में दाखिल हूं तो उस दिन मेरा जो भी ममलूक है वो आजाद है। और अगर आका ने यौम इज़िन की कैद नहीं लगाई, सिर्फ इतना कहा कि इज़ा दखलतु दारा फकुल्लु ममलूकिन ली फहुवा हुर्रुन, कि जब मैं उस घर में जाऊं तो मेरा जो भी ममलूक है वो आजाद है, तो इस सूरत में ये कुल्लु ममलूकिन ली ये हाल के लिए है, ये किस लिए है, हाल के लिए, लिहाजा कसम खाते वक्त यानी तालीक के वक्त जो ममलूक हैं सिर्फ ये उनको शामिल है। तो जब ये उस घर के अंदर जाएगा तो उस वक्त अगर ये ममलूक अभी भी इसकी मिल्कियत में है तो वो आजाद हो जाएगा, और कसम के बाद या तालीक के बाद जो है इसने जिस गुलाम को खरीदा है वो उस घर में जाने से आजाद नहीं होगा भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने यह मसला जिक्र फरमाया कि अगर आका ने कहा कि मेरा जो भी मुजक्कर ममलूक है वो आजाद है और इस वक्त उसकी एक बांदी हामिला है और बाद में फिर इस बांदी ने एक मुजक्कर बच्चे को जन्म दिया तो यह आजाद नहीं होगा, वजह यह कि तालीक के वक्त इस हमल का होना यकीनी नहीं, अगर बांदी ने 6 माह या इससे ज्यादा के बाद बच्चे को जन्म दिया है तो कसम और तालीक के वक्त इस हमल का होना यकीनी नहीं, तो लिहाजा ये उस कसम के तहत दाखिल ही नहीं। और अगर 6 माह से कम के अंदर बच्चे को जन्म दिया तो अब तो कसम के वक्त जो है हमल होना यकीनी है, लेकिन फिर भी ये बच्चा आजाद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये जो हमल है ये मुस्तकिल गुलाम नहीं है, ये औरत के उज्व के दर्जे में है, ये औरत के उज्व के दर्जे में है, ये मुस्तकिल गुलाम नहीं है, चुनाचे इसीलिए अगर इसको कफारे के अंदर कोई इस हमल को आजाद करे तो कफारा अदा नहीं होगा क्योंकि ये मुस्तकिल गुलाम नहीं है, और नीज इसीलिए इसको बेचना भी जायज नहीं है जब तक इसकी पैदाइश ना हो जाए भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि मातिन ने मतन के अंदर मुजक्कर ममलूक की कैद लगाई और उस कैद का फायदा यह है कि अगर वह मुजक्कर की कैद न लगाता तो हर ममलूक ने आजाद होना था तो यह बांदी भी आजाद हो जाती और जब बांदी आजाद होती तो इसके ताबे होकर हमल भी आजाद हो जाता। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। व इन काल कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु फहुवा हुर्रुम बाद गदिन او قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد وله مملوك فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق الذي في ملكه يوم حلف। सूरत मसला ये कि आका जो है वो कहता है कुल ममलूक املكه فهو حر بعد غد, कुल्लो ममलूकिन हर ऐसा गुलाम अमलिकुहू जिसका मैं मालिक हूं फहुवा हुर्रुन बादा गदिन तो वो कल के बाद आजाद है यानी परसों वो आजाद है, परसों आजाद है। तो यहां साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि आका अमलिकु फेल लाया और अमलिकु फेल मुजारे है और मुजारे हाल के अंदर हकीकत है, लिहाजा इस वक्त जो गुलाम इसके हैं वो परसों आजाद हो जाएंगे, लेकिन इस यमीन के बाद अगर इसने कोई और गुलाम खरीद लिया तो वो परसों आजाद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इसने क्या कहा था कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहू, कि जिस गुलाम का भी मैं मालिक हूं यानी फिलहाल मैं जिसका मालिक हूं तो वो परसों आजाद है भाई। तो कहते हैं व इन काल कुल्लु ममलूक इन अमलिकुहू फहुवा हुर्रुम बाद गदिन, और अगर आका ने कहा कि मेरा हर ऐसा गुलाम जिसका मैं फिलहाल मालिक हूं तो वह आजाद है बाद गदिन कल के बाद यानी परसों, او قال یا آقا یوں کہتا ہے کل مملوک لی فہو حر بعد غد. یہ دوسرا جملہ آیا بھائی. پہلے جملے میں املک, آقا نے فعل مضارع کو ذکر کیا تھا, اور اگر آقا فعل مضارع کے بجائے یوں کہتا ہے کل مملوک لی کہ میرا جو بھی غلام ہے تو وہ پرسوں آزاد ہے, تو آپ کو صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ کل مملوک لی یہ حال کے لیے ہے, میرا جو بھی فی الحال مملوک ہے وہ پرسوں آزاد. تو چاہے آقا کل مملوک کے ساتھ املکہ فعل مضارع ملا دے یا کل مملوک کے ساتھ لی جار مجرور ملا دے, دونوں صورتوں میں یہ صرف حال کو شامل ہے بھائی. تو کہتے ہیں او قال, اور اگر آقا نے کہا کل مملوک لی فہو حر بعد غد کہ میرا جو بھی غلام ہے تو وہ پرسوں آزاد ہے, ولہو مملوک, اور حال یہ ہے کہ آقا کا ایک مملوک ہے, جس وقت اس نے قسم اٹھائی ہے یعنی تعلیق کی ہے اس وقت ایک ہی غلام ہے اس کا, فاشترى آخر پھر اس نے ایک اور خرید لیا, پرسوں سے پہلے ایک اور خرید لیا, ثم جاء بعد غد پھر پرسوں والا دن آیا, عتق الذی فی ملکی ہی یوم حلفا تو آزاد ہو جائے گا وہ غلام جو اس آقا کی ملکیت میں تھا, یوم حلفا جس دن آقا نے قسم اٹھائی تھی صرف وہ آزاد ہوگا, جو بعد میں خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. اب وجہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْلَهُ أَمْلِكُهُ لِلْحَالِ حَقِيقَتًا, اس لیے کیونکہ آقا کا قول أَمْلِكُهُ یہ حال کے لیے ہے حقیقتاً, حقیقت کے اعتبار سے. بھئی آپ جانتے ہیں فعل مضارع میں حال والا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل والا معنی بھی ہوتا ہے, اور یاد رکھو فعل مضارع کے اندر تین مذاہب ہیں علماء کے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ فعل مضارع حال کے اندر حقیقت ہے اور مستقبل کے لیے جب استعمال کیا جائے تو یہ اس کا مجازی معنی ہے. جیسے شیر, شیر کا لفظ اردو زبان میں جنگلی درندے کے لیے وضع ہے, اور کبھی کبھار یہ بہادر آدمی کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو جنگلی درندہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے, اور بہادر آدمی یہ شیر کا مجازی معنی ہے. تو اسی طرح فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتے ہیں, لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حال اس کا حقیقی معنی ہے اور مستقبل اس کا مجازی معنی ہے. تو صاحب ہدایہ نے بھی اسی مذہب کو ترجیح دی اور کیا فرمایا کہ املکہ جو ہے یہ حال کے لیے حقیقت ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فعل مضارع کا حقیقی معنی جو ہے وہ مستقبل ہے اور حال اس کا مجازی معنی ہے. یعنی یہ مذہب پہلے مذہب کے بالکل برعکس ہے. پہلے مذہب میں تھا حال حقیقی معنی اور مستقبل مجازی معنی, جبکہ دوسرے مذہب کے مطابق مستقبل حقیقی معنی اور حال مجازی معنی ہے. اور ایک تیسرا مذہب یہ ہے فعل مضارع کے اندر کہ فعل مضارع جو ہے یہ مشترک ہے بین الحال والمستقبل, یعنی حال کے لیے یہ الگ وضع ہوا, مستقبل کے لیے یہ الگ وضع ہوا, تو یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے. جیسے ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہو اور ہر ایک کے لیے اس کو الگ الگ وضع کیا جائے تو اس کو مشترک کہتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْلَهُ أَمْلِكُهُ لِلْحَالِ حَقِيقَتًا, اس لیے کیونکہ آقا کا قول املکہ یہ حال کے لیے ہے حقیقت کے اعتبار سے. تو صاحب ہدایہ نے اس مذہب کو ترجیح دی. یقال کہا جاتا ہے انا املک قزا و قزا, یعنی عربی زبان میں یوں کہتے ہیں انا املک قزا و قزا کہ میں مالک ہوں اتنی اتنی چیز کا, وہ یوراد بہل حال, اور اس کے ذریعے حال مراد ہوتا ہے. عربی زبان میں ایک آدمی کہتا ہے انا املک قزا و قزا, میں اتنی اتنی چیزوں کا مالک ہوں, تو مراد حال ہوتا ہے, مستقبل مراد نہیں ہوتا کہ میں مستقبل میں یہ چیزیں خریدوں گا اور ان کا مالک بنوں گا, نہیں یہ مراد نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں یقال کہا جاتا ہے, یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں انا املک قزا و قزا کہ میں مالک ہوں اتنی اور اتنی چیز کا, ویراد به الحال, اور اس کے ذریعے حال کا ارادہ ہوتا ہے, وقضا یستعمل له من غیر قرینۃ, اور اسی طرح یہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے بغیر قرینے کے لیے, وللاستقبال بقرینۃ سین او صوفا, اور استقبال کے لیے سین یا صوفہ کے قرینے کے ذریعے, भाई करीना, करीना कहते हैं हुआ अमरुन युशीरु इलल मतलूब, करीना वो चीज है जो मतलूब और मकसूद की तरफ इशारा कर दे। मसलन शेर का लफ्ज है, इसका हकीकी माना क्या, जंगली दरिंदा, और इसका मजाजी माना है बहादुर आदमी। अब मैं इस लफ्ज को यानी लफ्ज शेर को जब जुमले में इस्तेमाल करूंगा तो कोई ना कोई चीज ऐसी हो जिससे सुनने वाले को पता चल जाए कि मैं किस माना का इरादा कर रहा हूं। मसलन मैं आपसे कहता हूं कल मैं चिड़ियाघर गया था, वहां मैंने शेर देखा। तो देखो यहां मालूम हुआ शेर से मुराद जंगली दरिंदा है, और करीना क्या चीज है, मैं चिड़ियाघर गया था। ये जो अल्फाज हैं ये बतला रहे हैं कि यहां शेर से बहादुर आदमी वाला माना मुराद नहीं बल्कि जंगली दरिंदे वाला माना मुराद है। तो करीना याद रखो लफ्ज भी हो सकता है और गैरे लफ्ज भी। करीना दो ही किस्म का होता है, एक करीनाए लफ्जिया होता है और एक गैरे लफ्जिया। फिर उसी गैरे लफ्जिया को कभी हालिया कह देते हैं, कभी कोई और नाम मौके के मुताबिक दे देते हैं। तो जो चीज भी मतलूब और मकसूद की तरफ इशारा कर दे उसको करीना कहते हैं, और वो लफ्ज भी हो सकता है और गैरे लफ्ज भी, यानी हालत वगैरह भी हो सकती है। मसलन मैं आपसे कहता हूं हम मस्जिद में बैठे हैं और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, मैंने कहा शेर आ गया। अब आप समझ गए कि शेर से मुराद बहादुर आदमी है, इसलिए क्योंकि यहां पर तो कोई जंगली दरिंदा मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ बल्कि एक इंसान दाखिल हुआ है। तो यहां देखो करीना कोई लफ्ज नहीं है बल्कि हालत है, तो इसको करीना हालिया कहते हैं। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि फेल मुजारे का हकीकी माना जो है वह हाल है, और यह मुस्तकबिल के लिए जो इस्तेमाल होता है यह इसका मजाजी माना है, और मजाजी माना के लिए याद रखो हमेशा करीना चाहिए
जी।
क्या चाहिए, करीना, जिससे सुनने वाले को भी पता चले कि आप मजाजी माना का इरादा कर रहे हैं, हकीकी माना का आप इरादा नहीं कर रहे। तो फेले मुजारे बगैर करीने के इस्तेमाल हो तो उसका माना हाल वाला होगा, और अगर सीन या सौफा वगैरह के करीने के साथ इस्तेमाल हो तो फिर इसका माना मुस्तकबिल वाला होगा। तो कहते हैं वकदा युस्तामलू लहू मिन गैर करीनतिन, और इसी तरह फेले मुजारे हाल के लिए इस्तेमाल होता है मिन गैर करीनतिन, बगैर करीने के, यानी बगैर करीने के हो तो उसका माना हाल वाला करेंगे। वलिल इस्तिकबाल बि करीनति सीनिन औ सौफा, और सीन या सौफा के करीने के जरिए वो मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। देखो अज़रिबु ज़ैदन, तो इसका माना है मैं जैद की पिटाई कर रहा हूं भाई, और सीन ले आए सा अज़रिबु ज़ैदन, या सौफा ले आए सौफा अज़रिबु ज़ैदन, तो माना है अन करीब मैं जैद की पिटाई करूंगा। तो ये सीन और सौफा ने बतलाया कि यहां मुस्तकबिल वाला माना मुराद है भाई। तो कहते हैं वलिल इस्तिकबाल भी करीनति सीन इन औ सौफा, और सीन या सौफा के करीने के जरिए फेल मुजार इस्तिकबाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फयकूनु मुतलकुहु लिल हाली, लिहाजा मुतलक जो है ये हाल के लिए होगा। ये अमलिकुहु फेल मुजारे जो मुतलक आया यानी बगैर करीने के, इसके साथ कोई करीना नहीं है मुस्तकबिल वाला। तो कहते हैं फयकूनु मुतलकुहु लिल हाली, तो फेल मुजारे जो है मुतलक हो यानी बगैर करीने के हो, लिल हाली वो हाल के लिए होता है। फकान अल जजा उहुर्रियत अल ममलूक फिल हाली, तो इसकी जजा जो है हुर्रियत अल ममलू की, वो ममलूक का आजाद होना है। फिलहाल ही फिलहाल, यानी वो जो फिलहाल ममलूक है उसकी आजादी है। फकान अल जजा उ हुर्रियत अल ममलू की फिलहाल ही, तो इसकी जजा जो है वो फिलहाल जो ममलूक है उसकी आजादी है। मुजाफन इला मा बादल गदी, इस हाल में कि इसकी निस्बत की गई है कल के बाद की तरफ, यानी फिलहाल जो ममलूक है वो आजाद होगा, और कब की तरफ आजादी की निस्बत है, परसों की तरफ। तो जो फिलहाल ममलूक है वो परसों आजाद हो जाएगा, और जो बाद में खरीदा वो इस कसम के तख्त दाखिल नहीं भाई। तो कहते हैं फकान अल जजा उहुर्रियत अल ममलूक फिलहाल मुजाफन इला मा बादल गदी, तो इसकी जजा जो है फिलहाल जो ममलूक है उसकी आजादी है इस हाल में कि इसकी निस्बत की गई है परसों की तरफ। فَلَايَتَنَاوَلُ مَا يَشْتَرِيهِ بَعْدَ الْيَمِينِ, تو یہ قسم جو ہے شامل نہیں ہے, مَا يَشْتَرِيهِ بَعْدَ الْيَمِينِ, جس کو وہ قسم کے بعد خریدے وہ اس میں داخل نہیں, وہ پرسوں آزاد نہیں ہوگا. وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِحُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي. صورت مسئلہ یہ کہ اب آقا نے پرسوں کے بجائے اپنی موت کو ذکر کیا, اس کی طرف غلام کی آزادی کی نسبت کی, اور یوں کہا کل مملوکن املکہ فہو حر بعد موتی, کہ میرا جو بھی مملوک غلام ہے فی الحال وہ میری موت کے بعد آزاد ہے. یا یوں کہا املکو کے بجائے اسی طرح لی کا لفظ لے آیا جار مجرور بھائی, کہ کل مملوکن لی فہو حر بعد موتی, کہ میرا جو بھی فی الحال مملوک ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے. اور حال یہ ہے کہ اس وقت اس آقا کا ایک مملوک ہے اور اس نے بعد میں پھر ایک اور غلام بھی خریدا, تو آپ کو بتلائیں گے کہ قسم کے وقت جو غلام موجود ہے وہ مدبر بن جائے گا. جب مدبر بن گیا اب اس کو بیچنا جائز نہیں, جبکہ بعد میں جو خریدے گا وہ مدبر نہیں بنے گا. ہاں البتہ موت کے وقت, موت کے وقت جتنے بھی اس کے غلام ہوئے وہ سارے ثلث میں سے آزاد ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو تدبیر ہے, مدبر بنا رہا ہے کہ میں جس غلام کا بھی مالک ہوں تو وہ میری موت کے بعد آزاد ہے. بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ مدبر بنا رہا ہے, یہ تدبیر ہے, اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ وصیت کر رہا ہے. تو یہاں پر طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی رعایت رکھی جائے گی, یہ تدبیر بھی ہے اور وصیت بھی ہے. تو فی الحال جو غلام ہے وہ مدبر بنے گا, اس کو اس کے لیے آگے بیچنا جائز نہیں, اور جو بعد میں خریدے گا وہ مدبر تو نہیں بنے گا, لیکن اگر موت تک وہ مملوک رہے تو پھر وصیت کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے اور ثلث میں سے آزاد ہوں گے. تو کہتے ہیں ولو قال کل مملوکن املکہ, اور اگر آقا نے کہا کہ میرا ہر ایسا مملوک جس کا میں مالک ہوں, یعنی فی الحال میں جس کا مالک ہوں, او قال, یا آقا نے یوں کہا کل مملوکن لی حر بعد موتی, کہ میرا جو بھی فی الحال مملوک ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے, ولہ مملوکن, اور حال یہ ہے کہ قسم کے وقت آقا کا ایک مملوک ہے, فاشترى مملوكا آخر, پھر آقا نے ایک اور غلام خرید لیا, فالذي كان عنده وقت اليمين مدبر, تو وہ مملوک جو آقا کے پاس تھا قسم کے وقت مدبر, وہ مدبر ہوگا, والآخر ليس بمدبر, اور دوسرا جو ہے وہ مدبر نہیں ہوگا, وَإِن مَاتَ, اور اگر آقا مر گیا, عتقا من الثلث, عتقا دیکھو تثنیہ کا صیغہ ہے, عتقا تو دونوں غلام آزاد ہو جائیں گی, من الثلث ثلث میں سے, اور باقی حصے میں وہ سعی کریں گے اور وارثوں کو کما کر لا کر دیں گے بھائی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فی النوادری, اور امام ابو یوسف بھائی آگے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ذکر فرما رہے ہیں جو نوادر میں ذکر ہے بھائی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فی الحال جو غلام ہے قسم کے وقت یہ تو مدبر بن جائے گا, اور مرنے کے بعد صرف یہی غلام آزاد ہوگا, بعد میں جو غلام خریدے گا وہ مدبر بھی نہیں اور مرنے کے بعد آزاد بھی نہیں. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فی النوادری, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نوادر میں فرماتے ہیں, یعتق ما کان فی ملکہ یوم حلفا, کہ آزاد ہو جائے گا وہ جو اس آقا کی ملکیت میں ہے, یوم حلف, جس دن اس نے قسم اٹھائی, جس دن آقا نے قسم اٹھائی صرف وہ آزاد ہوگا, اور اسی وقت نہیں مدبر ہو کر آزاد ہوگا, یعنی موت کے وقت, کیونکہ آقا کیا کہہ رہا ہے, میں جس غلام کا بھی مالک ہوں وہ میری موت کے بعد آزاد ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں कि वो गुलाम जो जो इस वक्त आका की मिल्कियत में है, जिस वक्त आका ने कसम उठाई वो आजाद हो जाएगा, यानी तदबीर के तरीके पर आजाद होगा। वला यातिकु मस्तफाद बाद यमीनी ही, और आजाद नहीं होगा वो गुलाम जो हासिल किया आका ने अपनी कसम के बाद, कसम के बाद जो गुलाम खरीदा है वो आजाद नहीं होगा। वह अला हादा इदा काला, और इसी इख्तिलाफ पर है इदा काला, जब आका ने कहा कुल्लु ममलूकिन ली इदा मुत्तु फहुवा हुर्रुन, कि मेरा जो भी ममलूक है जब मैं मर जाऊं तो वो आजाद है, चाहे बाद मौती कह दे और चाहे शर जजा की सूरत में जिक्र कर दे। कुल्लु ममलूकिन ली इदा मुत्तु फहुवा हुर्रुन, कि मेरा जो भी ममलूक है जब मैं मर जाऊं तो वो आजाद है। तो इसमें भी इसी तरह इख्तिलाफ है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक सिर्फ तालीक के वक्त जो गुलाम मौजूद हैं ये मुदब्बर बन जाएंगे और यही मौत के बाद आजाद होंगे, जो बाद में खरीदेगा वो आजाद नहीं होंगे। जबकि तरफैन रहमहुमल्ला यानी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला वो फरमाते हैं कि जो इस वक्त गुलाम है वो मुदब्बर बन जाएगा और मौत के वक्त जितने भी गुलाम हुए चाहे बाद में खरीदे हैं वो सारे सुलुस में से आजाद होंगे और बाकी कीमत के अंदर वो सई करेंगे, वारिसों को कमाकर लाकर देंगे। भाई तो कहते हैं वाला हादा इदा काला, और इसी इख्तिलाफ पर है जब आका ने यूं कहा कुल्लु ममलूकिन ली इदा मुत्तु फहुवा हुर्रुन, कि मेरा जो भी ममलूक है जब मैं मर जाऊं तो वो आजाद है। लहू, अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील आ गई, वो फरमाते हैं जो कसम के वक्त मौजूद है सिर्फ वो मुदब्बर बनेगा, बाद वाला इसके अंदर दाखिल नहीं है। भाई लहू, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल लफ्ज़ हकीकतुन लिल हाल अलामा बयन्नाह, कि यह लफ्ज जो है हाल के लिए हकीकत है उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, कि मुतलक जब मुजारे आए तो वो किस लिए होता है, हाल के लिए। फला यातिकु बिही मा सयमलिकुहु, तो लिहाजा आजाद नहीं होगा इस कसम की वजह से मा वो गुलाम सयमलिकुहु जिसका अन करीब वो मालिक बने यानी मुस्तकबिल में वो इस वो आजाद नहीं होगा। व लिहाजा सारा हुआ मुदब्बरन दून अल आखरी, और इसी वजह से ये ही गुलाम जो है ये मुदब्बर हुआ है दून अल आखरी न के दूसरा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये फेले मुजारे हाल के लिए आता है तो सिर्फ हाल के अंदर जो गुलाम ममलूक हैं इसके वो सिर्फ कसम में दाखिल होंगे, बाद में जो खरीदेगा वो इसके अंदर दाखिल ही नहीं। चुनांचे कहते हैं इसीलिए जो इस वक्त मौजूद है सिर्फ वही मुदब्बर बनेगा, बाद में जिसको खरीदेगा वो मुदब्बर नहीं बनेगा। भाई आप जानते हैं एक है मुदब्बर एक आम गुलाम, आम गुलाम को बेचना जायज होता है लेकिन मुदब्बर को बेचना जायज नहीं होता। तो इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं वलिहादा सारा हुआ मुदब्बरन दून अल आखरी, और इसी वजह से यही गुलाम मुदब्बर बनेगा ना के दूसरा, यानी ये जो इस वक्त मिल्कियत में है। वलहुमा, अब तरफैन की दलील आ गई। वलहुमा, तरफैन की दलील यह है कि अन्नहादा ईजाब इत्क व ईसाउन, कि ये ईजाब इत्क भी है यानी इस बात इत्क, ईजाब का क्या माना इस बात, ये इस बात इत्क भी है व ईसा उन और वसीयत करना भी है। भाई तो इसमें दोनों का लिहाज रखा जाएगा, ईजाब इत्क है लिहाजा इस वक्त जो गुलाम है वो मुदब्बर बन जाएंगे और वसीयत भी है और वसीयत तो मौत के वक्त नाफिज होती है लिहाजा मौत के वक्त जितने भी गुलाम और खरीदे इसने वो सारे भी इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो कहते हैं वल्लहुमा, तरफैन की दलील यह है कि अन्नहादा ईजाब इत्क व ईसाउन, कि ये इस बात इत्क है और वसीयत करना है। हत्ता अतुबिरा मिनस सुलुसी, यहां तक कि इसके एतबार किया गया है सुलुस में से। तो कहते हैं हत्ता अतुबिरा मिनस सुलुसी, यहां तक कि ये सुलुस में से मोतबर है यानी मैयत के सुलुस माल में से यह आजाद होगा। वफिल वसाया तुअतबरुल हालतुल मुंतजरा तुवल हालतुर राहिना, हालत मुंतजरा भाई वो यानी वो हालत जिसका इंतजार किया जा रहा है। वसीयत कब नाफिज की जाती है, मौत के वक्त, तो मौत है हालत मुंतजरा जिसका इंतजार किया जा रहा है। वल हालतुर राहिना, भाई हालत राहिना कहते हैं मौजूदा हालत को, मौजूदा हालत को क्या कहते हैं, हालत राहेना। भाई रहन का माना होता है कैद करना, भाई कोई शख्स किसी से कर्ज लेता है, वो बतौर रहन की उसकी कोई चीज रख लेता है ताकि बाद में अपना कर्ज वसूल कर सके। भाई तो ये जो चीज रखवाई, देखो इसको भी उस मुर्तहिन के पास वो चीज कैद हो गई, मुर्तहिन के पास वो चीज कैद हो गई, तो इसको रहन कहते हैं। तो इसी तरह मौजूदा हालत को भी हालत राहिना कहते हैं, क्योंकि इंसान इसके अंदर कैद है। माजी गुजर चुका और मुस्तकबिल अभी आया नहीं, इंसान हाल के अंदर कैद है, तो इसको क्या कहते हैं, हालत राहिना। तो कहते हैं वफील वसाया। अच्छा, और वसीयत के अंदर, और वसीयत के अंदर मौजूदा हालत का भी एतबार किया जाता है और मौत के वक्त की हालत का भी एतबार किया जाता है। लिहाजा मौत के वक्त जितना भी माल इंसान का हो उसके अंदर फिर वसीयत नाफिज की जाती है। पहले कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, फिर कर्जे अदा किए जाते हैं और फिर वसीयत नाफिज की जाती है। तो कहते हैं वफिल वसाया तुअतबरुल हालतुल मुंतजरतु वल हालतुर राहिनतु। और वसीयतों के अंदर हालत मुंतजरा भी मोतबर है, यानी वो हालत जिसका इंतजार किया जा रहा है और वो मौत की हालत है भाई, तो वो मौत की हालत भी मोतबर है। वल हालतुर राहिनतु, और मौजूदा हालत भी मोतबर है। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु यदखुलु फिल वसीयती। कहते हैं देखो वसीयत के अंदर मौजूदा हालत भी मोतबर और हालत मुंतजरा यानी मौत की हालत भी मोतबर है। लिहाजा एक आदमी ने वसीयत की कि मेरे माल में से 10 लाख रुपए जैद को दे देना, तो इस वक्त जो माल है वो भी मोतबर है और मौत के वक्त जितना और कमालेगा वो सारा भी मोतबर है। उस सारे में से सुलुस अगर 10 लाख बनता है तो वो जैद को दे दिया जाएगा। तो सिर्फ मौजूदा हालत का एतबार नहीं है बल्कि मौत की हालत का भी एतबार है। मुस्तकबिल में जो कमाएगा वो सारा मिलाकर देखा जाएगा, उसके सुलुस में से वसीयत नाफिज की जाएगी भाई। इसी तरह अगर एक शख्स ने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद जैद की जो औलाद है उनको मेरे माल में से 10 लाख रुपए दे देना, तो जिस वक्त वसीयत की उस वक्त जैद के सिर्फ 2 बच्चे हैं और बाद में जैद के 2 और बच्चे हुए, तो जिस वक्त ये वसीयत करने वाला मरेगा तो उसमें उस जैद की सारी औलाद शामिल होगी, जो वसीयत के वक्त थी वो भी और जो बाद में औलाद हुई वो भी शामिल होगी। मालूम हो वसीयत में मौजूदा हालत भी मोतबर होती है और मौत की हालत भी मोतबर होती है। तो कहते हैं अला तारा अन्नहु यदखुलु फिल वसीयति बिल माल, क्या आप देखते नहीं कि वसीयत बिल माल के अंदर दाखिल है। मा यस्तफीदुहु बादल वसीयति, वो माल भी जिसको वसीयत करने वाला हासिल कर ले वसीयत के बाद वो भी उसमें दाखिल होता है। वफील मसलन देखो एक आदमी ने वसीयत की मेरे मरने के बाद 10 लाख रुपए जैद को दे देना, हालांकि इस वक्त सिर्फ इस आदमी का सारा माल ही 3 लाख है, लेकिन मौत अगर इसने इतने कमा लिए कि वो सारे मिलाकर उनका सुलुस 10 लाख बनता है तो सारे में फिर वसीयत नाफिज की जाएगी भाई। तो कहते हैं अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु यदखुलु फिल वसीयति बिल माली, के माल की वसीयत के अंदर दाखिल होता है। मा यस्तफीदुहु बादल वसीयति, वो माल भी जिसको वसीयत करने वाला हासिल कर ले वसीयत के बाद। वफिल वसीयति लि औलादी फुलानिन, और इसी तरह फुलां की औलाद के लिए वसीयत में दाखिल होता है। मयू लदु लहू बादहा, उसकी वो औलाद भी जिसको उसके लिए जन्म दिया जाए बादहा वसीयत के बाद। वल ईजाब इन नमाया से हो मुजाफन इलल मिल की औ इला सबबी ही, और ईजाब भाई ईजाब यानी इस बात भाई किसी चीज को साबित करना, और यहां आजादी को साबित किया जा रहा है। तो कहते हैं वल ईजाब इन नमाया से हो मुजाफन इलल मिल की औ इला सबबी ही, और ईजाब जो होता है वो सही होता है इस हाल में कि उसकी निस्बत की जाए मिल्कियत की तरफ, औ इला सबबी ही या सबब मिल्कियत की तरफ। भाई देखिए आप पढ़ चुके हैं कि कोई शख्स एताक करना चाहे तो अपना गुलाम जो इसका है उसके अंदर भी एताक नाफिज हो जाएगा, और इसी तरह अगर वो मिल्कियत या सबब मिल्कियत की तरफ निस्बत करे तो भी ये तालीक सही है। मसलन एक आदमी ने किसी दूसरे के गुलाम के बारे में कहा कि अगर मैं तुम्हारा मालिक बना तो तुम आजाद हो, या अगर मैंने तुम्हें खरीदा तो तुम आजाद हो। तो देखो मिल्कियत की तरफ निस्बत कर रहा है, अगर मैं तुम्हारा मालिक हुआ तो तुम आजाद। तो इंदल अहनाफ ये ईजाब ये तालीक सही है, लिहाजा जिस वक्त ये इस गुलाम का मालिक बनेगा वो गुलाम फौरन आजाद हो जाएगा, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक फिलहाल ये इसका ममलूक नहीं है, लिहाजा इसका ये कलाम लगव है, इसका कोई एतबार नहीं, क्योंकि ये अंतहुर्रुन ने फिलहाल नाफिज होना है और फिलहाल तो ये इसका ममलूक नहीं, लिहाजा आका का कौल लगव चला गया। आका ने क्या कहा था, अंतहुर्रुन इन मलकतु का, तू आजाद है अगर मैं तेरा मालिक बना, तो अंतहुर्रुन ने फिलहाल सबब बनना है और फिलहाल तो ये इसका ममलूक है ही नहीं, ये तो किसी और का ममलूक है, तो ये अंतहुर्रुन लगव चला गया इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक, क्योंकि इसने फिलहाल सबब बनना है। जबकि इंदल अहनाफ जो मुअल्लक होता है वो इंदा वजूदी शर्त सबब बनता है जब शर्त पाई जाए, तो ये अंतहुर्रुन गोया इस वक्त है ही नहीं, जिस वक्त ये शख्स इस गुलाम का मालिक बनेगा तो अंतहुर्रुन आ जाएगा और उस वक्त तो ये मालिक बन चुका है, लिहाजा फौरन आजाद हो जाएगा। तो इसमें देखो मिल्कियत की तरफ निस्बत कर रहा है, इन मलकतु का, अगर मैं तेरा मालिक बना, और अगर सबब मिल्कियत की तरफ निस्बत करे मसलन अंतहुर्रुन इनिश्तरैतु का, कि तू आजाद है अगर मैंने तुझे खरीदा, तो खरीदना सबब है मिल्कियत का, खरीदने से कोई शख्स किसी चीज का मालिक बन जाता है, तो ईजाब सही है इंदल अहनाफ, चाहे उसकी निस्बत मिल्कियत की तरफ की जाए चाहे सबब मिल्कियत यानी शिरा वगैरह की तरफ की जाए। तो कहते हैं वल ईजाब इन नमा यसिहु मुजाफन इलल मिल्की औ इला सबबी ही, और ईजाब जो है वो सही होता है मिल्कियत या सबब मिल्कियत की तरफ मुजाफ होकर, फमिन हैसु इन्नहु ईजाबुल इत्की, तो इस हैसियत से कि ये ईजाब इत्क है। भाई हमने क्या कहा, तरफैन की दलील चल रही है, तरफैन क्या फरमाते हैं, एक शख्स ने कहा कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु फहुआ हुर्रुन बादा मौती, कि मेरा जो भी ममलूक गुलाम है तो वो मेरी मौत के बाद आजाद है। ये ईजाब इत्क भी है और वसीयत भी है, जब ईजाब इत्क है तो फिलहाल इसके जितने गुलाम हैं वो मुदब्बर बन जाएंगे, और वसीयत भी है तो बाद में भी जो गुलाम खरीदेगा वो भी इसमें दाखिल होंगे, वो मुदब्बर तो नहीं बनेंगे लेकिन मौत के वक्त ये सारे गुलाम सुलुस में से आजाद होंगे। तो कहते हैं फमीन हैसु इन नहु ईजाबुल इत्की, तो इस हैसियत से कि आका का ये कौल जो है इस बात इत्क है, यह तनावलुल अब्दल ममलूका, तो ये उस गुलाम को शामिल है जो आका का ममलूक है यानी कसम के वक्त, एतबारन लिल हालत राहिनती, एतबार करते हुए मौजूदा हालत का, मौजूदा हालत को यह शामिल है, फयसीरु मुदब्बरन, तो ये जो ममलूक गुलाम है फिलहाल वो मुदब्बर हो जाएगा, हत्ता ला यजूजु बैउहु, हत्ता ला यजूजु, ये ला यजूजु पढ़ें इसको भाई, ये यहां हत्ता नसब नहीं देगा, वजह ये कि हत्ता के बाद अन मुकद्दर होता है जब मा बाद मा कबल की तरफ निस्बत करते हुए मुस्तकबिल हो, यानी ये यजूजू माकबल यसीरू की तरफ निस्बत करते हुए मुस्तकबिल हो, यसीरू पहले हो और यजूजू लफ्जों पे नजर है, फयसीरू मुदब्बरन हत्ता ला यजूजू बेउहू, तो यहां ला यजूजू पढ़ें भाई, ये क्योंकि ये ला यजूजू ये यसीरू की तरफ निस्बत करते हुए मुस्तकबिल नहीं है बल्कि दोनों का एक जमाना है, जिस वक्त मुदब्बर बनेगा उसी वक्त उसकी बै भी जायज नहीं होगी, ऐसा नहीं कि पहले मुदब्बर बने और उसके बाद बेजायज न रहे, भाई बात समझ में आ रही है, तो लिहाजा ये जूजू पढ़ें। इसी तरह और जगह जगह आएगा, आप ख्याल रखिएगा भाई, जहां भी माकबल की तरफ निस्बत करते हुए ये मुस्तकबिल ना हो तो यहां अन मुकद्दर नहीं होगा। तो कहते हैं फयसीरो मुदब्बरन, तो ये गुलाम जो है ये मुदब्बर बन जाएगा जो फिलहाल ममलूक है, हत्ता ला यजूजु बैउहू, यहां तक कि इसका बेचना जायज नहीं होगा, وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِيصَاءٌ, اور اس حیثیت سے کہ یہ ایصاء ہے یعنی وصیت ہے, يَتَنَاوَلُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ, یہ شامل ہوگا اس غلام کو بھی جس کو یہ خریدے گا, اعتباراً لِلْحَالَةِ الْمُتَرَبَّصَةِ, اعتبار کرتے ہوئے اس حالت کا, مُتَرَبَّصَةِ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, حالت منتظرہ اور حالت متربصہ بھائی سواد کے ساتھ دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو کہتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِيصَاءٌ, اور اس حیثیت سے کہ آقا کا یہ قول وصیت ہے, يَتَنَاوَلُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ, تو یہ شامل ہوگا اس غلام کو بھی جس کو آقا مستقبل میں خریدے گا, اعتباراً لِلْحَالَةِ الْمُتَرَبَّصَةِ وَهِيَ حَالَةُ الْمَوْتِ, اعتبار کرتے ہوئے حالت متربصہ کا یعنی وہ حالت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, وَهِيَ حَالَةُ الْمَوْتِ, اور وہ موت کی حالت ہے, وقبل الموت حالت التملك استقبال محزن, اور موت سے پہلے جو مالک ہونے کی حالت ہے وہ تو محض استقبال ہے, وہ تو محض استقبال ہے, اور اس کی طرف اس نے نہ ملکیت کی نسبت کی ہے نہ سبب ملکیت کی طرف. اگر وہ یوں کہتا جس غلام کا میں فی الحال مالک ہوں یا مستقبل میں مالک ہوں گا وہ سب میری موت کے بعد آزاد ہیں, تو پھر تو اس نے مستقبل کی صراحت کر دی, پھر جس غلام کو بھی وہ خریدے گا وہ فوراً مدبر بن جائے گا. لیکن جب اس نے مستقبل کو ذکر نہیں کیا تو صرف حال داخل ہے اور حالت متربصہ یعنی موت کی حالت داخل ہے. جو فی الحال موجود ہیں وہ مدبر بن جائیں گے, جو بعد میں خریدے گا وہ مدبر نہیں بنیں گے, ان کو وہ بیچ بھی سکتا ہے, لیکن موت کے وقت پھر سارے ہی ثلث میں سے آزاد ہوں گے. تو کہتے ہیں وقبل الموت حالت التملک استقبال محزن, اور موت سے پہلے مالک ہونے کی جو حالت ہے وہ تو محض مستقبل کا زمانہ ہے, فلا يدخل تحت اللفظ, تو لہذا وہ اس آقا کے لفظ کے تحت داخل نہیں, یہ جو آقا نے املکہ کا لفظ کہا تھا, وعند الموت يصير كأنه قال, اور موت کے وقت ایسے ہی ہو جائے گا گویا کہ آقا نے کہا ہے, کل مملوک لی او کل مملوک املکہ فہو حر, کہ میرا جو بھی غلام ہے جس کا میں مالک ہوں تو وہ آزاد ہے, گویا موت کے وقت وہ کہہ رہا ہے, بخلاف قوله بعد غدن, بخلاف آقا کے قول بعد غدن, بھئی پچھلے مسئلے میں آیا تھا آقا نے کیا کہا, کل مملوک املکہ فہو حر بعد غدن, تو وہ صرف ایک تصرف تھا, وہ صرف ایجاب عتق ہے, وصیت نہیں, موت کی طرف نسبت نہیں کر رہا, تو لہذا وہاں صرف وہی غلام اس میں شامل ہوں گے جو قسم کے وقت اس کے مملوک ہیں, جبکہ یہاں پر ایجاب عتق بھی ہے اور وصیت بھی ہے. تو کہتے ہیں بخلاف قوله بعد غدین, بخلاف آقا کے قول بعد غدین کے, علام ما تقدم, اس وجہ سے جو گزر گئی, لأنه تصرف واحد, اس لیے کیونکہ وہ تو ایک ہی تصرف ہے, وہ ایجاب العتق, اور وہ اس بات عتق ہے, وليس فيه ايصاء, اس کے اندر وصیت نہیں ہے, والحالة محض استقبال, اور وہ حالت جو ہے وہ تو محض استقبال ہے, جی. یعنی بعد غدین والے مسئلے میں آقا کہتا ہے کل مملوک املکہ فہو حر بعد غدین, تو اس کے اندر آقا کے کہنے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ محض مستقبل ہے, وہ اس قول کے اندر داخل نہیں, اور وصیت بھی یہ نہیں ہے کہ وہ موت کے وقت داخل ہو جاتا. تو کہتے ہیں والحالت محض استقبال, اور وہ حالت جو ہے یعنی مستقبل میں جو مالک ہونے کی حالت ہے, محض استقبال, وہ صرف استقبال ہے یعنی مستقبل کا زمانہ ہے, تو نہ اس کی طرف ملکیت کی نسبت ہے نہ سبب ملکیت کی, لہذا وہ غلام آزاد نہیں ہوں گے بعد غدین والے قول میں جن کو وہ بعد میں خریدے بھائی. تو کہتے ہیں ففتارقا, تو یہ دونوں قول جدا ہو گئے, ایک جس میں بعد موتی کہا ہے اور ایک جس میں بعد غدین کہا ہے, ففتارقا, تو یہ دونوں قول جدا ہو گئے, ولا یقال انکم جمعتم, یہاں سے صاحب ہدایہ ایک اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں, اعتراض یہ کہ آقا نے کیا کہا ہے, کل مملوک املکہ فہو حر بعد موتی, تو یہاں پر املکہ فعل مضارع آیا, اور فعل مضارع آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کا حقیقی معنی حال ہے, तो फिलहाल जो गुलाम है आपने उनको मुदब्बर करार दे दिया, और मुस्तकबिल में यानी मौत के वक्त जितने भी गुलाम होंगे वो भी आजाद हो जाएंगे वसीयत के अंदर दाखिल होकर। तो ये तो आपने मुजारे का माना हाल वाला भी कर दिया और मुस्तकबिल वाला भी कर दिया, और एक वक्त में मुजारे का एक माना किया जा सकता है, दोनों माना नहीं किए जा सकते। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया कि हां हमने हाल और इस्तकबाल को जमा तो किया है लेकिन दोनों के सबब अलग अलग हैं। हाल को दाखिल किया है क्योंकि यह ईजाब इत्क है, और मुस्तकबिल को यानी मौत की हालत को दाखिल किया है क्योंकि यह वसीयत है। तो हाल और इस्तकबाल को हमने दो अलग अलग सबबों के एतबार से जमा किया, अगर एक ही सबब के एतबार से जमा करते तो वह जायज न होता, लेकिन हाल मुराद लिया इजाब इत्क के एतबार से कि आका इस बातें इत्क कर रहा है उन गुलामों में जो इस वक्त हैं, तो वह मुदब्बर बन जाएंगे, और वसीयत होने के एतबार से मुस्तकबिल वाले भी इसमें दाखिल हैं, तो दो सबब हैं अलग अलग भाई। तो कहते हैं वला युकालु, और ये न कहा जाए इन्नकुम जमातुम बैनल हाल वल इस्तकबाली कि आपने तो जमा कर दिया हाल और इस्तकबाल को, लिअन्ना नकूलु इसलिए क्योंकि हम कहते हैं, अब जवाब दे रहे हैं कहते हैं लिअन्ना नकूलु इसलिए क्योंकि हम कहते हैं नाम के हां यानी हमने दोनों को जमा किया है, लाकिन भी सबबैनी मुख्तलिफैनी लेकिन दो मुख्तलिफ सबबों से ईजाब इत्क व वसीयतुन, एक ईजाब इत्क है उसके एतबार से हाल दाखिल और एक वसीयत है उसके एतबार से मौत का वक्त दाखिल है भाई। तो कहते हैं नाम लाकिन भी सबबैनी मुख्तलिफैनी के हां लेकिन दो मुख्तलिफ सबबों से ईजाब इत्क व वसीयतुन, एक ईजाब इत्क है और एक वसीयत है। वह इन्नमा ला यजूज़ु ज़ालिका बिसबब वाहिदिन और ये जायज नहीं होता एक ही सबब से, इन एक ही सबब से हाल और इस्तकबाल का जमा जायज नहीं होता, लेकिन यहां सबब अलग अलग हैं भाई। आगे देखिए बाबुल इत्क अला जुअलिन, जुअल भाई जीम आइन लाम, जुअल याद रखो जुअल का माना है उजरत और मजदूरी, जुअल का क्या माना उजरत और मजदूरी, लेकिन यहां ये माल के माना में है, मुराद इससे क्या है माल। बाबुल इत्क अला जुअलिन माल की शर्त पर या माल के इवज में आजादी, माल के अवज में आजादी को इसमें बयान करेंगे। कहते हैं बाबुल इत्क अला जुअलिन ये बाब है माल के शर्त पर आजादी के बयान में। वमन आतका अब्दहु अला मालिन भाई याद रखो किसी शख्स ने अपने गुलाम को आजाद किया माल की शर्त पर या माल के अवज पर कि मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए माल के अवज आजाद किया, तो इसमें गुलाम का कबूल करना जरूरी है। गुलाम कबूल करेगा तो उसी वक्त आजाद हो जाएगा और फिर गुलाम को वो माल अदा करना पड़ेगा भाई। गुलाम का कबूल भी जरूरी है, वजह यह कि इसके अंदर आका गुलाम को मुफ्त नहीं आजाद कर रहा, वैसे ही नहीं आजाद कर रहा बल्कि इवज लेना चाहता है, और इवज को किसी आदमी पर वैसे ही नहीं वाजिब किया जा सकता जब तक वो कबूल ना कर ले। तो गुलाम का कबूल करना जरूरी है, जब गुलाम कबूल करेगा तो उस पर इवज आ जाएगा और वह आजाद हो जाएगा, अगर वो कबूल नहीं करता वो रद्द करना चाहता है तो रद्द भी कर सकता है। बात समझ में आ गई, फिर वो आजाद भी नहीं होगा और उसके जिम्मे माल भी नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वमन आतका अब्दहु अला मालिन और जिस शख्स ने अपने गुलाम को आजाद किया अला मालिन माल के इवज पर या माल की शर्त पर, दोनों तर्जमे आप कर सकते हैं, अला इवज के लिए भी आता है और शर्त के लिए भी। कहते हैं वमन आतका अब्दहु अला मालिन और जिसने अपने गुलाम को आजाद किया माल के इवज पर, फकबील अल अब्दु तो गुलाम ने कबूल कर लिया, आतका तो गुलाम आजाद हो जाएगा, वदालिका मिसलु अंतकूला और वो मसलन के आप यूं कहते हैं अंत हुर्रुन अला अल्फी दिरहमिन के तू आजाद है अला अल्फी दिरहमिन 1000 दिरहम की शर्त पर, औ बी अल्फी दिरहमिन या तू आजाद है 1000 दिरहम के इवज पर, वह इन्नमा यातिकुबी कबूली ही, यहां से बतला रहे हैं कि मतन में आया कि जैसे ही गुलाम कबूल करेगा साथ ही आजाद हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? कहते हैं वजह यह कि यह आका और गुलाम के दरमियान एक मुआहिदा हो रहा है, एक आकद हो रहा है, और आकद के अंदर ऐसा ही होता है कि जैसे ही दूसरा शख्स कबूल करता है उसका हुक्म साबित हो जाता है। मैंने आपसे कहा यह किताब मैंने आपको 100 रुपए में फरोख्त कर दी, आपने कहा मुझे कबूल है, जैसे ही आपने कबूल है कहा साथ ही बैअ का हुक्म साबित हो गया, आप इस किताब के मालिक बन गए। तो दो आदमियों के दरमियान जब आकद होता है तो उसमें कबूल भी जरूरी, और कबूल करते ही फौरन उसका हुक्म भी साबित हो जाता है। तो यहां आ गुलाम का कबूल करना भी जरूरी और कबूल करते ही इसका हुक्म भी साबित हो जाएगा, यानी गुलाम आजाद हो जाएगा और उसको अब वो रकम अदा करना पड़ेगी। तो कहते हैं वह इन नमा यातिकु बि कबूली ही, और गुलाम जो है अपने कबूल करने से आजाद हो जाएगा। लिअन्नहु मुआवज़तुल माली बिगैरिल माली, इसलिए भाई देखिए ये मुआवजा है माल का गैर माल के साथ। गुलाम को माल देना पड़ेगा तो एक तरफ से तो माल आ रहा है, जबकि इसके बदले में गुलाम को आजादी मिलेगी, और आजादी गैर माल है तो माल के मुकाबले में क्या आया है? गैर माल आया है, और ये अकद हो रहा है तो ये अकद मुआवजा है भाई, और लिहाजा यहां पर कबूल करते ही अकद का हुक्म साबित हो जाएगा। तो कहते हैं लिअन्नहु मुआवजतुल माली बिगैरिल माली, इसलिए क्योंकि ये माल का मुआवजा है गैर माल के साथ। इदिल अब्दुल्ला यमलिकु नफ्सहू, इसलिए क्योंकि गुलाम अपनी जात का मालिक नहीं बनता। भाई गुलाम तो माल दे रहा है लेकिन बदले में गुलाम अपनी जात का मालिक नहीं बनता, क्योंकि यह गुलामी तो इसकात का नाम है। जैसे तलाक किस चीज का नाम था? इसकात, के खावंद अपनी मिलके निकाह औरत पर से खत्म कर देता है, तो तलाक किसका नाम है? इसकात मिल्कियत का नाम है। इसी तरह एताक भी किस चीज का नाम है? इसकात मिल्कियत, के आका अपनी मिल्कियत उससे साकित कर रहा है। तो लिहाजा एक तरफ से गुलाम माल दे रहा है और दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है कि गुलाम अपनी जात का मालिक बन रहा है, बल्कि गुलाम पर से इसकात मिल्कियत हो रहा है, मिल्कियत साकित हो रही है। तो एक तरफ माल है दूसरी तरफ माल नहीं है भाई, बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर यूं कहा जाए गुलाम अपनी जात का मालिक बना है तो फिर तो माल के बदले माल हो गया, गुलाम ने भी क्या दिया? माल, और बदले में अपनी जात का मालिक बन गया, और गुलाम भी क्या होता है? माल होता है, तो माल के बदले माल हो जाता। तो ये है तो अक़्दे मुआवजा, लेकिन एक तरफ माल है दूसरी तरफ गैर माल है, यानी इताक है भाई। ये माना है लिअन्नहु मुआवजतुल माली बिगैरिल माली, इसलिए क्योंकि ये माल का मुआवजा है गैर माल के साथ। इदिल अब्दुल्ला यमलिकु नफ्सहू, क्योंकि गुलाम वो अपनी जात का मालिक नहीं बनता, क्योंकि ये इसकात मिल्कियत है तो गुलाम अपनी जात का मालिक नहीं बनता। वमिन कजियतिल मुआवजती, और मुआवजे के मामले में से है सुबूतुल हुक्म, हुक्म का साबित होना। मुआवजे का मामला जिसके साथ भी मुआवजे वाला मुआहिदा किया जाए, यानी बेअ शिरा वगैरह की जाए, तो जैसे ही दूसरा कबूल करेगा उसका हुक्म साबित हो जाएगा। यही बयान कर रहे हैं वमिन कजियतिल मुआवजती, कजिया का माना कर लें यहां मुआमला। वमिन कजियतिल मुआवजती, और मुआवजे के मामले में से है सुबूतुल हुक्म बी कबूलिल इवजी, के इवज को कबूल करने से हुक्म साबित हो जाता है। लिल हाली फिल हाली, उसी वक्त इवज को कबूल करने से उसी वक्त हुक्म साबित हो जाता है। कमा फिल बैई, जैसे के बैअ के अंदर होता है। फईदा कबीला, जब गुलाम ने कबूल कर लिया सारा हुर्रन, तो गुलाम आजाद हो गया। वमा शरता, और वो माल जिसकी आका ने शर्त लगाई थी, दैन अलैहि, वो इस गुलाम पर दैन है। हत्ता तसिहुल कफालतु बिही, भाई याद रखो यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, तो यहां तसिहु पर रफा पड़ेंगे। हत्ता तसिहुल कफालतु बिही, यहां तक कि इस पर कफालत भी सही है। भाई कफालत वही जिसको उर्दू में हम जमानत कहते हैं। आप एक आदमी के पास गए कि मुझे कर्ज चाहिए, मुझे कर्ज चाहिए। तो उसने कहा कि भाई किसी जामिन को लेकर आओ जो जमानत दे कि तुम मेरा कर्जा अदा करोगे। तो आप अपने साथ जैद को ले गए, जैद ने जाकर जमानत दी कि यह शख्स आपका कर्जा अदा करेगा, अगर इसने अदा न किया तो मैं अदा करूंगा, मुझसे आप मुतालबा करना। तो याद रखो उर्दू में तो इसको जमानत कहते हैं, अरबी में इसको कफालत कहते हैं। जैद आपका कफील बन गया। अब वो जो कर्ज खा है वो आपसे भी मुतालबा कर सकता है और वो जैद से भी मुतालबा कर सकता है। तो लिहाजा इस मसले के अंदर भी जब गुलाम ने कबूल कर लिया तो गुलाम आजाद हो गया और अब इसने माल अदा करना है, वो माल इस गुलाम पर देन है। लिहाजा इस देन के अंदर गुलाम किसी को कफील अपना बनाता है तो कफील बना सकता है, क्योंकि ये देने सहीह है भाई, और देने सही पर कफालत सही है। तो लिहाजा यहां पर इसमें कफालत भी सही है भाई, जबकि इसके मुकाबले में बदले किताबत उसमें कफालत सही नहीं। ये जो गुलाम आजाद हो गया इसके जिम्मे देन है और ये देने सहीह है, लिहाजा इस पर कफालत भी सही है, कोई और इसका कफील बन सकता है, जामिन बन सकता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आका अपने गुलाम से अक़्दे किताबत करता है कि तुम 2 साल के अंदर 20 लाख रुपए ले आओ तो तुम मेरी तरफ से आजाद हो, गुलाम ने कबूल कर लिया, ये आका और गुलाम में अक़्दे किताबत हो गया। अब गुलाम जो है वो किसी को जामिन बनाना चाहता है, कफील बनाना चाहता है, कहते नहीं ये बदले किताबत के अंदर कफालत सही नहीं। वजह ये कि ये जो मुकातब है ये अभी भी गुलाम है, ये मुकातब ये अभी भी गुलाम है, और अपने ही गुलाम पर देन का साबित होना ये खिलाफुल कियास है भाई। गुलाम जब आपका ममलूक है वो तो बेचारा किसी चीज का मालिक ही नहीं है, तो गुलाम पर आका के लिए देन नहीं आ सकता। गुलाम खुद क्या है? आका का ममलूक है, ये तो बेचारा किसी चीज का मालिक ही नहीं है, तो गुलाम पर आका के लिए देन साबित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अलबत्ता किताबत में देन साबित होता है गुलाम पर और वो खिलाफुल कियास है, और वो जरूरत की वजह से साबित है क्योंकि गुलाम आजादी का मोहताज है, उसको आजादी की जरूरत है, तो उस जरूरत की बिना पर शरीयत ने किताबत के अंदर देन की इजाजत दे दी, वरना तो कियास इसकी नफी करता है कि आका अपने ही गुलाम पर देन को साबित नहीं कर सकता। तो ये जो बदले किताबत है ये खिलाफुल कियास जरूरत की वजह से साबित है, और आपने जाब्ता पढ़ा है अजरूरी ये तकद्दर बिकद्री जरूरा, कि जो चीज जरूरत की वजह से साबित हो बकद्रे जरूरत ही साबित होती है। लिहाजा आजादी की जरूरत की वजह से बदले किताबत तो साबित हो गया, लेकिन ये आजादी के लिए साबित हुआ है ये कफालत के हक में साबित नहीं है, लिहाजा इसमें कफालत दुरुस्त नहीं है भाई। तो लिहाजा ये कफील की तरह मुतअद्दी नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वमा शरता दैनुन अलैही, और वो माल जिसकी शर्त लगाई आका ने दैनुन अलैही वो इस गुलाम पर देन है, हत्ता तसिहुल कफालतु बिही, यहां तक कि इस पर कफालत भी सही है, बिखिलाफ ही बदलिल किताबती, बखिलाफ बदले किताबत के लिए, अन्नहु सबता माल मुनाफी, इसलिए क्योंकि वो बदले किताबत साबित है मुनाफी चीज के बावजूद। मुनाफी चीज क्या है? कि ये गुलाम है और आका अपने गुलाम पर देन को वाजिब नहीं कर सकता। तो कहते हैं ली अन्नहु सबता माल मुनाफी, इसलिए क्योंकि ये बदले किताबत मुनाफी चीज के साथ साबित हुआ है, यानी खिलाफुल कियास तरीके पर यह साबित है। वह हुआ कियाम उर्रिकी, और वह मुनाफी चीज क्या है? वह हुआ कियाम उर्रिकी, और वह गुलामी का मौजूद होना है, अलामा उरिफा, उस वजह से जो जाना गया है, जो किताबुल मुकातब में साहिब हिदाय ने जिक्र फरमाया है कि मुकातब गुलाम ही होता है भाई। व इतलाकु लफ्जिल माली यंतजिमु अनवाअहु मिनन नक्दि वल अर्ज़ि वल हैवानि व इन काना बिगैर ऐनिही, भाई मतन के अंदर आया था वमन आता का अब दहू अला मालिन, माल का लफ्ज आया, और माल का लफ्ज मुतलक है, लिहाजा यह हर किस्म के माल को शामिल है। कुछ माल जो है वह नकद की सूरत में है, दिरहम, दीनार, सोना, चांदी और करंसी, ये सब क्या हैं? ये नकदियां हैं। और इसी तरह माल की एक किस्म है हैवानात, भाई हैवान को भी माल देकर खरीदा जाता है, हैवान भी माल है। या इसके अलावा और सामान है भाई, बर्तन हैं, कपड़े हैं और घर का सामान है, दुकान का सामान है, ये सब क्या है? अर्ज हैं, सामान है। तो माल सब को शामिल है, चाहे वो नकदी हो, चाहे अर्ज हो यानी सामान तिजारत वगैरह या और चीजें हों, और चाहे हैवानात हों, तो इन सब की शर्त लगाई जा सकती है भाई। तो कहते हैं वह इतलाकु लफ्ज़िल माली यंतज़िमु अनवाअहू, और लफ्ज़े माल का मुतलक होना ये माल की तमाम अकसाम को शामिल है, मिन नकदी वल अर्ज़ी वल हैवानी, यानी कि नकदी वल अर्ज़ी और सामान, वल हैवानी और हैवान, व इनकान बिगैर आइनी ही, अगरचे गैर मुअय्यन हो, अगरचे हैवान क्या हो, गैर मुअय्यन ही क्यों ना हो। भाई गैर मुअय्यन हैवान की बेअ तो नहीं जायज। आपने एक आदमी को गाय फरोख्त की कि मैंने आपको 2 लाख रुपए में एक गाय फरोख्त कर दी और गाय मुतय्यन नहीं है, तो ये बेअ फासिद है। वजह यह क्योंकि बाद में झगड़ा होगा, मुश्तरी चाहेगा मुझे खूब आला किस्म की गाय मिले और बाय चाहेगा कि मैं इसे आम सी गाय दे दूं भाई, तो लिहाजा बेअ में तो ये जायज नहीं है। लेकिन यहां पर बाज मामलात ऐसे हैं कि उनमें नरमी की जाती है, जैसे निकाह वगैरह है, निकाह तलाक है, सुलांदा मिल आमद है भाई। याद रखो बेअ की बुनियाद है तंगी पर, लिहाजा बेअ के मसले में थोड़ी सी भी जहालत आएगी तो वो बेअ फासिद है। जैसे एक आदमी दूसरे को गाय बेचता है लेकिन गाय मुतय्यन नहीं, तो ये बेअ फासिद है, क्योंकि बेअ की बुनियाद तंगी पर है, लोग बेअ में तंगी से काम लेते हैं। देखो बाय और मुश्तरी कीमत पर बड़ी बहस करते हैं, बाय चाहता है मैं ज्यादा कीमत लूं और मुश्तरी चाहता है मैं थोड़ी कीमत अदा करूं, तो बेअ की बुनियाद तंगी पर होती है, जबकि निकाह वगैरह की बुनियाद नरमी पर है, वहां अगर थोड़ी बहुत जहालत आ भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। लिहाजा एक आदमी एक औरत से निकाह करता है कि मैं एक गाय के इवज तुमसे निकाह करता हूं, एक गाय बतौर महर के मैं तुम्हें दूंगा। अब देखो यहां पर भी गाय मजहूल है, मुतय्यन नहीं है, लेकिन निकाह की बुनियाद नरमी पर है, लिहाजा मुतवस्सित किस्म की गाय मुराद ले लेंगे भाई, ना बहुत आला और ना बहुत अदना, मुतवस्सित किस्म की। तो कहते हैं वह इतलाकु लफ्ज़िल माली यंतज़िमु अनवाअहू, और लफ्ज माल का मुतलक होना यह माल की अकसाम को शामिल है, मिन नकदी वल अर्ज़ी वल हैवानी व इनकान बिगैर आइनिही, यानी के नकदी है और सामान है और हैवान है, व इनकान बिगैर आइनिही, अगरचे वो गैर मुअय्यन हो, लिअन्नहु मुआवज़तुल माली बिगैरिल माली, इसलिए क्योंकि ये माल का मुआवजा है गैर माल के साथ, फशाबहन निकाह व तलाक व सुलह अंदम इल अम्दी, तो ये मुशाबे हो गया निकाह के और तलाक के और सुलह अंदम इल अम्द बई। निकाह बई, निकाह में देखो खावंद महर देता है और बदले में दूसरी तरफ से माल नहीं आता, बल्कि खावंद बीवी के मनाफिया का मालिक हो जाता है, खावंद के लिए बीवी से सोहबत जायज हो जाती है, तो एक तरफ से माल है दूसरी तरफ से गैर माल है। इसी तरह तलाक के अंदर औरत जो है खावंद को माल देकर अपनी जान छुड़ाती है, तो वहां पर भी बीवी तो माल दे रही है लेकिन बदले में सिर्फ उसकी जान छूट रही है, उसको कोई माल नहीं मिल रहा। इसी तरह सुला अंदम इल अम्द, किसी ने जानबूझकर आलाए कत्ल से किसी को कत्ल कर दिया, तो याद रखो इस सूरत में किसास आता है, उसको भी कातिल को भी किसास में कत्ल किया जाएगा, लेकिन मकतूल के औलिया जो हैं वो इसके साथ सुला कर लेते हैं, वो इसके साथ सुला कर लेते हैं कि हमें इतना माल दे दो तो हम तुमसे किसास नहीं लेंगे। तो यहां पर भी वो कातिल जो है उसको तो माल देना पड़ रहा है लेकिन बदले में उसको माल नहीं मिल रहा, सिर्फ उसकी जान छूट रही है, तो ये जो निकाह है, ये तलाक है और सुलह अन दमिल अम्द है, इन सब के अंदर माल का इवज गैर माल है, तो इनमें अगर थोड़ी बहुत जहालत आ भी जाए तो कोई हरज नहीं है भाई। तो कहते हैं ली अन्नहू मुआवजतुल माली बिगैरिल माली, इसलिए क्योंकि ये माल का मुआवजा है गैर माल के साथ। फशाबहन निकाह व तलाक व सुलह अन दमिल अम्द, तो ये निकाह तलाक और सुलह अन दमिल अम्द के मुशाबे हो गया। वकदत ताम उवल मकील उवल मौजून इदाका न मालूम अल जिनसी, और इसी तरह है ताम। याद रखो ताम का लफ्ज अरबी जुबान में आमतौर पर गंदुम के लिए इस्तेमाल होता है, गंदुम को कहते हैं। तो अगर आका ने गंदुम को जिक्र किया या इसी तरह कोई मकीली चीज जिसको बर्तन में मापा जाता है, जैसे आजकल आप देखते हैं दूध को एक बर्तन में माप कर बेचा जाता है, और या इसी तरह कदीम जमाने में यह गल्ले को एक खास बर्तन में माप कर बेचा जाता था। आजकल तो अक्सर जगह इसको वजन किया जाता है। तो कुछ मकीलात हैं जिनको बर्तन में माप कर बेचा जाता है, कुछ मौजूनात हैं जिनको वजन करके बेचा जाता है। तो आका माल की शर्त पर गुलाम को आजाद कर रहा है, चाहे वो माल गंदुम हो या इसी तरह कोई और मकीलात, कोई मकीली चीज हो या मौजूनी चीज हो, तो इनकी जिन्स मालूम होनी चाहिए, अगरचे सिफत मजहूल ही क्यों ना हो। सिर्फ गंदुम जिक्र की है भाई, गंदुम तो आला भी हो सकती है, मुतवस्सित भी हो सकती है, अदना भी हो सकती है, तो सिफत बेशक मजहूल ही क्यों ना हो, इसमें कोई हरज नहीं। तो फिर इस सूरत में मुतवस्सित दर्जे वाली वही चीज आ जाएगी, वो जो मकीलात या मौजूनात में से जिक्र की है। तो कहते हैं वकदत ताम उवल मकील उवल मौजून इदाकान मालूम अल जिनसी, और इसी तरह है गंदुम और इसी तरह मकीलात और मौजूनात हैं। इजाकान मालूम अल जिनसी, जब इनकी जिन्स मालूम हो, भाई थोड़ी बहुत जहालत आ जाए तो फिर तो काम चल जाएगा। तो जिन्स मालूम होनी चाहिए भाई, जिन्स मालूम होनी चाहिए कि गंदुम है या चने हैं या और कोई चीज है, तो उसकी जिन्स मालूम होनी चाहिए। हां अगर सिफत जिक्र नहीं है तो उसमें कोई हरज नहीं। तो कहते हैं इदाका न मालूम अल जिनसी, जब इनकी जिन्स मालूम हो। वला तजुर रूहू जहालतुल वस्फी, और इसको नुकसान नहीं देता वसफ का मजहूल होना। ली अन्नहा यसीरतुन, क्योंकि वो थोड़ा सा है यानी मामूली है, ये मामूली जहालत है, और मामूली जहालत यहां पर बर्दाश्त कर ली जाएगी भाई। आगे देखिए قال ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأزونا قال, قال سے مراد صاحب قدوری ہیں بھئی صورت مسئلہ یہ کہ آقا نے غلام کو مال کی شرط یا مال کے عوض پر آزاد نہیں کیا بلکہ آقا مال کی ادائیگی کے ساتھ اس کی آزادی کو معلق کر رہا ہے कि अगर तुम मुझे 1000 दिरहम अदा कर दोगे तो तुम आजाद हो। तो फिर इस सूरत में याद रखो, अदा करने से गुलाम आजाद होगा, सिर्फ आका के कहने और गुलाम के कबूल करने से वो आजाद नहीं होगा। फर्क समझ में आ रहा है? पिछले मसले में आका ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें 1000 दिरहम के इवज या 1000 दिरहम की शर्त पर आजाद करता हूं, और गुलाम ने कहा था कबूल है, और कबूल है कहते ही गुलाम आजाद हो गया था। लेकिन यहां आका माल की शर्त नहीं लगा रहा बल्कि अदाए माल की शर्त लगा रहा है कि माल अदा कर दो। तो अब इस सूरत में गुलाम उसी वक्त आजाद नहीं होगा, बल्कि गुलाम जब माल अदा कर देगा फिर आजाद होगा। तो कहते हैं قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ولو علق عتقه بأداء المال, اور اگر آقا نے مال کی ادائیگی کے ساتھ غلام کی آزادی کو معلق کر دیا صح, تو یہ صحیح ہے یعنی مال ادا کرنے سے وہ آزاد ہو جائے گا. وصار معزونا, اور یہ غلام معزون بن جائے گا. عبد معزون بھائی وہ غلام جس کو تجارت کی اجازت ہوتی ہے, तो ये अब्दे माजून बन जाएगा, और यहां दलालतन जो है आका की तरफ से इजाजत हो गई, दलालतन आका की तरफ से तिजारत की इजाजत हो गई क्योंकि आका उसकी आजादी को मुअल्लक कर रहा है अदाए माल पर, लिहाजा दलालतन गोया आका की तरफ से इजाजत मिल गई ताकि वो माल को अदा कर सके। वो तिजारत करेगा तो माल को अदा कर सकता है, तो यहां दलालतन गुलाम को तिजारत की इजाजत हो गई ताकि वो माल अदा करके अपने आप को आजाद करवा सके। तो कहते हैं सहा, तो ये तालीक सही है। वह सारा माजूनन, और वो गुलाम आबदे माजून बन जाएगा। वदालिका मिसलु अन यकूला, और ये इसके मिसल है जैसे कोई शख्स कहता है इन अद्दैता इलैया अल्फ दिरहम फअंता हुर्रुन, कि अगर तूने मुझे 1000 दिरहम अदा कर दिए तो तू आजाद है। वह माना कौलिही सहा, भाई मतन में आया था सहा। वलौ अल्लका इत्कहू बि अदाइल माली सहा, अगर आका ने माल की अदायगी पर गुलाम की आजादी को मुअल्लक किया सहा, तो ये तालीक सही है। अब उसका माना बयान कर रहे हैं कि इसका क्या माना है भाई। कहते हैं वह माना कौलिही सहा, और साहिब कुदूरी के कौल सहा का माना यह है कि अन्नहु यातिकु अनिल अदाई, कि यह गुलाम आजाद हो जाएगा अदायगी करने से मिन गैर अन यसीरा मुकातबन, बगैर इसके कि वह मुकातब हो जाए, यानी मुकातब हुए बगैर। यह गुलाम मुकातब नहीं बनेगा, यह गुलाम मुकातब नहीं बनेगा भाई। भाई क्यों मुकातब क्यों नहीं बनेगा? कहते हैं भाई देखिए, यहां पर आका तालीक कर रहा है, उसके अल्फाज पर जरा गौर करें। इन अदैता इलैया अल्फ दिरहमिन फअंता हुर्रुन, अगर तू मुझे 1000 दिरहम अदा करे तो तू आजाद है। तो लफ्जों के एतबार से यह तालीक है, और आकदे किताबत वो तो आकदे मुआवजा होता है, आका और गुलाम के दरमियान एक आकदे मुआवजा होता है, लेकिन यहां पर कोई आकद नहीं है। आका तालीक कर रहा है भाई, आका तालीक कर रहा है। और फर्क इसमें याद रखो, फर्क यह है कि आकदे किताबत को दोनों मिलकर फसख कर सकते हैं, वो गुलाम फिर पहले जैसा आम गुलाम बन जाएगा, लेकिन ये आका ने तालीक कर दी। और आपने पढ़ा है कसम और तालीक के अंदर रुजू नहीं हो सकता, तो ये तालीक हो गई भाई, अब आका इसे रुजू नहीं कर सकता। और आगे चलकर साहिब हिदाया बतलाएंगे कि यहां पर इन का लफ्ज जिक्र है, इन अद्दैता इलैया अल्फ दिरहमिन, अगर तूने मुझे 1000 दिरहम अदा कर दिए फअंता हुर्रुन, तो तू आजाद है। तो आका ने अगर इन का लफ्ज जिक्र किया तो ये इख्तियार गुलाम को मजलिस तक है, मजलिस के अंदर अगर वो पैसे अदा कर देता है तो आजाद हो जाएगा, और मजलिस खत्म तो ये इख्तियार भी खत्म, क्योंकि आका उसको इख्तियार दे रहा है और अल्फाज तालीक वाले हैं, लिहाजा मजलिस के अंदर आका रुजू नहीं कर सकता। और अगर आका ने ईजा का लफ्ज इस्तेमाल किया, ईजा अद्दैता अल्फ दिरहम फअंता हुर्रुन, जब तुम मुझे 1000 दिरहम अदा करो तो तुम आजाद हो, तो इस सूरत में फिर तमाम जिंदगी के लिए यह तालीक हो गई, चाहे उस मजलिस में गुलाम अदायगी करे, चाहे बाद में जिंदगी में जब भी अदा करे तो इताक हो जाएगा। तो कहते हैं वा माना कौलिही सहा, और साहिब कुदूरी के कौल सहा का माना यह है कि अन्नहु यातिकु अनिल अदाई मिन गैरी अन यसीरा मुकातबन, कि यह गुलाम अदायगी से आजाद होगा बगैर इसके कि यह मुकातब बन जाए। ले अन्नहु सरीहुन फी तालीक अल-इत्क बिल अदाई, इसलिए क्योंकि आका के ये अल्फाज सरीह हैं फी तालीक अल-इत्क बिल अदाई, अदायगी के साथ आजादी को मुअल्लक करने में। आका के ये अल्फाज इन अद्दैता इलैया अल्फ दिरहम फअंता हुर्रुन, अगर तुमने मुझे 1000 दिरहम अदा कर दिए तो तुम आजाद हो, तो ये तालीक है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन्नहु सरीहुन फी तालीक अल-इत्क बिल अदाई, इसलिए क्योंकि आका का ये कौल जो है सरीह है अदायगी के साथ आजादी को मुअल्लक करने में। व इन का नफी ही मानल मुआवजती फिल इंतहाई, अगर चीज के अंदर मुआवजे वाला माना भी है इंतहा के एतबार से, इंतहा के एतबार से मुआवजे वाला माना भी है कि गुलाम माल अदा करेगा तो उसको आजादी मिल जाएगी, तो माल का इवज गैर माल हो गया। तो यहां आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे भाई कि यहां एक है इब्तिदा और एक है इंतहा। इब्तिदा के एतबार से देखें तो आका ने तालीक वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लिहाजा ये तालीक है, किताबत नहीं, वो मुकातब नहीं बनेगा। जब मुकातब नहीं बनेगा तो आका इसको बेच सकता है, लेकिन अगर मुकातब बन जाता फिर तो आका के लिए बेचना जायज ना होता, तो आका इसको बेच सकता है, लेकिन इंतहा के एतबार से ही किताबत के दर्जे में हो जाएगा। जबकि किताबत के दर्जे में हो जाएगा तो अगर यह बदल ले आता है और आका बाद में कहता है नहीं मैं तो बदल लूंगा ही नहीं, क्योंकि आका जब लेगा तो गुलाम आजाद हो जाएगा, गुलाम ने अदायगी कर दी, अदायगी करते ही गुलाम ने आजाद होना है। अब आका बाद में कहता है कि नहीं ये तो मैं लूंगा ही नहीं बदल, वरना तो मेरे हाथ से गुलाम निकल जाएगा। तो फिर इस सूरत में याद रखो, जैसे बदले किताबत में आका को मजबूर किया जाता है बदल लेने पर, यहां पर भी आका को मजबूर किया जाएगा बदल लेने पर। बात समझ में आ गई? तो इब्तिदाअन ये तालीक है, लिहाजा आका इसे रुजू नहीं कर सकता, और इंतहाअन ये क्या है, मुआवजा है किताबत की तरह, लिहाजा आका को बदल लेने पर मजबूर किया जाएगा। और आपको साहिब हिदाया यह भी बतलाएंगे, आका को मजबूर करने का मतलब यह नहीं है कि आका को जेल में डालेंगे या कैद करेंगे या सजा वगैरह देंगे, बल्कि मजबूर करने का मतलब यह है कि गुलाम ऐसी जगह लाकर वो चीज सामने रख दे कि तमाम रुकावटें दूर कर दी। मसलन आका के सामने लाकर वो पैसे रख दिए कि ये लीजिए अपने पैसे ले लें, तो सारे मान्या क्या कर दिए, दूर कर दिए। अब आका लेना चाहे तो इसको ले सकता है, तो बस इसी को अदायगी समझा जाएगा, इसी को अदायगी समझा जाएगा। यह है मजबूर करने का माना, ये माना नहीं कि आका को जेल में डालेंगे। सब में इसी तरह है, ब्याह वगैरह या बदले किताबत में भी जब इनमें इवज लाया जाए तो दूसरे शख्स को मजबूर किया जाएगा इवज लेने पर, क्योंकि उसने खुद एक मामला किया है भाई। लेकिन मजबूर करने का यह मतलब नहीं है कि उसकी पिटाई की जाएगी या उसको कैद में डाला जाएगा, बल्कि मजबूर करने का माना क्या है कि वो जो इवज है और वो जो लेने वाला है उनके दरमियान तखलिया कर दिया जाएगा, खलवत कर दी कि लेना चाहे तो ले ले, कोई रुकावट कोई मान्या वगैरह मौजूद नहीं है, तो इसी को अदायगी शुमार किया जाएगा। तो कहते हैं वह इन का नफी ही मानल मुआवजती फिल इंतहा अला मानु बयीनु, अगरचे इसके अंदर मुआवजे वाला माना भी है इंतहा के एतबार से, अला मानु बयीनु इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से जो हम बयान करेंगे इंशा अल्लाह ताला। वह इन नमा सारा माजूनन, भाई मतन में आया था कि यह गुलाम अब माजून बन जाएगा, यानी दलालतन इजाजत हो गई, और दलालतन क्यों इजाजत हो गई, ताकि वो माल अदा कर सके, उसके बगैर तो वो माल अदा नहीं कर सकता। तो अब वही वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वह इन नमा सारा माजूनन, और ये गुलाम जो है अब्द माजून बन जाएगा, ले अन्नहु रगबहु फिल इक्तिसाबी, इसलिए क्योंकि आका ने इस गुलाम को तरगीब दिलाई है फिल इक्तिसाबी कमाई करने में, भी तलब हिल अदा अमीनहु, इससे अदायगी को तलब करते हुए, आका ने इस गुलाम से अदायगी को तलब करते हुए इसको कमाई की तरगीब दिलाई है। वह मुरादहु तिजारत, और आका की मुराद जो है वो तिजारत है, दून तकद्दी, तकद्दी तकद्दी का माना है भीख मांगना भाई, तकद्दा या तकद्दा तकद्दीयन, इसका माना है भीख मांगना। तो कहते हैं वो मुरादहु तिजारत दून तकद्दी, और आका की मुराद जो है वो तिजारत है न कि भीख मांगना। फकान इज़्नन लहू दलालतन, तो गुलाम के लिए दलालतन इजाजत होगी, दलालतन इजाजत होगी, क्योंकि आका खुद उसको तरगीब दिला रहा है कि माल लेकर आओ, तो दलालतन गुलाम को इजाजत होगी ताकि वो अदायगी कर सके भाई। वह इन अहजर अल माल अजबराहुल हाकिम अला कब्जिही, और अगर गुलाम ने माल हाजिर कर दिया, अजबराहुल हाकिम, तो आका को हाकिम मजबूर करेगा, अला कब्जिही उस माल पर कब्जा करने पर, वहां तकल अब्दू, और गुलाम आजाद हो जाएगा, हाकिम आका को मजबूर करेगा। और मैंने बतलाया कि मजबूर करने का क्या माना है कि माल और आका के दरमियान तखलिया कर दिया जाएगा, आका के सामने लाकर चीज रख दी गई, अब वो उठाए या ना उठाए वो अदायगी शुमार होगी भाई। तो कहते हैं वमान अल इजबारी फी ही वफी साइर अल हुकूकी, कहते हैं जबर करने का माना इस मसले में और बाकी हुकूक के अंदर कि अन्नहू युनज़्ज़लु काबिज़न बितख़लियती, कि आका जो है उसको काबिज के दर्जे में उतार लिया जाएगा बितख़लियती खलवत करने से। तख़लिया का माना खलवत कर देना, खाली कर देना, यानी वो चीज आका के सामने लाकर रख दी और आका में और उस चीज में खलवत कर दी, आका उसको लेना चाहे तो ले सकता है भाई। और इन्होंने बताया इसमें भी यही हुक्म है वफी साइरिल हुकूकी, बाकी हुकूक का भी यही हुक्म है, बैअ बदले किताबत या इसी तरह बदले खुला वगैरह जितने भी ये आकद हुए हैं इनके अंदर इवज लेने पर मजबूर किया जाएगा दूसरे को। और मजबूर करने का मतलब पिटाई करना या कैद में डालना नहीं बल्कि तखलिया है कि उस माल उस इवज में और लेने वाले में तखलिया कर दिया जाए, यह माना है। वह मानल इजबारी फी ही वफी साइरिल हुकूकी, और इसके अंदर और बाकी हुकूक के अंदर जबर करने का माना यह है कि अन्नहु युनज़्ज़लु काबिज़न बितख़लियती, कि उस शख्स को है कब्जा करने वाले के दर्जे में उतार लिया जाएगा खलवत करने से। वकाल ज़ुफ़रु रहिमहुल्लाह, और इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं मजबूर नहीं किया जाएगा। वजह यह कि यह तालीक है, अगर तूने मुझे 1000 दिरहम अदा कर दिए तो तू आजाद है। ये अल्फाज तालीक वाले हैं, आकदे किताबत वाले नहीं। और आप जानते हैं किताबत के अंदर तो गुलाम का कबूल करना जरूरी होता है, वो तो आका और गुलाम में मुआहिदा होता है, जबकि तालीक के अंदर गुलाम का कबूल करना जरूरी नहीं होता। यहां पर भी गुलाम का कबूल करना जरूरी नहीं है। इमाम ज़ुफ़र की दलील चल रही है, वो क्या फरमाते हैं कि यहां आका को इवज लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? वो फरमाते हैं कि देखो ये तालीक है, आप इसके अल्फाज पर गौर कर लें, ये अल्फाज तालीक वाले हैं, अक़्दे किताबत वाले नहीं, ये अल्फाज तालीक वाले हैं, इसीलिए तो आपके नजदीक भी गुलाम का कबूल करना जरूरी नहीं, गुलाम का कबूल करना जरूरी नहीं है। और नीज ये अल्फाज तालीक वाले हैं, और आप जानते हैं तालीक और कसम में रुजू नहीं हो सकता, उसको फसख नहीं किया जा सकता, तो यहां पर भी आका इसको फसख नहीं कर सकता। मालूम हुआ ये तालीक है, और तालीक के अंदर शर्त के वजूद पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। आका ने गुलाम से कहा कि ये काम कर लो तो तुम आजाद हो, तो उस काम के करने पर गुलाम को मजबूर नहीं किया जा सकता। यहां पर भी आका ने क्या कहा, अगर 1000 दिरहम मुझे अदा कर दो तो तुम आजाद हो, तो आका को भी ये माल लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तालीक या कसम की जो शर्त होती है उस शर्त पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। वजह यह कि अभी गुलाम का हक ही नहीं बना आजादी, आकदे किताबत के अंदर तो आजादी गुलाम का हक बन गया है, लिहाजा वहां तो आका को मजबूर करेंगे, गुलाम इवज ले आए तो आका को मजबूर करेंगे कि यह इवज तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि आजादी गुलाम का हक है। जबकि यहां तो तालीक है, और तालीक के अंदर जब तक शर्त नहीं है तो गुलाम उससे पहले आजादी का मुस्तहिक भी नहीं है, जब आजादी का मुस्तहिक नहीं है तो आका को माल लेने पर इवज लेने पर मजबूर भी नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वकाला ज़ुफ़र रहमहुल्लाह, और इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह फरमाते हैं ला युजबरु अलल कबूली, के आका को मजबूर नहीं किया जाएगा कबूल करने पर। वहुवल कियास, और यही कियास भी है, कियास भी यही तकाजा करता है कि शर्त के वजूद पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। वह हुवल कियास, और यही कियास भी है। लिअन्नहु तसर्रुफ यमीन, इसलिए क्योंकि यह तसर्रुफ यमीन है यानी तालीक है। इज हुआ तालीकुल इत्क बिशर्ति लफ्जन, इसलिए क्योंकि यह शर्त के साथ आजादी को मुअल्लक करना है लफ्जन, लफ्जों के एतबार से। आप लफ्जों में गौर कर ले, इन अद्दैता इलैया अल्फ दिरहम फअंता हुर्रुन, ये लफ्ज तालीक वाले हैं। तो कहते हैं इद हुआ तालीक उल इत्क बिशर्त लफ्जन, इसलिए क्योंकि लफ्जों के एतबार से यह शर्त के साथ आजादी को मुअल्लक किया जा रहा है। वलिहादा ला यतवक्कफु अला कबूल अल अब्दी, और इसीलिए तो यह गुलाम के कबूल करने पर मौकूफ नहीं है। वला यहतमिल अल फस्खा, और इसीलिए तो यह फसख का भी एहतमाल नहीं रखता, क्योंकि तालीक में फसख नहीं हो सकता और न कबूल की जरूरत होती है। वला जबरा अला मुबाशरती शुरूतिल अयमानी, मुबाशरत का माना सरंजाम देना। वला जबरा अला मुबाशरती शुरूतिल अयमानी, और कस्मों की शर्तों के सरंजाम देने पर जबर नहीं हो सकता। वला जबरा, और जबर नहीं हो सकता। अला मुबाशरती शुरूतिल अयमानी, कस्मों की शर्तों के सरंजाम देने पर। लिअन्नहु लस्तिहकाक कबल वजूद शर्ती, इसलिए क्योंकि कोई इस्तिहकाक नहीं होता शर्त के पाए जाने से पहले, जब तक शर्त नहीं दूसरा शख्स किसी चीज का मुस्तहिक नहीं, लिहाजा यहां जबर नहीं हो सकता। बिखिलाफ इल किताबती, बखिलाफ अक़्दे किताबत के। लिअन्नहु मुआवजतुन, क्योंकि किताबत वो तो अक़्दे मुआवजा है। वल बदल फीहा वाजिबुन, और बदल उसके अंदर वाजिब है, जब वाजिब है तो वहां पर अदायगी पर मजबूर किया जा सकता है। यह इमाम जुफर की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि यह तालीक है, लिहाजा आका को माल के लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि बदल किताबत में मजबूर किया जा सकता है। अब हमारी दलील आएगी, हमारी दलील मैं पहले भी बयान कर चुका। हम क्या कहते हैं जवाब में कि यह लफ्जों के एतबार से तालीक है, तो इब्तिदाअन यह तालीक है, लेकिन इंतहाअन देखें आखिर में वो इवज देगा तो आजाद हो जाएगा, तो आखिर के एतबार से वो अक़्द मुआवजा है, तो ये आखिर के एतबार से ये किताबत की तरह है, और किताबत के अंदर तो माल लेने पर, इवज लेने पर आका को मजबूर किया जाता है, तो यहां भी मजबूर किया जाएगा। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु तालीकुन नज़रन इलल लफ्ज़ी, कि यह तालीक है लफ्जों की तरफ देखते हुए। व मुआवजतुन नज़रन इलल मकसूदी, और मकसूद की तरफ देखते हुए यह मुआवजा है कि आका बदल लेना चाहता है आजादी का। लिअन्नहु मा अल्लका इत्कहु बिल अदाई, इसलिए क्योंकि आका ने आजादी को अदायगी पर मुअल्लक नहीं किया। इल्ला लियहुस्सहु अला दफ़इल माली, मगर इसलिए कि ताकि इस गुलाम को उभारे माल के हवाले करने पर। हस्सा यहुस्सु सा के साथ क्या माना है, उभारना। फिर देख लीजिए तर्जमा, लिअन्नहु मा अल्लका इत्कहु बिल अदाई इल्ला लियहुस्सहु अला दफ़इल माली, इसलिए क्योंकि आका ने अदायगी के साथ इसकी आजादी को मुअल्लक नहीं किया, मगर इसलिए कि ताकि इसको माल के देने पर उभारे। फयनालुल अब्दु शरफल हुर्रियती, तो पा लेगा गुलाम जो है आजादी के एजाज को। फयनालुल अब्दु शरफल हुर्रियती, तो गुलाम जो है वो आजादी के एजाज को हासिल कर लेगा। वल मौलल माल भी मुकाबलती ही, और आका माल को हासिल कर लेगा भी मुकाबलती ही, उसके मुकाबले में। भी मंजिलतिल किताबती, किताबत के दर्जे में गुलाम आजादी हासिल कर लेगा और आका माल हासिल कर लेगा उसके मुकाबले में, यानी ये किताबत के दर्जे में होगा भाई। वलिहादा कान इवजन फित तलाकी फी मिसली हाजल लफ्ज़ हत्ता कान बाइना, भाई देखिए अगर इन्हीं लफ्जों के साथ खावंद अपनी बीवी को तलाक दे, हमारी दलील चल रही है, हम जवाब दे रहे हैं इमाम जुफर रहमहुल्लाह को, हम कहते हैं अगर इन्हीं लफ्जों के साथ खावंद अपनी बीवी को तलाक दे और यूं कहे इन अदैती इलैया अल्फन फअंति तालिकुन, अगर तू मुझे 1000 दिरहम अदा कर दे तो तुझे तलाक है, तो बिल इत्तेफाक वो औरत जब अदायगी कर देगी तो तलाके बाइन होगी, क्योंकि मैंने आपको बतलाया था जब भी तलाक के मुकाबले में इवज आ जाए तो वो तलाक कौन सी होती है, तलाक बाइन होती है, क्योंकि माल देकर औरत अपनी जान छुड़ाना चाहती है खावंद से, और तलाक रजई में तो खावंद रुजू कर सकता है, उसके अंदर तो औरत की जान नहीं छूटती, तो लिहाजा जब माल आएगा तलाक के इवज में तो तलाक हमेशा बाइन होगी। तो इन लफ्जों के साथ भी जब खावंद अपनी बीवी को तलाक दे तो कौन सी तलाक होगी, तलाक बाइन, मालूम हुआ कि यहां भी मुआवजे का एतबार है, तो मालूम हुआ इस तलाक के मसले में भी मुआवजे का एतबार है। तो जब तलाक के अंदर मुआवजे का एतबार है तो इसी तरह यहां इस गुलाम के मसले में भी बिल्कुल वही सूरत है। जब वो इवज दे रहा है और गुलाम को आजादी मिल रही है तो यहां भी मुआवजे का एतबार करना पड़ेगा। तो कहते हैं वली हादा कान इवजन फी तलाक फी मिसल हाजल लफ्जी, और इसीलिए माल जो है वो इवज होगा तलाक के अंदर इस जैसे लफ्जों में, हत्ता कान बाइनन, यहां तक के तलाके बाइन होगी। फजअलनाहु तालीकन फिल इब्तिदाई अमलन बिल लफ्जी। अच्छा, मैंने बतलाया आपको कि ये जो आका ने कहा इन अदैता इलैया अल्फ दिरहम फअंत हुर्रुन, इसके अंदर लफ्जों को देखें तो तालीक है और इंतहा को देखें तो ये किताबत के दर्जे में है। तो हमने दोनों की रियायत की भाई, दोनों मुशाबहतों पर अमल किया। तालीक के साथ मुशाबहत है तो तालीक वाला हुक्म भी दिया, लिहाजा आका के लिए यह गुलाम बेचना जायज है। जैसे तालीक के अंदर आका अपने गुलाम से कहता है अगर तू उस घर के अंदर गया तो तू आजाद है, आका ने तालीक कर दी, गुलाम जैसे ही उस घर में जाएगा आजाद हो जाएगा। लेकिन उस घर में जाने से पहले ही आका बेचना चाहे तो बेच सकता है, तालीक की वजह से गुलाम की बैअ मुमतनेअ नहीं होती भाई। तो यहां पर भी हमने इसको तालीक वाला हुक्म दिया, गुलाम की बैअ मुमतनेअ नहीं है, आका इस गुलाम को बेच सकता है। अगर किताबत वाला हुक्म हम देते फिर तो गुलाम को बेचना जायज ही ना होता। तो इंतहा के एतबार से किताबत वाला हुक्म दिया हमने कि आका को मजबूर किया जाएगा इवज लेने पर, लेकिन इब्तिदा में तालिक वाला हुक्म ही है, हत्ता कि आका के लिए यह गुलाम बेचना जायज है। फजअलनाहु तालीकन फिल इब्तिदाई अमलन बिल लफ्जी, तो हमने इसको तालीक करार दिया इब्तिदा के अंदर, अमलन बिल लफ्जी, लफ्ज पर अमल करते हुए। वदफअन लिज़ररि अनिल मौला, और आका से नुकसान को दूर करने के लिए। हत्ता ला यमतनिउ अलैहि बैउहू, यहां तक कि आका पर इस गुलाम का बेचना मुमतनिअ नहीं होगा। हत्ता ला यमतनिउ, यहां पर भी रफा पड़े भाई, क्योंकि ये माकबल की तरफ देखते हुए मुस्तकबिल नहीं है भाई। हत्ता ला यमतनिउ अलैहि बैउहू, यहां तक कि आका पर उस गुलाम की बैअ मुमतनिअ नहीं होगी। वला यकूनुल अब्दु अहक्क बिमुकासबिही, और गुलाम भी अपनी कमाइयों का ज्यादा हकदार नहीं होगा। ये अब्दे माजून बन गया, लेकिन अब्दे माजून उसको सिर्फ तिजारत की इजाजत मिली है, वो कोई अपनी कमाई का ज्यादा हकदार नहीं, वो जो कुछ कमा रहा है आका का है। जबकि इसके मुकाबले में मुकातब जो है वो अपनी कमाई का खुद ज्यादा हकदार है, वो जो कुछ कमा रहा है अपने लिए कमा रहा है, वो अदायगी करेगा और आजाद हो जाएगा। लेकिन हमने इस गुलाम को मुकातब का दर्जा नहीं दिया, जब नहीं दिया तो यह अपनी कमाई का ज्यादा हकदार नहीं है भाई। ये माना है वला यकूनुल अब्दु अहक बिमुकासबिही, और ये गुलाम अपनी कमाइयों का ज्यादा हकदार नहीं होगा। वला यसरी इलल वलदिल मौलूद कबलल अदाई, और ये सिरायत नहीं करेगा उस बच्चे की तरफ जो पैदा हो जाए अदायगी से पहले। सूरत ये, आका ने अपनी बांदी से कहा इन अदैती इलैया अल्फन फअंत हुर्रतुन, अगर तूने मुझे 1000 दिरहम अदा कर दिए तो तू आजाद है। तो हमने इसको मुकातबा नहीं बनाया, अगर मुकातबा बनाते तो आपने पढ़ा है कि उसूल और फुरू वो भी अक़्द किताबत में दाखिल हो जाते हैं, लिहाजा अगर इसको हम मुकातबा बनाते और आजादी से पहले ये एक बच्चे को जन्म दे देती तो वो बच्चा भी अक़्द किताबत में दाखिल होता, और बांदी जब पूरी अदायगी कर देती तो खुद भी आजाद होती और बच्चा भी आजाद। लेकिन हमने इसको किताबत वाला हुक्म नहीं दिया, लिहाजा बांदी ये जो आका ने जिस बांदी को क्या कहा है अगर तूने 1000 दिरहम अदा कर दिए तो तू आजाद है, तो हम कहेंगे ये सिर्फ तालीक है। तो बाद में अब बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद फिर बांदी ने अदायगी की तो सिर्फ बांदी आजाद होगी, उसका बच्चा आजाद नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको किताबत वाला हुक्म नहीं दिया। ये माना है वला यसरी इलल वलदिल मौलूद कबल अल अदाई, और ये जो तालीक है ये सिरायत नहीं करेगी उस बच्चे की तरफ जो पैदा हुआ है अदायगी से पहले। वजअलनाहु मुआवजतन फिल इंतिहा इंदल अदाई, और हमने इस कौल को मुआवजा करार दिया इंतहा में इंदल अदाई अदायगी के वक्त, कि ये मुआवजा है। दफअन लिल गुरूर यानी अब्दी, गुलाम से धोखे को दूर करने के लिए जी। गुलाम से धोखे को दूर करने के लिए जब गुलाम अदायगी कर रहा है तो हमने इसको मुआवजा करार दिया, और मुआवजे के लेने पर तो दूसरे को मजबूर किया जा सकता है। यहां पर भी गुलाम ने मेहनत की है, मशक्कत उठाई है, माल कमाया है अपनी आजादी के लिए, तो लिहाजा अगर ऐसा हम नहीं करेंगे फिर तो गुलाम बेचारे के साथ धोखा हो गया। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं दफअन लिल गुरूर यानी अब्दी, गुलाम से धोखे को दूर करने के लिए। हत्ता युजबरुल मौला अलल कबूली, यहां पर भी हत्ता के बाद युजबरु ही पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हत्ता का माबाद माकबल की तरफ निस्बत करते हुए यहां मुस्तकबिल नहीं है। हत्ता युजबरुल मौला अलल कबूली, यहां तक कि आका को भी मजबूर किया जाएगा इसके कबूल करने पर। आखिर के एतबार से यह क्या है? मुआवजा, और मुआवजे में दूसरे शख्स को इवज लेने पर मजबूर किया जा सकता है। तो कहते हैं हत्ता युजबरुल मौला अलल कबूली, यहां तक कि आका को मजबूर किया जाएगा इसके कबूल करने पर। फाला हादा यदूरुल फिकहु, इसी पर मदार है फिका का, इसी पर मदार है फिका यानी फिकही मसाइल का मदार इसी पर है। एक चीज की जब दो मुशाबहतें हों, इब्तिदाअन एक चीज से मुशाबहत हो, इंतहाअन दूसरी चीज से मुशाबहत हो, तो दोनों का लिहाज रखा जाएगा। बात समझ में आ गई। यह माना है फाला हादा यदूरुल फिकहु, इसी पर फिका का मदार है यानी फिकही मसाइल का मदार है। वह तुखर रजुल मसाइलू, और इसी पर मसाइल निकाले जाएंगे, यानी एक मसले की जब मुशाबहत दो चीजों से है तो दोनों मुशाबहतों पर अमल किया जाएगा। नजीरुहुल हिबतु बिशर्तिल इवजी, और इसकी नजीर जो है इवज की शर्त पर हिबा है। एक आदमी दूसरे को तोहफा देता है, इसको हिबा कहते हैं, लेकिन बाज औकात हिबा के अंदर इवज की शर्त लगा दी जाती है। एक आदमी आपके पास गाड़ी ले आया कि यह गाड़ी मैंने आपको तोहफे के तौर पर दे दी, लेकिन शर्त यह है कि ये जो आपकी जेब पर कलम लगा हुआ है ये बदले में आप मुझे दे दें। तो देखो यहां पर लफ्जों के एतबार से देखें तो यह हिबा है, वो तोहफा दे रहा है, और तोहफे के अंदर रुजू हो सकता है, और तोहफे पर जब तक कब्जा ना किया जाए दूसरा इसका मालिक भी नहीं बनता। लिहाजा सिर्फ यह कहने की वजह से आप इस गाड़ी के अभी मालिक नहीं बने। हां जब उसने गाड़ी आपके हवाले कर दी आप गाड़ी के मालिक बन गए, और फिर जब आपने अपना कलम उतार कर उसको दे दिया तो कलम लेते ही अब यह बै के दर्जे में हो गया। ये बै, और बै के अंदर तो रुजू नहीं हो सकता, तो यहां पर भी अब रुजू नहीं हो सकता भाई। तो यहां दोनों मुशाबहतों पर अमल किया गया भाई। तो कहते हैं नजीरुहुल हिबतु बिशर्तिल इवजी, इसकी नजीर जो है वो हिबा है, बिशर्तिल इवजी जो इवज की शर्त पर हो। वलव अदलबाज युजबरु अलल कबूली, अच्छा भाई गुलाम सारा इवज नहीं लेकर आया, कुछ इवज लेकर आ गया, तो क्या उस कुछ इवज के लेने पर भी मजबूर किया जाएगा आका को? कहते हैं हां कुछ इवज ले आए तब भी आका को मजबूर किया जाएगा उसके लेने पर। हां अलबत्ता गुलाम नहीं आजाद होगा, क्योंकि गुलाम की आजादी तो मुअल्लक है पूरी अदायगी के साथ, तो जब तक पूरी अदायगी नहीं होगी गुलाम आजाद नहीं होगा। तो कहते हैं वलव अद्दल बाजा, और अगर गुलाम ने बाजे माल अदा कर दिया, युजबरु अलल कबूली, तो आका को मजबूर किया जाएगा उसके कबूल करने पर। इल्ला अन्नहु ला यातिकु मालम युअद्दिल कुल्ला, मगर यह कि गुलाम आजाद नहीं होगा जब तक वो सारा माल अदा न कर दे, ले अदमी शर्ती, शर्त न होने की वजह से, क्योंकि कुछ माल अदा किया है तो अभी शर्त पूरी नहीं। शर्त पूरी कब होगी? जब सारा माल अदा कर देगा। कमा इदा हत्तल बाजा अद्दल बाकिया, हत्ता या हुत्तु का माना है कमी करना। कमा इदा हत्तल बाजा, जैसे आका ने बाजे माल के अंदर कमी कर दी, वह अद्दल बाकिया, और गुलाम ने बाकी का माल अदा कर दिया। सूरत यह आका ने गुलाम से कहा था अगर तुमने 1000 दिरहम अदा कर दिए तो तुम आजाद हो, और बाद में फिर आका कहता है चलो अच्छा 1000 अदा न करो, यूं करो मुझे 500 अदा कर दो, तो आका ने 500 कमी कर दी। तो अब गुलाम 500 ले आया, तो इसमें भी आका को लेने पर मजबूर किया जाएगा, अलबत्ता गुलाम आजाद नहीं होगा क्योंकि शर्त नहीं पाई गई। शर्त तो क्या थी, 1000 अदा करेगा तो तब आजाद होगा। तो ये माना है कमा इदा हत्तल बाजा व अद्दल बाकिया, जैसे आका ने बाजे माल में कमी कर दी व अद्दल बाकिया और गुलाम ने बाकी का माल अदा कर दिया, तो इस सूरत में गुलाम आजाद नहीं होगा। सुम्मलव अद्दा अल्फन इक्तसबहा कबल तालीक, सूरत मसला ये कि गुलाम जो है, गुलाम को आका ने पहले से ही तिजारत की इजाजत दी हुई थी, गुलाम पहले से ही कमाई कर रहा था, लेकिन इसने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, आका के हवाले नहीं किए थे। अगरचे अब्द माजून के पास सारा माल आका का होता है, लेकिन इसने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। आका ने उससे कहा बाद में कि अगर तुम मुझे 1000 दिरहम अदा कर दो तो तुम आजाद हो। वही पैसे गुलाम ने निकाले और आका को दे दिए। तो कहते हैं इस सूरत में अदायगी करते ही गुलाम आजाद हो जाएगा क्योंकि शर्त पाई गई। अगरचे ये माल आका का है लेकिन अदायगी तो पाई गई, जब अदायगी पाई गई तो गुलाम आजाद हो गया। अलबत्ता अलबत्ता आका अब गुलाम पर रुजू करेगा कि मुझे 1000 दिरहम अदा करो। वो माल तो था ही आका का जो पहले दिया भाई, लिहाजा ये जो पहले से कमाया हुआ था इसकी अदायगी से भी गुलाम तो आजाद हो जाएगा, लेकिन आका गुलाम पर रुजू कर सकता है। बात समझ में आ गई। जबकि इसके मुकाबले में अगर आका के कहने के बाद गुलाम ने 1000 दिरहम कमाए और अदा कर दिए, तो फिर इस सूरत में आका गुलाम पर रुजू नहीं कर सकता क्योंकि यह माल जो उसने कमाया है यह इसने अपनी आजादी के लिए कमाया है बाद में भाई। तो कहते हैं सुम मलव अद्दा अल्फन इक्तसबहा कबल तालीकी, फिर अगर गुलाम ने अदा कर दिया ऐसा 1000, देखो अल्फन नकेरा है और इक्तसबहा उसके बाद फेल आया, और नकेरा के बाद फेल आया तो वो उसकी सिफत बनता है, और मौसूस सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूस से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। कहते हैं सुम मलव अद्दा अल्फन इक्तसबहा कबल तालीकी, और फिर अगर गुलाम ने ऐसा 1000 अदा कर दिया जिसे उसने तालीक से पहले कमाया था, रजअल मौला अलैही, तो आका गुलाम पर रुजू करेगा, वअतका और गुलाम आजाद हो जाएगा, लिस्तहकाकीहा उस 1000 का मुस्तहिक होने की वजह से। यह लिस्तहकाकीहा इसका ताल्लुक है रजअल मौला अलैही, यह इल्लत है। आका गुलाम पर क्यों रुजू करेगा, क्योंकि आका 1000 का मुस्तहिक है गुलाम पर, और यह तो आका ही का माल उसने उठाकर आका को दिया है, तो आका गुलाम पर 1000 दिरहम का मुस्तहिक है, लिहाजा आका उस पर रुजू करेगा। तो यह लिस्तहकाकीहा यह इल्लत है किस चीज की, रज अल मौला, आका रुजू कर सकता है गुलाम पर, क्यों, क्योंकि आका गुलाम पर 1000 दिरहम का मुस्तहिक है। तो कहते हैं रजअल मौला अलैहि व अतका लिस्तहकाकीहा, आका जो है गुलाम पर रुजू कर सकता है इस वजह से कि आका 1000 का मुस्तहिक है, व अतका और गुलाम आजाद हो जाएगा। वलव कानक तसबहा बादहु लम यरजिअल मौला अलैहि, वलव कानक तसबहा बादहु, और अगर गुलाम ने 1000 दिरहम कमाए हैं बादहु तालीक के बाद, लम यरजिअल मौला अलैहि, तो आका उस पर रुजू नहीं कर सकता, लिअन्नहु माजूनुम मिन जिहतिहि बिल अदाइ मिन्हु, इसलिए क्योंकि गुलाम जो है वह माजून है मिन जिहतिहि आका की जानिब से, बिल अदाइ मिन्हु उस गुलाम की तरफ अदायगी की वजह से, गुलाम की तरफ से अदायगी की वजह से, गुलाम अब्दे माजून है उसको तिजारत की इजाजत है, जब वो अब्दे माजून है तो अब आका उस पर रुजू नहीं कर सकता। यह माना है लिअन्नहु माजून मिन जिहतिही बिल अदाइ मिन्हु, इसलिए क्योंकि गुलाम जो है आका की जानिब से माजून है बिल अदाइ मिन्हु उस गुलाम की तरफ से अदायगी की वजह से। सुम्मल अदा उफी कौलिही, भाई मैंने आपको बतलाया था कि अगर आका ने इन का लफ्ज इस्तेमाल किया तो यह इख्तियार दे रहा है और इख्तियार मजलिस तक रहता है। मैंने आपसे कहा यह किताब मैंने आपको 1000 रुपए में बेच दी, तो मैं गोया आपको इख्तियार दे रहा हूं इसके खरीदने का। तो मजलिस के अंदर आप कबूल कर सकते हैं और मजलिस के बाद आप कबूल नहीं कर सकते। तो कहते हैं सुम्मल अदा उफी कौली ही इन अदईता, कहते हैं फिर अदा जो है आका के इस कौल इन अदईता के अंदर यक्तसिरु अलल मजलिसी, वो उसी मजलिस पर बंद रहेगी, उसी मजलिस ही में गुलाम अदा कर सकता है बाद में नहीं। अगर इन अदईता कहा यानी इन का लफ्ज आका ने इस्तेमाल किया, लिअन्नहु तख्यीरुन, इसलिए क्योंकि ये इख्तियार देना है। वफी कौलिही इदा अदईता, और आका के कौल इजा अदईता के अंदर यानी इन के बजाय अगर आका इजा इस्तेमाल करे, लायक तसीरू, तो ये मजलिस पर बंद नहीं है, बाद में भी गुलाम अदायगी करके आजाद हो सकता है। लिअन्न इज़ा तुस्तअमलु लिल वक्त बि मंज़िलति मता, इसलिए क्योंकि इज़ा जो है वो वक्त के लिए इस्तेमाल होता है मता के दर्जे में। जी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वमन काल लिअब्दिहि अंत हुर्रुम बाद मौति अला अल्फ दिरहमिन फल कबूलु बादल मौत। सूरत मसला ये, आका ने गुलाम से कहा कि तू मेरे मरने के बाद 1000 दिरहम की शर्त पर आजाद है। तू मेरे मरने के बाद 1000 दिरहम की शर्त पर या 1000 दिरहम के इवज पर आजाद है। तो ये आजादी कब आएगी? मौत के बाद। तो कबूल भी मौत के बाद चाहिए, कबूल भी मौत के बाद चाहिए। तो कहते हैं वमन काल अली अब्दिही, और जिस शख्स ने अपने गुलाम से कहा अंत हुर्रुम बाद मौती अला अल्फी दिरहमिन कि तू आजाद है मेरी मौत के बाद 1000 दिरहम पर, फल कबूल बादल मौती, तो कबूल मौत के बाद होगा, यानी मौत के बाद कबूल कर सकता है, अभी कबूल करे उसका कोई एतबार नहीं। और आगे चलकर साहिब हिदायत यह भी बतलाएंगे कि मौत के बाद भी कबूल करेगा तो आजाद नहीं होगा, क्योंकि आका ने 1000 दिरहम की शर्त लगाई है। तो मौत के बाद ये कबूल भी कर ले फिर भी आजाद नहीं। क्यों? क्योंकि मौत के बाद तो ये जो कायल था ये तो मर चुका है, अब तो इसमें एताक की अहलियत ही नहीं है, ये गुलाम तो वारिसों की तरफ मुंतकिल हो चुका है, तो अब मौतिक में एताक की अहलियत ही ना रही, वो मर चुका है, तो लिहाजा अब वारिस का कबूल करना और वारिस का आजाद करना जरूरी है भाई, कि वो माल कबूल कर ले और आजाद करे। तो कहते हैं फल कबूल बाद अल मौती, तो कबूल करना मौत के बाद होगा, ली इजाफतिल ईजाबी इला मा बाद अल मौती, इसलिए क्योंकि इस बात इत्क की निस्बत की गई है मौत के बाद की तरफ। फसार कमा इदा काला, तो ये इसी तरह हो गया जैसे आका ने ये कहा अंत हुर्रुन गदन अला अल्फी दिरहमिन, भाई आका ने अपने गुलाम से कहा अंत हुर्रुन गदन अला अल्फी दिरहमिन, तू कल आजाद है 1000 दिरहम की शर्त पर, तो आजादी कब आएगी? कल। तो कबूल करना भी कल ही होगा, अगले दिन गुलाम कहे मुझे कबूल है तो साथ ही आजाद हो जाएगा और उसके जिम्मे 1000 दिरहम देन हो जाएंगे। तो कहते हैं फसारा कमा इदा काला, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे आका ने कहा अंत हुर्रुन गदन अला अल्फी दिरहमिन, के तू आजाद है कल 1000 दिरहम की शर्त पर। बिखिलाफ इमा इदा काला, बखिलाफ इसके कि जब आका ने गुलाम से कहा अंत मुदब्बरुन अला अल्फी दिरहमिन, के तू मुदब्बर है 1000 दिरहम की शर्त पर या 1000 दिरहम के इवज पर। तो इस सूरत में कहते हैं फिलहाल कबूल करना जरूरी है, फिलहाल कबूल, क्योंकि फिलहाल मुदब्बर बना रहा है। हां, आजाद कब होना है? मौत के बाद। तवज्जो है? तो फिलहाल आजाद नहीं होगा भाई, वहां पर पिछले मसले में उसी कबूल के वक्त ही आजादी आ रही थी और यहां पर सिर्फ मुदब्बर बनाने को वो कबूल कर रहा है कि मुझे कबूल है मुदब्बर बनना, तो वो कबूल इसी वक्त होगा, अलबत्ता आजाद मौत के बाद होगा और पैसे भी उसी वक्त अदा करेगा यानी वारिसों को लाकर देगा भाई। कहते हैं बिखिलाफ इमा इदा काला, बखिलाफ इसकी जब आका ने कहा अंत मुदब्बर उन अला अल्फी दिरहम, तू मुदब्बर है 1000 दिरहम के इवज पर। है सु यकून उल कबूल इलेही फिलहाल, क्योंकि यहां पर कबूल करना गुलाम के हवाले होगा फिलहाल ही, फिलहाल ही वो कबूल करे। लिअन्न इजाबत तदबीर फिलहाल, इसलिए क्योंकि तदबीर का इस बात जो है फिलहाल है, फिलहाल इसको मुदब्बर बनाया जा रहा है। इल्ला अन्नहु ला यजिबुल मालू, मगर ये कि माल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये गुलाम है और गुलाम पर माल को वाजिब नहीं किया जा सकता, सिर्फ मुकातब में होता है और वो भी खिलाफुल कियास है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु ला यजिबुल मालू, मगर ये कि माल वाजिब नहीं होगा, लिकियाम रिक, गुलामी के मौजूद होने की वजह से। गुलामी मौजूद है क्योंकि ये अभी आजाद नहीं है, ये आजादी का मुस्तहिक हुआ है, आजाद अभी नहीं हुआ, लिहाजा माल भी अभी लाजिम नहीं है। कालू फुकहा फरमाते हैं, अब वही मतन वाला मसला, आका ने गुलाम से क्या कहा कि तुम मेरे मरने के बाद 1000 दिरहम की शर्त पर आजाद है, तो कहते हैं मरने के बाद कबूल चाहिए क्योंकि मौत के बाद की तरफ निस्बत है। लेकिन मैंने आपको बतलाया मरने के बाद भी आजाद नहीं होगा क्योंकि मौतिक मर चुका है, उस वक्त अंत हुर्रुन आ रहा है, लेकिन उस वक्त तो मौतिक में सलाहियत ही नहीं है एताक की। तो कहते हैं कालू फुकहा फरमाते हैं ला यातिकु अलैहि फी मसअलतिल किताबी, ला यातिकु के गुलाम आजाद नहीं होगा, अलैहि अपने आका पर, फी मसअलतिल किताबी किताब के मसले में, यानी जो मतन में आया, वह इन कबीला बादल मौत ही, अगरचे गुलाम उसको कबूल कर ले मौत के बाद फिर भी आजाद नहीं होगा, मालम यातिकुल वारिसु, जब तक उसको वारिस आजाद न कर दे, लिअन नल मय्यत लैसा बि अहलिन लिल इताक, इसलिए क्योंकि मय्यत जो है वो इताक की अहल नहीं होती। वहादा सहीहुन, और ये सही है, फुकहा ने यूं फरमाया है और फुकहा का ये कौल सही है, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं। आगे देखिए قال ومن اعتق عبده على خدمته 4 سنين فقبل العبد عتق ثم مات من ساعته। सूरत मसला ये, आका ने अपने गुलाम से कहा कि तुम मेरी 4 साल खिदमत करो तो तुम आजाद हो, गुलाम ने इसको कबूल कर लिया, तो कबूल करते ही गुलाम आजाद हो जाएगा। आका ने क्या कहा कि अगर तुम मेरी 4 साल खिदमत करो तो तुम आजाद हो, गुलाम ने कबूल कर लिया, याद रखो कबूल करते ही गुलाम आजाद हो गया। अब इस गुलाम के जिम्मे 4 साल की खिदमत है, लेकिन गुलाम बाद में खिदमत से पहले ही मर गया, या आका जो है वो खिदमत लेने से पहले ही मर गया। तो इस सूरत में याद रखो शैखैन और इमाम मोहम्मद रहिमहुमुल्लाह का आपस में इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि गुलाम की 4 साल की जो खिदमत है उसकी कीमत लगाई जाएगी। अगर गुलाम ये माल छोड़कर मरा है, मसलन आजाद होने के बाद किसने इसको माल दे दिया था और गुलाम का इंतकाल हो गया, तो ये इस माल के जरिए अदायगी की जाएगी उस आका को, उस आका को, तो लिहाजा उस माल के जरिए आका को अदायगी की जाएगी। और मैंने बताया चाहे आका मरे तब भी यही मसला है और गुलाम मरे तब भी यही है। अगर गुलाम मर गया और उसने इतना माल छोड़ा है, मसलन किसने उसको आजाद होने के बाद माल वगैरह दे दिया था, तो उस माल के जरिए आका को अदायगी कर देंगे, 4 साल की खिदमत का जो इवज बनता है वो आका को दे दिया जाएगा। और अगर आका पहले मर गया तो फिर इस सूरत में गुलाम जो है वो माल उस आका के वारिसों को अदा करेगा, या तो अगर किसने दे दिया है तो उसी में से दे देगा, और अगर किसी ने गुलाम को नहीं दिया तो वो पैसे कमाएगा और कमाकर लाकर इन वारिसों को अदा करेगा। तो ये तो था इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, क्या सूरत हुई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, अगर गुलाम या आका में से कोई पहले मर गया तो फिर उस खिदमत, वो जो आजादी का इवज तय हुआ था, उसकी कीमत लगाई जाएगी और वो अदायगी की जाएगी। जबकि शेखैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर गुलाम अपनी कीमत जो है वो अदा करेगा, वो जो खिदमत की कीमत है वो कीमत नहीं लगाई जाएगी, गुलाम की कीमत लगाई जाएगी और गुलाम अपनी कीमत अदा करेगा। बात समझ में आ गई? तो क्या फर्क हुआ, आका ने गुलाम से कहा अगर तुम 4 साल मेरी खिदमत करो तो तुम आजाद हो। गुलाम ने कबूल कर लिया, कबूल करते ही गुलाम आजाद हो गया। फिर इन दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो जो बदल तय हुआ था गुलाम की आजादी का, यानी वो जो 4 साल की खिदमत है उसकी कीमत लगाई जाएगी और वो अदायगी करना पड़ेगी। वजह यह कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां एक तरफ गुलाम की खिदमत है तो दूसरी तरफ गुलाम को आजादी मिली। गुलाम की खिदमत तो माल है और आजादी तो गैर माल है, लिहाजा यहां पर आजादी तो गुलाम को मिल गई और यहां पर गुलाम ने क्या देना था, 4 साल की खिदमत, लेकिन 4 साल की खिदमत तो मुताजिर हो गई, अब अदा नहीं हो सकती क्योंकि या तो गुलाम मर गया है या आका मर गया है। तो जब बदल की अदायगी मुताजिर हो गई तो फिर लिहाजा इस सूरत में उस बदल की कीमत अब देना पड़ेगी। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर एक तरफ से गुलाम की खिदमत है तो दूसरी तरफ यह खिदमत जो है यह आजादी का इवज नहीं है, बल्कि यह खिदमत इवज है गुलाम की जात का। यह खिदमत इवज है गुलाम की जात का, और गुलाम की जात भी माल और खिदमत भी माल, तो दोनों तरफ माल है। लिहाजा जब खिदमत मुताजिर हो गई, गुलाम का या आका का इंतकाल हो गया, जब खिदमत मुताजिर हो गई यानी बदल मुताजिर हुआ तो मुबदल वापस किया जाएगा, मुबदल वापस किया जाएगा, और मुबदल यानी गुलाम तो वापस गुलाम नहीं बन सकता भाई, तो फिर उसकी कीमत देना पड़ेगी उसको भाई। फर्क समझ में आया? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक ये माल का इवज है गैर माल के साथ, एक तरफ माल है यानी गुलाम की खिदमत और दूसरी तरफ आजादी है, आजादी। तवज्जो से समझ लो, ये फर्क को आप समझेंगे तो मसला समझ में आ जाएगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक यहां पर एक तरफ खिदमत है और दूसरी तरफ आजादी है, और आजादी तो गैर माल है और खिदमत तो माल है, तो माल का इवज गैर माल है। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक एक तरफ खिदमत है तो दूसरी तरफ आजादी नहीं है, गुलाम की जात है और गुलाम की जात भी माल है, तो बदल भी माल और मुबदल भी माल। जब बदल देना मुमकिन न रहा यानी खिदमत मुमकिन न रही तो मुबदल वापस करना चाहिए, और मुबदल तो वापस हो नहीं सकता, गुलाम तो दोबारा गुलाम नहीं बन सकता, लिहाजा उस मुबदल यानी गुलाम की जात की कीमत देना पड़ेगी। फर्क समझ में आया? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक उस बदल की कीमत देना पड़ेगी और शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक मुबदल यानी गुलाम की जात की कीमत देना पड़ेगी। काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वमन आतका अब्दहु अला खिदमतिही 4 सिनीना, और जिसने अपने गुलाम को आजाद किया 4 साल की खिदमत की शर्त पर, फकबिल अल अब्दु, तो गुलाम ने कबूल कर लिया, आतका गुलाम आजाद हो गया, फौरन ही आजाद हो गया, सुम्मा तमिन साहती ही, फिर गुलाम उसी घड़ी मर गया यानी खिदमत से पहले मर गया। और आपको साहिब हिदाया आगे बतलाएंगे चाहे गुलाम मरे तब भी यही हुक्म, चाहे आका मरे तब भी यही हुक्म है। तो कहते हैं सुम्मा तमिन साहती ही, फिर वो गुलाम उसी घड़ी मर गया, फाले ही कीमत नफसी ही फी माली ही आइंदा अभी हनी फतवा अभी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, फ़अलैहि क़ीमतु नफ़सिही, तो उस गुलाम पर उसकी जात की कीमत वाजिब है, फी माली ही उसके अपने माल में, उसके अपने माल में अगर उसने कोई माल छोड़ा है, इंदा अभी हनीफ़ तवा अभी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक, वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह कीमत खिदमती ही 4 सिनीना, के इस गुलाम पर जो है 4 साल की खिदमत की कीमत वाजिब है। अमल इत्कु आजादी, भाई इन्होंने बताया गुलाम कबूल करते ही आजाद हो जाएगा, उसकी क्या वजह है, अब वो वजह बयान कर रहे हैं। कहते हैं अम मलईत को, तो आजादी जो है गुलाम की, फली अन नहू जाल खिदमत अफी मुद्दत मालूम मतिन ईवजन, इसलिए क्योंकि आका ने एक मालूम मुद्दत की खिदमत जो है उसको ईवज करार दिया, फयताल्लकुल इत्कु बिल कबूली, तो आजादी का ताल्लुक कबूल करने से होगा, वकद वुजीदा, और कबूल करना तो पाया गया, वलाजिमत हो खिदमत 4 सिनीना, और गुलाम पर 4 साल की खिदमत लाजिम होगी, लिअन्नहु यसलुहु इवजन, इसलिए क्योंकि यह खिदमत इवज बनने की सलाहियत रखती है, फसार कमा इदा आतकहु अला अल्फी दिरहमिन, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि आका ने गुलाम को 1000 दिरहम के इवज पर आजाद किया हो, सुम्मा मात अल अब्दु, फिर गुलाम मर गया हो। भाई देखिए यहां गुलाम को आजाद किया है खिदमत के इवज पर, यह इसी तरह है जैसे आका गुलाम को आजाद करे 1000 दिरहम की शर्त पर। तो जैसे यहां पर कबूल करते ही गुलाम आजाद हो गया, इसी तरह यह खिदमत वाले मसले में भी खिदमत इवज है और इसके बदले में आजादी आ रही है तो वह भी अक्द मुआवजा ही है, तो वहां पर भी कबूल करते ही गुलाम आजाद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां भी इसी तरह है, ये 4 साल की खिदमत अब इसको अदा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर खिदमत मुताजिर हो गई क्योंकि गुलाम मर गया या आका मर गया। तो कहते हैं फसार कमा इदा आतकहु अला अल्फी दिरहमिन, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे आका ने गुलाम को आजाद किया है 1000 दिरहम के इवज पर। सुम्मा मात अल अब्दु, फिर गुलाम मर गया। फल खिलाफियतु फीही बिना उन अला खिलाफियतिन उखरा, फल खिलाफियतु अल मसअलतुल खिलाफियतु, यह अल खिलाफिया सिफत है, मौसूफ महजूफ है, ऐ अल मसअलतुल खिलाफिया और फी ही ऐ फिल इताकी। तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं ये जो इताक वाले मसले के अंदर इख्तिलाफ आया, इसकी बुनियाद एक और मसले के अंदर जो इख्तिलाफ है उस पर है। इस इख्तिलाफी मसले की बुनियाद एक और इख्तिलाफी मसले पर है और वह इख्तिलाफी मसला ये आगे साहिब हिदाया भी बयान करेंगे कि आका ने अपने गुलाम को आजाद किया एक मुअय्यन बांदी के इवज पर जी। कि मेरी तरफ से तुम इस बांदी की शर्त पर आजाद हो जी। गुलाम ने कबूल कर लिया, तो कबूल करते ही गुलाम आजाद हो गया। अब वो गुलाम वो बांदी लाकर आका को देगा, तो गुलाम ने वो बांदी खरीदी और अभी आका को नहीं दी थी कि उससे पहले इस बांदी का कोई और मुस्तहिक निकल आया। गुलाम ने तो जैद से खरीदी थी और आका को अभी देने वाला था कि उससे पहले ही अमर आ गया और अमर ने कहा यह बांदी तो मेरी है, जैद से कैसे आपने खरीद ली, तो अमर उस बांदी को लेकर चला गया। या वो बांदी आका के सुपुर्द करने से पहले गुलाम के पास ही हलाक हो गई। तो अब इस सूरत में देखो, एक तरफ बांदी थी वो बदल है और दूसरी तरफ आजादी है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर इस बांदी की कीमत इस गुलाम को अब देना पड़ेगी। बांदी तो नहीं दे सकता, बांदी का तो कोई और मालिक निकल आया, कोई और मुस्तहिक निकल आया, या बांदी हलाक हो गई, तो अब बांदी की कीमत देना पड़ेगी क्योंकि एक तरफ से बांदी है तो दूसरी तरफ आजादी है, आजादी की तो कोई कीमत नहीं है, बांदी इसने देनी थी, बांदी नहीं दे सकता अब, तो अब बांदी की कीमत देना पड़ेगी। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर बांदी बदल है और गुलाम की जात मुबदल है, तो बदल देना मुताजिर हुआ तो मुबदल दिया जाएगा और मुबदल तो हो नहीं सकता, गुलाम तो दोबारा गुलाम नहीं बन सकता, आजादी को तो फसख नहीं किया जा सकता, तो फिर मुबदल की कीमत देना पड़ेगी। तो जैसे इस मसले के अंदर ये बांदी वाले मसले में इख्तिलाफ है, इसी तरह इस इताक वाले मसले में भी इख्तिलाफ है। तो कहते हैं फल खिलाफियतु फीही बिना उन अला खिलाफियतिन उखरा, तो ये इस इताक के अंदर जो इख्तिलाफी मसला है उसकी बुनियाद एक और इख्तिलाफी मसले पर है। वही अन्ना मनबा अनफ सलाब दिमिन हु बिजारियतिम बि आईनिहा, और वो ये कि जिस आका ने बेच दिया नफसल अब्दी मीन हो गुलाम की जात को, मीन हो उसी गुलाम के हाथ, जिस आका ने गुलाम की जात को बेच दिया मीन हो उसी गुलाम के हाथ, बिजार यतिम भी आई निहा किसी मुआयन बांदी के इवज में, मुआयन बांदी के इवज में जी। और फिर गुलाम ने क्या कर लिया, कबूल कर लिया, तो कबूल करते ही गुलाम आजाद हो गया। अब वो बांदी ला कर देगा भाई। सुम मस्तुहिक कतिल जारिया, तो फिर उस बांदी का इस्तेहकाक निकल आया, यानी कोई और मुस्तहिक निकल आया। औ हलाकत, या वो बांदी हलाक हो गई। यरजुल मौला अलल अब्दी, तो वो आका जो है गुलाम पर रुजू करेगा। बिकीमती नफसी ही इंदहुमा, अपनी जात की कीमत के साथ, शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक वो आका गुलाम पर रुजू करेगा उस गुलाम की अपनी जात की कीमत के साथ, वो उस गुलाम से वसूल करेगा। वह बिकीमतिल जारियत इंदहू, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक बांदी की कीमत के साथ आका गुलाम पर रुजू करेगा, बांदी की कीमत उससे लेगा। वही या मारूफतुन, और ये मसला मारूफ है, मशहूर है उलमा के दरमियान। वह वजहुल बिनाई, और इस बुनियाद की वजह, यह जो एक इख्तिलाफी मसले की बुनियाद है दूसरे इख्तिलाफी मसले पर, इसकी वजह क्या है? कहते हैं भाई देखिए, जैसे उस बांदी वाले मसले के अंदर बांदी का देना मुतासिर हो गया था, मुमकिन न रहा था, तो यहां पर भी इस मसले के अंदर गुलाम की खिदमत का देना मुमकिन न रहा, तो दोनों एक जैसे हैं भाई। तो कहते हैं वजहुल बिनाई, और बुनियाद की वजह जो है कि अन्नहु कमायता अज़रा तस्लीम उल जारियति बिल हलाकी वल इस्तेहकाकी, कि जैसे बांदी का सुपुर्द करना मुमकिन न रहा उसके हलाक होने या उसका इस्तेहकाक होने की वजह से, तो यताअज़रुल वसूल इलल खिदमति बिमौत अल अब्दी, तो इसी तरह खिदमत तक पहुंचना भी मुमकिन न रहा गुलाम की मौत की वजह से। व कदा बिमौत अल मौला, और इसी तरह आका के मौत की वजह से। फसार नजीरुहा, तो ये मसला उसी मसले की नजीर हुआ, उसके जैसा है भाई। बात समझ में आ गई। वमन काला ली आखरा आतिक अमतक अला अल्फी दिरहमिन अला अंतुजविजनी हा फफाला फअबत अंत तजव्वजहू फलइत्कु जाइज़ुन वला शैअ अलल आमिर। सूरत मसला ये कि एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कि तुम अपनी बांदी 1000 के इवज आजाद कर दो इस शर्त पर कि तुम उसका मेरे साथ निकाह करवाओगे। तो ये जो कहने वाला है ये है आमिर, और जिससे कहा है वो जो बांदी वाला है वो है मामूर भाई, जिसको कहा गया है। याद रखो ये लफ्ज आमिर और मामूर बार बार आगे इबारत में आएंगे, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। तो कहने वाला आमिर, और जिसको कहा वो है मामूर, जिस यानी जिसकी बांदी है। तो एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि तुम अपनी ये बांदी 1000 दिरहम के इवज आजाद कर दो इस शर्त पर कि तुम इसका मेरे साथ निकाह करवाओगे। चुनांचे वो बांदी वाले ने बांदी को आजाद कर दिया, और फिर बांदी से कहा कि अब तुम इस आदमी से निकाह कर लो। वो बांदी आजाद हो चुकी थी, उसने इनकार कर दिया कि मैं इस आदमी से निकाह नहीं करूंगी। तो इस सूरत में याद रखो, फुकाहा फरमाते हैं कि ये जो बांदी आजाद हुई है ये मामूर की तरफ से आजाद हुई है, आमिर से इसके पैसे वसूल नहीं किए जा सकते जी। भाई उसने कहा तो था कि 1000 दिरहम के इवज आजाद कर दो, लेकिन फिर भी उससे पैसे वसूल नहीं किए जा सकते। और यह बात पहले भी गुजर चुकी है कि एक है बदले एताक और एक है बदले तलाक। बदले एताक जो है किसी अजनबी पर वाजिब नहीं किया जा सकता, जबकि बदले तलाक अजनबी पर वाजिब किया जा सकता है। बदले एताक मसलन एक अजनबी आकर शख्स से कहता है कि अपने इस गुलाम को आजाद कर दो 1000 दिरहम के इवज मैं अदा करूंगा जी। तो इस सूरत में याद रखो, उस मामूर ने गुलाम को आजाद कर दिया, तो अब उस अजनबी पर कोई माल नहीं है, क्योंकि यह बदले एताक है, और बदले एताक किसी अजनबी पर वाजिब नहीं किया जा सकता। जबकि इसके मुकाबले में बदले तलाक भाई, बदले तलाक जो है वो अजनबी पर वाजिब किया जा सकता है। मसलन एक आदमी दूसरे के पास आया और कहा कि अपनी बीवी को 5 लाख के इवज तलाक दे दो, मैं 5 लाख अदा करूंगा। तो उस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो ये जो आमिर है, ये जो कहने वाला है, अब इसको ये 5 लाख अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बदले तलाक है, और बदले तलाक को अजनबी पर वाजिब किया जा सकता है, जबकि बदले एताक जो है वो अजनबी पर वाजिब नहीं किया जा सकता। तो दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि बदले एताक में अजनबी गुलाम जैसा नहीं है, दोनों में फर्क है। गुलाम जो है एताक की वजह से वो आजाद हो जाएगा, उसे हर तरह के तसरुफात का हक मिल जाएगा जो उसको पहले हासिल नहीं थे। मसलन अब वो अपनी मर्जी से तिजारत कर सकता है, वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकता है, वो गवाह बन सकता है, वो काजी बन सकता है वगैरह, तमाम इख्तियारात उसको मिल गए। गुलाम को ये चीजें पहले हासिल नहीं थी, तो मालूम है एताक से गुलाम को फायदा हासिल हुआ। जबकि उसके मुकाबले में जो अजनबी है उसको तो इस एताक से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो ये जो अजनबी है ये गुलाम की तरह नहीं, तो ये जो बदल एताक है वो इस गुलाम पर तो वाजिब हो सकता है, किसी अजनबी पर वाजिब नहीं हो सकता। जबकि बदल तलाक जो है वो अजनबी पर भी वाजिब हो सकता है। वजह यह कि बदल तलाक के अंदर जब औरत को तलाक मिली है तो औरत को कोई नई चीज हासिल नहीं हुई, गुलाम को तो नए नए इख्तियारात मिल गए थे लेकिन औरत को कोई नया इख्तियार नहीं मिला, सिर्फ उस पर से खावंद की मिल्कियत निकाह जो है वो खत्म हुई है, सिर्फ औरत पर से कुछ पाबंदियां हट गई हैं और कोई चीज औरत को हासिल नहीं हुई। तो कोई अजनबी हो वो भी इस औरत के मिसल हो जाएगा, जैसे औरत को इस तलाक से कुछ हासिल नहीं हुआ अजनबी को भी इस तलाक से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अजनबी औरत जैसा हुआ। जब औरत जैसा हुआ तो औरत पर तो बदले तलाक को वाजिब किया जा सकता है, तो जब अजनबी औरत जैसा है तो अजनबी पर भी बदले तलाक को वाजिब किया जा सकता है। जबकि बदले एताक के अंदर अजनबी गुलाम की तरह नहीं, लिहाजा गुलाम पर तो बदले एताक को वाजिब किया जा सकता है लेकिन अजनबी पर बदले एताक को वाजिब नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा यहां पर भी इस मसले के अंदर भी एक शख्स ने दूसरे से कहा कि अपनी इस बांदी को 1000 दिरहम के इवज आजाद कर दो इस शर्त पर कि तुम इसका मेरे साथ निकाह करवाओगे। अब मामूर ने उस बांदी को आजाद कर दिया और फिर बांदी ने इस आदमी से निकाह करने से इनकार कर दिया, तो बांदी तो आजाद हो गई लेकिन अब आमिर पर कोई माल वाजिब नहीं, क्योंकि यह बदले एताक है और बदले एताक बांदी पर तो वाजिब किया जा सकता था अजनबी पर वाजिब नहीं, लिहाजा आमिर के जिम्मे कोई अदायगी नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह मन काल अली आखरा, और जिस शख्स ने दूसरे से कहा आतिक अमतक अला अल्फी दिरहमिन अला अंतुजविजनीहा कि तू अपनी बांदी को आजाद कर दे 1000 दिरहम के इवज अला अंतुजविजनीहा इस शर्त पर कि तुम मेरा उसके साथ निकाह करवाओगे। फफअला, मामूर ने ऐसा कर दिया यानी बांदी को आजाद कर दिया। फअबत अंत तज़व्वजहू, तो बांदी ने इनकार कर दिया कि वो इस आमिर से निकाह करे। फल इत्कु जायजुन, तो ये आजादी जायज है यानी बांदी आजाद हो गई। वला शैआ अलल आमिरी, और आमिर पर कोई चीज नहीं यानी उस पर कोई माल वाजिब नहीं। लिअन्न मन काल लिगैरिही, इसलिए क्योंकि जिस शख्स ने किसी दूसरे से कहा आतिक अब्दक अला अल्फी दिरहमिन अलैया कि तू अपने गुलाम को 1000 दिरहम के इवज आजाद कर दे अलैया मेरे ऊपर यानी वो मेरे जिम्मा होंगे 1000 दिरहम। फफअला, मामूर ने ऐसा कर दिया। ला यल्ज़मुहू शैउन, तो आमिर पर कोई चीज लाजिम नहीं होगी। वयक़ऊ अल-इत्क़ु अनिल मामूरी, और आजादी मामूर की तरफ से ही वाक़े होगी। बिखिलाफ़ मा इदा क़ाल लिग़ैरिही, बखिलाफ इसके के जब किसी ने दूसरे से कहा तल्लिक इमरातक अला अल्फ दिरहमिन अलैया कि तू अपने बीवी को 1000 दिरहम के इवज पर तलाक दे दे अलैया कि वो दिरहम मेरे जिम्मा होंगे। फाफा आला, उसने ऐसा कर दिया। है सुय्या जिबुल अल्फ अलल आमिरी, क्योंकि 1000 दिरहम आमिर पर वाजिब होंगे। तो ये मसला बरखिलाफ है पिछले मसले के कि यहां 1000 आमिर पर वाजिब होंगे। लियन अश्तिरातल बदली अलल अजनबी ये फिर तलाक जाइजुन, इसलिए क्योंकि बदल की शर्त अजनबी पर लगाना तलाक के मसले में जाइजुन ये जायज है। वफिल अताक ला यजूजू, और अताक में जायज नहीं। वकद कर्रना हूं मिन कबलु, और तहकीक हम इसको पहले साबित कर चुके हैं, ये बात पहले भी गुजरी थी इशारतन बाबुल खुला के अंदर कि एक शख्स है उसने अपनी नाबालिग बेटी का निकाह करवाया किसी से, फिर बाद में यह बाप अब खुला करवाना चाहता है, बेटी अभी नाबालिग ही है लेकिन अब इस खावन से वो बेटी की जान छुड़ाना चाहता है, तो बेटी के माल पर खुला तो नहीं करवा सकता बाप, अगर खुला करेगा भी तो बेटी पर माल लाजिम नहीं होगा, बगैर माल के ही बेटी को तलाक हो जाएगी। लेकिन अगर बाप बदले खुला अपने जिम्मे ले लेता है कि मैं अदा करूंगा बदले खुला, तो फिर यह दुरुस्त है, इसलिए क्योंकि बदले तलाक की शर्त जब अजनबी के लिए जायज है तो बाप के लिए बतरीके औला जायज है, क्योंकि बाप की तो शफकत बड़ी कामिल है। भाई तो कहते हैं वकद कर्र नाहु मिन कबलू, और तहकीक ये बात हम पहले साबित कर चुके हैं। वलव काला आतिक अमतक अन्नी अला अल्फी दिरहमिन। अब अल्फाज जरा बदल दिए, आमिर कहता है कि अपनी बांदी मेरी तरफ से आजाद कर दो 1000 दिरहम के इवज, और इस शर्त पर कि तुम उसका मेरे साथ निकाह करवाओगे। तो अब इसने अन्नी का लफ्ज जिक्र किया, मेरी तरफ से आजाद करो, पिछले मसले में अन्नी का लफ्ज नहीं था, तो यहां आतिक अमतका अन्नी मेरी तरफ से। तो आपने उसूल फिका के अंदर पढ़ा है कि अगर मामूर ने बांदी को आजाद किया तो यह बांदी आमिर की तरफ से आजाद होगी, क्योंकि यहां उसने क्या कहा है मेरी तरफ से आजाद करो, तो यहां इक्तेजान पहले बै को मानना पड़ेगा। गोया कहने वाला यह कह रहा है अपनी बांदी मुझे बेच दो, फिर मेरी तरफ से वकील बन जाओ और फिर इस बांदी को आजाद कर दो। तो इस सूरत के अंदर गोया मामूर ने यह बांदी पहले आमिर को बेच दी और फिर उसकी तरफ से वकील बनकर इसको आजाद कर दिया। तो इस सूरत के अंदर अब आमिर को बांदी की कीमत देना पड़ेगी, क्योंकि यहां बै इक्तिजान है। मसला भी समझ में आया कि नहीं? सूरत वही सूरत दोबारा बनाइए भाई। आमिर ने मामूर से कहा कि अपनी ये बांदी 1000 दिरहम के इवज आजाद कर दो अन्नी मेरी तरफ से, इस शर्त पर कि तुम इसका मेरे साथ निकाह करवाओगे। तो चुनांचे मामूर ने बांदी को आजाद कर दिया और फिर बांदी ने उस आमिर से निकाह करने से इनकार कर दिया। तो अब मालूम हुआ आमिर ने जो 1000 दिरहम जिक्र किए थे वो दो चीजों का इवज थे, बांदी की कीमत भी और नीज बांदी का महर भी, यानी उसमें बांदी की कीमत का भी हिसाब लगाएंगे और बांदी के महर का भी हिसाब लगाएंगे। तो जितना हिस्सा महर का बनेगा वो तो 1000 में से साकित हो जाएगा, क्योंकि बांदी ने तो निकाह किया नहीं, अलबत्ता बाकी रकम जो है वो आमिर के जिम्मे आ जाएगी कि वो मामूर को अदा करे। भाई मसलन मसलन बांदी की कीमत है 1000 दिरहम और इस जैसी बांदी का महर मिसल होता है 500 दिरहम। मालूम हुआ बांदी की कीमत महर के मुकाबले में दुगनी है, तो लिहाजा ये जो 1000 दिरहम थे इसके 3 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से कीमत के मुकाबले में आएगा और 1 हिस्सा महर के मुकाबले में आएगा, और महर तो देना नहीं पड़ेगा क्योंकि बांदी ने इससे निकाह नहीं किया, तो वो तो साकित हो जाएगा और बाकी 2 हिस्से जो हैं वो आमिर के जिम्मे हैं कि वो अदा करे मामूर को दे। तो 1000 के 3 हिस्से करें तो 1 में तकरीबन 333 दिरहम आते हैं और 2 सुलुस हो तो 666, तो 666-67 दिरहम तकरीबन ये जो है आमिर अदा करेगा मामूर को, और जबकि 333 दिरहम के लगभग ये जो बांदी का महर बन रहा था ये साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वलौ काला आतिक अमता का अन्नी अला अल्फी दिरहमिन, और अगर आमिर ने कहा कि अपनी बांदी को मेरी तरफ से आजाद कर दो 1000 दिरहम के इवज पर, वल मसअला तु बिहालिहा, और मसला जो है वो अपने हाल पर है कि मामूर ने उसको आजाद कर दिया और बांदी ने निकाह से इनकार कर दिया, तो कुस्सिमतिल अल्फु अला कीमतिहा व महरि मिस्लिहा, तो इस 1000 को तकसीम किया जाएगा उस बांदी की कीमत पर और उसके महरे मिसल पर। फमा असाबल कीमत अद्दाहुल आमिरु, तो वो हिस्सा जो कीमत को पहुंचे अद्दाहुल आमिरु उसको आमिर अदा करेगा। वमा असाबल महरा बतला अनहु, और वो हिस्सा जो महर को पहुंचा बतला अनहु वो आमिर से बातिल हो जाएगा। लिअन्नहु लम्मा काला अन्नी, इसलिए क्योंकि जब आमिर ने अन्नी कहा कि मेरी तरफ से आजाद कर दो तो तज़म्मना शिरा अक्तिजा अन अला माउरिफा, तो ये शिरा को मुतज़म्मिन है इक्तिजा अन बेतबार इक्तिजा के अला माउरिफा, उस वजह से जो जाना गया है यानी उसूल फिका में। वह इदा का न का जालिक, और जब मामला ऐसा है फकद का बल अल्फ बिल रकबती शिरा अन वबिल बुजई निकाहन। मैंने बतलाया था बुजौन ये फर्जुल मरआ को कहते हैं, भाई औरत की शर्मगा। तो यहां पर वो जो आमिर ने 1000 जिक्र किया था वो दो चीजों के मुकाबले में था, एक उस बांदी की जात के मुकाबले में खरीदने के एतबार से, और दूसरा बांदी की बुजा के मुकाबले में बेतबार निकाह के। भाई तो कहते हैं फकद काबल अल अल्फा बिर रकबती शिरा अन, तो तहकीक आमिर ने 1000 जो है उसको मुकाबिल बनाया रकबे का शिरा अन खरीदने के एतबार से, व बिल बुजई निकाहन, और उस 1000 को मुकाबिल बनाया बुजा का निकाह के एतबार से। फन कसम अलैहिमा, तो ये 1000 इन दोनों पर तकसीम हो जाएगा। वबजबत हिस्सतु मासुल्लिमा लहू, तो वाजिब हो जाएगा वो हिस्सा जो उस आमिर के सुपुर्द कर दिया गया। वह हुआ रकबा, और वो बांदी का रकबा यानी उसकी जात है। वबतला अन्हु मालम युसल्लम, और बातिल हो जाएगा आमिर से जो उसके हवाले नहीं किया गया। वह वल बुज़ु, और वो बुज़ा है यानी निकाह नहीं किया गया। फलौ ज़व्वजत नफ्सहा मिन्हु। अच्छा भाई, मतन में सिर्फ यह सूरत जिक्र थी कि बांदी ने निकाह से इनकार कर दिया। अगर बांदी निकाह कर लेती है फिर क्या मसला होगा? तो कहते हैं कि इस सूरत में बांदी का महर भी अदा करना पड़ेगा, लिहाजा वो एक सूरत है जिसमें उसने अन्नी नहीं कहा और दूसरी सूरत में उसने अन्नी कहा है। तो जब आमिर ने अन्नी नहीं कहा तो उस सूरत में बांदी की कीमत आमिर पर नहीं आती थी, लेकिन अगर बांदी उसे निकाह कर लेती है तो जो हिस्सा बांदी के महरे मिसल के मुकाबले में आता है वो उसको देना पड़ेगा। यानी वो सुलुस बनता था ना 1000 का, बांदी की कीमत 2 सुलुस बनती है और महर 1 सुलुस बनता है, तो लिहाजा 2 सुलुस जो है वो आमिर से साकित हो जाएंगे क्योंकि उसके जिम्मे बांदी की कीमत नहीं है, उसने अन्नी नहीं कहा पहली सूरत में, तो 2 सुलुस साकित और 1 सुलुस जो है वो बतौर महर के बांदी को वो अदा करेगा भाई। जबकि दूसरी सूरत में उसने अन्नी कहा है, जब अन्नी कहा है तो वहां इक्तिजान बैअ भी आ गई, गोया मामूर ने इसको बांदी बेची और फिर आजाद की, तो इस सूरत में बांदी की कीमत मामूर को देगा और महर का हिस्सा बांदी को देगा, और कीमत कितनी है 2 सुलुस, तो 1000 में से 2 सुलुस जो है वो मामूर को देगा और 1 सुलुस बांदी को बतौर महर के देगा। तो कहते हैं फलौ ज़व्वजत नफ्सहा मिन्हु, और अगर बांदी ने अपना निकाह कर दिया उस आमिर से, लम यज़कुरहु, इसको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया मतन में। वह जवाब हु, और जवाब इसका यह है कि अन्नमा असाब कीमतहा, कि वो हिस्सा जो बांदी की कीमत को पहुंचा, सकता फिल वज्हिल अव्वली, वो हिस्सा जो है साकित हो जाएगा पहली सूरत में जब उसने अन्नी नहीं कहा, तो अजनबी पर बदले अताक वाजिब नहीं हो सकता, तो जो कीमत में जितना हिस्सा बना है 1000 का वो साकित हो गया, तो वो कीमत वाला हिस्सा साकित हो जाएगा पहली सूरत में। वही अलिल मौला फिल वजह सानी, और ये हिस्सा जो है आका के लिए होगा दूसरी सूरत में जब उसने अन्नी कहा था, तो वहां बै आ गई, जब बै आ गई तो अब बांदी की कीमत देना पड़ेगी। तो कहते हैं वही अलिल मौला फिल वजह सानी, और ये कीमत वाला हिस्सा आका के लिए होगा फिल वजह सानी दूसरी सूरत में, यानी जब आमिर ने अन्नी कहा है। वमा असाब महर मिसलिहा, और वो हिस्सा जो बांदी के महर मिसल को पहुंचे यानी उसके हिस्से में आए, कान महरन लहा फिल वजहैनी, वो उस बांदी के लिए महर होगा दोनों सूरतों में। मसला समझ में आ गया। बाब तदबीर, तदबीर आप पढ़ चुके हैं, किसी गुलाम को यह कहना कि मेरे मरने के बाद तू आजाद है भाई। तो कहते हैं इदा कालल मौला लि ममलूक ही, जब आका ने अपने ममलूक से कहा, इदा मुत्तुफा अंत हुर्रुन, कि जब मैं मर जाऊं तो तू आजाद है। ये कुछ अल्फाज जिक्र करेंगे जो तदबीर में सरीह हैं, यानी जिनमें और कोई माना ही नहीं है, सिर्फ मुदब्बर बनाने वाला ही माना है, तो लिहाजा वहां वो अल्फाज बोलते ही गुलाम मुदब्बर बन जाएगा। तो कहते हैं इदा कालल मौला लि ममलूकी ही, जब आका ने अपने गुलाम से कहा, इदा मुत्तु फअंता हुर्रुन, जब मैं मर जाऊं तो तू आजाद है, या आका ने कहा औ अंता हुर्रुन अन दुबुरी मिन्नी दुबुर भाई, दुबुर का माना सुरीन भी है, बदन का वो हिस्सा जो इंसान बैठते हुए नीचे रखता है, और इसी तरह दुबुर का माना पुश्त और कमर के भी हैं। तो आका ने कहा अंता हुर्रुन अन दुबुरी मिन्नी कि तू मेरे पीछे आजाद है, तू मेरे पीछे आजाद है, मुराद क्या है मौत है, यानी तू मेरे मरने के बाद आजाद है। तो आका ने कहा अंत हुर्रुन अन दुबुरी मिन्नी कि तू मेरे पीछे यानी मेरे मरने के बाद आजाद है, औ अंत मुदब्बरुन, या आका ने कहा तू मुदब्बर है, औ कद दब्बर तुका, या आका ने कहा मैंने तुझे मुदब्बर बना दिया, फकद सारा मुदब्बरन, तो इन तमाम सूरतों में गुलाम मुदब्बर बन जाएगा, फकद सारा मुदब्बरन, तो वो गुलाम मुदब्बर हो जाएगा, लिअन्न हादिहिल अल्फाज सरीहुन फित तदबीर, इसलिए क्योंकि ये अल्फाज जो हैं मुदब्बर बनाने में सरीह हैं, इनका यही माना है और कोई माना नहीं है। फइन्नहु इस्बातुल इत्क अन दुबुरिन, इसलिए क्योंकि तदबीर जो है वो आजादी को साबित करना है, अन दुबुरिन पीछे यानी मौत के बाद, वो मौत के बाद आजादी को साबित करना है। सुम्मला यजूजु बैउहु वला हिबतुहु वला इखराजुहु अन मिल्किही इल्ला इलल हुर्रियति, भाई मैंने आपको बतलाया था कि मुदब्बर को बेचा नहीं जा सकता, किसी को हिबा नहीं किया जा सकता, हां अलबत्ता इसको आजाद किया जा सकता है, मौत से पहले भी आका इसको आजाद कर सकता है। तो कहते हैं सुम मला यजूजु बैउहु वला हिबतुहु, और फिर मुदब्बर की बै भी जायज नहीं है और ना इसका हिबा जायज है, वला इखराजुहु अन मिल्किही, और इसको अपनी मिल्कियत से निकालना भी जायज नहीं है, इल्ला इलल हुर्रियति, मगर सिर्फ आजादी की तरफ, आजादी की तरफ निकाल सकते हैं, उसको आजाद भी कर सकते हैं। आका ने अपने गुलाम से कहा तू मेरे मरने के बाद आजाद है, और फिर मरने से पहले ही आका उसको आजाद करना चाहता है तो आजाद कर सकता है। तो ये माना है वला इखराजुहु अन मिल्किही इल्ला इलल हुर्रियति, और जायज नहीं है मुदब्बर को अपनी मिल्कियत से निकालना मगर आजादी की तरफ, कमा फिल किताबती, जैसे कि किताबत में है, मुकातब को भी बेचना या हिबा करना जायज नहीं है, अलबत्ता उसको आजाद करना जायज है भाई, के वक्त से पहले ही आका उसको आजाद कर दे। वकाल शाफी रहमल्ला यजूजु, और इमाम शाफी रहमल्ला फरमाते हैं जायज है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुदब्बर की बै भी जायज और मुदब्बर का हिबा भी जायज है। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमतुल्लाह यजूज़ु, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जायज है, लिअन्नहु तालीकुल इत्क बिशर्ति, इसलिए क्योंकि यह आजादी को मुअल्लक करना है बिशर्ति शर्त के साथ, फला यमतनउ बिहिल बैउ वल हिबतु, तो इसकी वजह से बेचना और हिबा करना मुमतनअ नहीं होगा, कमा फी साइरि तालीकात, जैसे कि बाकी तालीकात में है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह आजादी को मुअल्लक किया जा रहा है मौत के साथ, और जैसे आजादी को किसी और शर्त के साथ मुअल्लक करो तो उससे गुलाम की बै या हिबा मुमतनअ नहीं होता। एक आदमी ने अपने गुलाम से कहा अगर तू उस घर में गया तो तू आजाद है, तो आजादी को मुअल्लक कर दिया शर्त के साथ, लेकिन इससे गुलाम की बै या हिबा मुमतनअ नहीं हुआ, आका अभी भी इस गुलाम को बेच भी सकता है और हिबा भी कर सकता है। तो जैसे आम शर्तों के अंदर तालीक की वजह से गुलाम की बै और हिबा मुमतनअ नहीं होती, तो यहां मुदब्बर के अंदर भी गुलाम की आजादी मुअल्लक है मौत के साथ, तो यह भी आम तालीकात की तरह है, लिहाजा इसमें भी गुलाम को बेचना या हिबा करना मना नहीं है भाई। तो कहते हैं फला यमतनउ बिहिल बैउ वल हिबतु, तो लिहाजा इस तालीक की वजह से गुलाम का बेचना और हिबा करना मुमतनअ नहीं होगा, कमा फी साइरि तालीकाति, जैसे कि बाकी तालीकात में होता है, व कमा फिल मुदब्बरिल मुकय्यदी, और जैसे मुदब्बर मुकय्यद में होता है, भाई एक है मुदब्बर मुतलक जिसमें कोई कैद नहीं और एक है मुदब्बर मुकय्यद जिसमें कैद है। मुदब्बर मुतलक तो वो है जिसे कहा कि मेरे मरने के बाद तू आजाद है, मुदब्बर मुकय्यद वो है जिसे आका ने कहा कि मसलन इस सफर में अगर मैं मर गया तो तू आजाद है, या इस बीमारी में मैं मर गया तो तू आजाद है। अब इस बीमारी के अंदर आका का मरना तो यकीनी नहीं, या इस सफर में तो आका का मरना यकीनी नहीं, लिहाजा ये मुदब्बर मुकय्यद है, इसको बेचना भी जायज हिबा करना भी जायज है, इसको बेचना भी जायज और हिबा करना भी जायज, क्योंकि इस सफर में ये इस बीमारी में आका का मरना यकीनी नहीं। तो ये आम शर्तों की तरह हुआ, जैसे आका ने अपने गुलाम से कहा अगर तू उस घर में गया तो तू आजाद है, अब मालूम नहीं है गुलाम उस घर में जाता है या नहीं जाता। तो आम शर्तों में दोनों एहतमाल होते हैं, होने का भी एहतमाल और न होने का भी। तो यहां भी जब आका ने कहा कि अगर मैं इस बीमारी में मर गया या इस सफर में मर गया तो तू आजाद है, तो आका का इस बीमारी या सफर में मरना यकीनी नहीं है। तो लिहाजा ये मुदब्बर मुकय्यद है, ये मुदब्बर मुतलक नहीं है बल्कि मुकय्यद है, और इसको बेचना भी जायज और इसको हिबा करना भी जायज, क्योंकि इसका आजाद होना यकीनी नहीं। जबकि इसके मुकाबले में दूसरा वो जो मुदब्बर जिसे अका ने मुतलकन कहा मेरे मरने के बाद तू आजाद है, तो ये मुदब्बर मुतलक है भाई, और इसका आजाद होना यकीनी है क्योंकि आका का मरना यकीनी है। जब आका का मरना यकीनी तो इसका आजाद होना भी यकीनी, तो बाकी शर्तों का होना तो यकीनी नहीं लेकिन मौत का होना तो यकीनी है। लिहाजा मुदब्बर मुतलक का और हुक्म है, मुदब्बर मुकय्यद का और हुक्म है। मुदब्बर मुकय्यद को बेचना भी जायज हिबा करना भी जायज, जबकि मुदब्बर मुतलक जो है उसका तो आजादी हक बन चुकी है यकीनी तौर पर, लिहाजा उसको बेचना भी जायज नहीं और हिबा करना भी जायज नहीं, वरना उसका हक आजादी जाया होगा भाई। और मुदब्बर मुकय्यद में यह भी याद रखना अगर आका उस बीमारी में मर गया या उस सफर में मर गया तो फिर वो भी आजाद होगा और उसी तरह सुलुस में से आजाद होगा क्योंकि ये वसीयत के दर्जे में है भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो क्या फरमाते हैं कि तदबीर के अंदर भी आजादी को मुअल्लक किया है मौत के साथ, तो जैसे बाकी तालीकात की वजह से गुलाम की ब्याह या हिबा मुमतनिया नहीं होता, तो इस मौत के साथ जो तालीक की है उसमें भी गुलाम का बेचना या हिबा करना मुमतनिया नहीं होगा। और नीस जैसे ए अहनाफ मुदब्बर मुकय्यद के अंदर तो आप भी मानते हैं कि उसको बेचना भी जायज और हिबा करना भी जायज, तो मुदब्बर मुतलक का भी यही हुक्म होगा, उसका बेचना भी जायज और हिबा करना भी जायज। तो कहते हैं वकमा फिल मुदब्बर इल मुकय्यदी, और जैसे कि मुदब्बर मुकय्यद में होता है वली अन्न तदबीर वसीयतुन वही गैर मानियातिम मिन सालिक। नीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि तदबीर जो है वसीयत है, मुदब्बर बनाना वसीयत है, और वसीयत जो है ये बेचने और हिबा करने से मानिया नहीं होती। एक आदमी ने कहा यह वाला मकान मेरे मरने के बाद जैद को दे देना, तो ये आदमी मरने से पहले इस मकान को बेचना चाहे या किसी को तोहफे के तौर पर देना चाहे तो दे सकता है। तो जैसे किसी चीज की वसीयत कर दी जाए तो उसका बेचना और हिबा करना मुमतनिया नहीं होता। तो यह तदबीर भी क्या है, वसीयत है। जब यह वसीयत है तो इस गुलाम का बेचना और हिबा करना भी मुमतनिया नहीं होगा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं। तो कहते हैं वली अन्न तदबीर वसीयत, और इसलिए क्योंकि मुदब्बर बनाना यह वसीयत है, वही गैर मानियातिम मिन जालिक, और यह मानिया नहीं है उससे यानी बेचने और हिबा करने से। तो यह इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील थी, हमारे नजदीक मुदब्बर को ना बेच सकते हैं और ना हिबा कर सकते हैं। अब हमारी दलील आ गई वलना, और हमारी दलील जो है कौलहु अलैहि सलातु वस्सलाम, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमाने मुबारक है कि अल मुदब्बरु ला युबाउ वला युहबु वला यूरसु व हुवा हुर्रुम मिनस सुलुस। अल मुदब्बरु ला युबाउ, के मुदब्बर को बेचा नहीं जा सकता, वला युहबु, और उसको हिबा नहीं किया जा सकता, वला यूरसु, और उसमें वरासत जारी नहीं होती, वह हुर्रुम मिनस सुलुसी, और वो सुलुस में से आजाद होता है। देखो इस हदीस में आ गया मुदब्बर को बेचा भी नहीं जा सकता, हिबा भी नहीं किया जा सकता, और उसमें वरासत भी जारी नहीं होती, वह हुर्रुम मिनस सुलुसी, और वो सुलुस में से आजाद होता है। तो यह हदीस हमारी दलील है। वली अन्नहु, यहां से अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं, वली अन्नहु सबबुल हुर्रियति लिअन्न अल हुर्रियत तस्बुतु बादल मौती। अच्छा भाई ये समझ लीजिए, पहले देखिए इंदल अहनाफ जाबता यह है कि मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा वजूद शर्त, जब शर्त पाई जाएगी तब वो मुअल्लक सबब बनेगा, उससे पहले नहीं, तब वो सबब बनेगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक वो उसी वक्त सबब बनेगा। एक आदमी ने अपने गुलाम से कहा अगर तू उस घर में गया तो तू आजाद है जी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जो आका ने कहा ना तू आजाद है, इसी ने आजादी का सबब बनना है, ये फिलहाल ही आजादी का सबब बन रहा है, लेकिन आगे जो शर्त है वो मान्य बन गई, वो इसको सबब नहीं बनने दे रही। हां जब ये उस घर में जाएगा तो मान्य खत्म हो जाएगा, तो फिर इसी अंतहुर्रुन से आजादी आ जाएगी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये जो अंतहुर्रुन है ये मुअल्लक है शर्त के साथ, और मुअल्लक भी शर्त जो है वो फिलहाल ही सबब बनता है, अलबत्ता मान्य होने की वजह से वो जजा अभी वाके नहीं होगी। जबकि हमारे नजदीक ये जो अंतहुर्रुन है ये मुअल्लक है शर्त के साथ, और मुअल्लक जो होता है वो सबब बनता है जब शर्त पाई जाए, तो गोया इस वक्त ये है ही नहीं जी। ये इस वक्त सबब नहीं है, गोया है ही नहीं। हां जब गुलाम उस घर में जाएगा तो उस वक्त वो अंतहुर्रुन आ जाएगा और गुलाम आजाद हो जाएगा जी। तो मुअल्लक भी शर्त वो सबब बनता है जब शर्त पाई जाए, इंदा वजूद शर्त। तो मुअल्लक भी शर्त, यूं कहो मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा वजूद शर्त, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा तकल्लुम, जब उस पर तकल्लुम किया जाए। ये तो था आम तालीकात के अंदर, लेकिन मुदब्बर का मामला जरा मुख्तलिफ है। मुदब्बर के मामले के अंदर हम भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मजहब पर हैं जी। हम भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मजहब पर हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि मुअल्लक जो होता है वो फिलहाल सबब बनता है, अलबत्ता एक मानिअ मौजूद है जिसकी वजह से यह सबब बन नहीं रहा, बनना चाहता है लेकिन बन नहीं रहा, और जब शर्त पूरी हो जाएगी तो मानिअ चला जाएगा तो यह सबब बन गया। बात समझ में आ गई। तो हम भी कहते हैं कि मुदब्बर के अंदर आका ने क्या कहा है गुलाम से, अंतहुर्रुन बादा मौती, गुलाम की आजादी का सबब यही अंतहुर्रुन ने बनना है, लेकिन इस वक्त ये कल आदम है, ये कब आएगा, मौत के बाद, लेकिन मौत के वक्त तो मौतिक मर चुका है, उसमें तो अहलियत ही नहीं है एताक की, लिहाजा इसको मौत तक मुअख्खर न करो, फिलहाल ही सबब बना दो जी। तदबीर के मसले में ये जो मुअल्लक है, ये जो आजादी मुअल्लक की है, ये जो अंतहुर्रुन इसको मुअल्लक किया किसके साथ, अपनी मौत के साथ, तो इंदल अहनाफ जाब्ता क्या है, ये सबब कब बनेगा, जब शर्त पाई जाए, जब मौत पाई जाए, लेकिन मुदब्बर के अंदर इसको फिलहाल ही सबब करार दे दिया गया, इसलिए क्योंकि जब आका मर जाएगा फिर तो उसमें इताक की अहलियत ही ना रही जी। वो तो किसी को आजाद नहीं कर सकता, वो तो मर चुका है, लिहाजा इस अंतहुर्रुन को उस वक्त तक के लिए मुअख्खर ना करो जब मुअतिक में अहलियत ही ना रहेगी, बल्कि इसको फिलहाल ही सबब करार दे दो आजादी का जी। फिलहाल ही आजादी का सबब यह फिलहाल ही है, अलबत्ता आजादी आ नहीं रही क्योंकि एक मानिअ मौजूद है, वो जो बादा मौती की कैद थी मेरे मरने के बाद जी। तो इंदल अहनाफ एक आम तालीक है और एक तदबीर के अंदर तालीक है। आम तालीक जो है उसके अंदर मुअल्लक सबब बनता है आइंदा वजूदी शर्त, लेकिन मुदब्बर के अंदर जो मुअल्लक होता है वो फिलहाल ही सबब बनता है, क्योंकि शर्त पाई जाएगी फिर तो मौतिक के अंदर इताक की अहलियत ही ना रहेगी। भाई बात समझ में आ गई। देखिए भाई तो कहते हैं वली अन्नहु सबबुल हुर्रियती, और इसलिए क्योंकि ये तदबीर जो है ये आजादी का सबब है, ये जो आका ने कहा अंत हुर्रुन बाद मौती, ये जो तदबीर है ये आजादी का सबब है, लिअन्न अल-हुर्रियत तस्बुतु बादल मौती, इसलिए क्योंकि ये आजादी मौत के बाद साबित होगी, वला सबब गैरुहु, और इस अंत हुर्रुन के अलावा इसका और कोई सबब नहीं है, सुम्म जालुहु सबबन फिलहाल औला, फिर इस अंत हुर्रुन को फिलहाल सबब करार देना औला ये बेहतर है, लिवजूद ही फिलहाल अली, इसलिए क्योंकि फिलहाल अंता हुर्रुन मौजूद है, वह आदमी ही बादल मौती, और मौत के बाद मादूम है। आका ने जिंदगी में गुलाम से क्या कहा, अंता हुर्रुन बाद मौती, तो फिलहाल ये अंता हुर्रुन मौजूद है और मौत के बाद तो ये मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए इसको फिलहाल ही सबब करार दिया जाए। वली अन्नमा बादल मौती हालु बुतलानी अहलियति तसरुफी, और इसलिए क्योंकि मौत के बाद की जो हालत है वो तो तसरुफ की अहलियत के बातिल होने की हालत है। मौत के बाद तो तसरुफ की अहलियत ही नहीं रहती, इंसान कोई तसरुफ मरने के बाद नहीं कर सकता। तो कहते हैं वली अन्नमा बादल मौती हालु बुतलानी अहलियति तसरुफी, और इसलिए क्योंकि मौत के बाद जो है वो तो तसरुफ की अहलियत के बातिल होने की हालत है। फला युमकिन ताखीर उस सबबियति इला जमानी बुतलानी अहलियति, तो लिहाजा मुमकिन नहीं है कि सबब होने को मौखर कर दिया जाए उस जमाने तक जो अहलियत के बातिल होने का जमाना है। बिखिलाफ सायरी तालीकात, बखिलाफ बाकी तालीकात के, भाई तदबीर के अंदर हमने सबब को फिलहाल ही सबब करार दे दिया और बाकी तालीकात में फिलहाल सबब करार नहीं दिया, इसलिए क्योंकि वहां जब शर्त पाई जाएगी तब भी उस शख्स में अहलियत होगी, जबकि तदबीर के मामले में तो आका के मरने के बाद आजादी ने आना है, तो वहां तो मरने के बाद आका में अहलियत ही नहीं। तो आम तालीकात में तालीक करने वाले में अहलियत है तालीक के वक्त भी, और जब शर्त पाई जाएगी तब भी उसमें अहलियत होगी, जबकि तदबीर के मसले में इस वक्त तदबीर की अहलियत तो है आका में, लेकिन मरने के बाद तो उसमें आजाद करने की अहलियत नहीं होगी। भाई तो कहते हैं बिखिलाफ सायरी तालीकात, बखिलाफ बाकी तालीकात के, लिअन्न अल-मानिअ मिन अस-सबबियति क़ाइमुन क़ब्ल अश-शर्ति, इसलिए क्योंकि सबब होने से मानिअ जो चीज है वो मौजूद है क़ब्ल अश-शर्ति, शर्त से पहले। आका ने गुलाम से कहा अगर तू उस घर में गया तो तू आजाद है। यहां मसलन अरबी अल्फाज देख लें, आका ने कहा अंत हुर्रुन इन दखलत अद-दार, तू आजाद है अगर तू उस घर में गया, तो यहां अंतहुर्रुन मौजूद है लेकिन यह आजादी का सबब नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि एक मानिअ मौजूद है और वो शर्त है, शर्त इस सबब को सबब बनने से रोक रही है। ये माना है कि बाकी जो तालीकात हैं उनका हुक्म और है, लिअन अल-मानिअ मिन अस-सबबियति, इसलिए क्योंकि सबब होने से जो मानिअ है क़ाइमुन क़ब्ल अश-शर्ति, वो शर्त से पहले मौजूद है, लिअन्नहु यमीनुन, क्योंकि वो यमीन है तालीक है, वल यमीनु मानिउन, और यमीन जो है वो तो मानिअ होती है, वो एक चीज से रोकती है दूसरे को। तवज्जो है, मैंने आपको बतलाया था कि जो तालीक है इसको भी फिका में यमीन कहते हैं, वजह यह कि जिस तरह कसम खाने से लाजिम हो जाती है उससे रुजू नहीं किया जा सकता, इसी तरह तालीक भी जो है तालीक करने से लाजिम हो जाती है उससे रुजू नहीं हो सकता, और नीज जैसे कसम किसी काम पर उभारने के लिए या रोकने के लिए होती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या रोकने के लिए होती है। मसलन एक आदमी कसम खाता है कि वल्लाह मैं यह काम नहीं करूंगा, तो देखो यह अपने आप को रोकना चाहता है इस काम से, या एक आदमी कसम खाता है कि वल्लाह यह काम मैं जरूर करूंगा, तो मालूम हो यह अपने आप को उभारना चाहता है कि अब तो कसम खा ली है, अब तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। भाई तो कसम किस लिए होती है, किसी काम से रोकने के लिए या किसी काम पर उभारने के लिए, इसी तरह तालीक भी किसी काम से रोकने के लिए होगी या किसी काम पर उभारने के लिए होगी। एक शख्स अपनी बीवी से कहता है इन दखलती दार अफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गए तो तुझे तलाक है, मालूम हुआ वो इस घर में जाने से बीवी को रोकना चाहता है, तो ये तालीक किस लिए है, रोकने के लिए, और कभी तालीक होगी उभारने के लिए कि अगर बीवी से कहता है अगर तू उस घर में न गई तो तुझे तलाक है, मालूम हुआ उसके बीवी को जाना चाहिए, वो जाने पर उभार रहा है। तो जिस तरह कसम किसी चीज पर उभारने के लिए या किसी चीज से रोकने के लिए खाई जाती है, इसी तरह तालीक भी किसी चीज पर उभारने के लिए या किसी चीज से रोकने के लिए की जाती है। तो कहते हैं लिअन्नहु यमीनुन, इसलिए क्योंकि यमीन है, वल यमीनु मानिउन, और यमीन मानिअ होती है, रोकती है, वल मनउ हुवल मकसूद, और मना करना ही मकसूद होता है, यमीन के जरिए, तालीक के जरिए मना करना ही मकसूद होता है। इस पर इश्काल होता है कि ऐ साहिब हिदाया, तालीक तो कभी किसी काम से रोकने के लिए होती है और कभी तालीक किसी काम पर उभारने के लिए होती है, लेकिन आप तो फरमा रहे हैं कि तालीक के जरिए रोकना ही मकसूद होता है। हालांकि आपको यह कहना चाहिए कि तालीक के जरिए रोकना भी मकसूद होता है और उभारना भी मकसूद होता है, लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं कि तालीक के जरिए सिर्फ रोकना मकसूद होता है। तो इश्काल होता है कि तालीक के जरिए तो कभी उभारा भी जाता है दूसरे को। तो जवाब याद रखें कि नहीं भाई, तालीक के जरिए रोकना ही मकसूद होता है हमेशा, रोकना ही मकसूद होता है। मसलन देखो, खावन ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो ये यमीन, ये तालीक मान्या बनेगी, औरत उस घर में नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है अगर मैं चली गई तो मुझे तलाक हो जाएगी। यमीन क्या बन रही है? मान्या, और मना ही मकसूद होता है यमीन के जरिए। तो देखो यहां रोकना मकसूद है कि वो उस घर में न जाए। दूसरी सूरत, खावन ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में न गई तो तुझे तलाक है, न गई तो तुझे तलाक है। तो यहां देखो, यहां आप कहेंगे उभारना मकसूद है, उभारना नहीं मकसूद, यहां भी रोकना मकसूद है। किस चीज से? न जाने से। अगर तू उस घर में न गई, यानी न जाने से खावंद रोक रहा है, और न जाने से रोकने के साथ उभारना लाजिम है। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ यमीन के जरिए रोकना ही मकसूद होता है, लेकिन नफी पर जब नफी दाखिल हो वो किस चीज का फायदा देती है? इस बात का और उभारने का। तो मसलन कहा अगर तू उस घर में न गई तो इस न जाने से रोक रहा है, तो देखो ये भी रोक ही रहा है, लेकिन ये न जाने से रोकना यही तो जाने पर उभारना है कि उसको उस घर में जाने पर उभार रहा है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वल यमीन मानेउन, और कसम जो है वो माने होती है, वल मनउ वल मकसूद, और मना करना ही मकसूद होता है। व अन्नहु युजादु वुकू अतलाक वल अताकी, और ये मना जो है ये तो मुखालिफ है तलाक और अताक के वाके होने के। कसम किस लिए खाई जाती है? तालीक किस लिए की जाती है? रोकने के लिए। तो रोकना ही तो मकसूद है, लिहाजा तालीक है तो तलाक और अताक वाके नहीं, क्योंकि मना पाई जा रही है। यह माना है वह अन्नहू, अन्नहू की हाजमीर मना को लौटाएं, वह अन्नहू युजादु वुकू अतलाक वल अताकी, और यह मना जो है यह तो मुतजाद है तलाक और अताक के वाके होने के, यानी उसके मुखालिफ है। वह अमकन ताखीर उस सबबियति इला दमानी शर्ती, अच्छा बाकी शर्तें जो हैं, बाकी तालीकात जो हैं, उनमें सबबियत को आप मुअख्खर कर सकते हैं। क्या जाबता था? इंदल अहनाफ मुअल्लक सबब बनता है कब? जब शर्त पाई जाए। तो वहां सबबियत को आप मुअख्खर कर सकते हैं। मसलन आका ने क्या कहा गुलाम से? अंत हुर्रुन इन दखलता दारा, तू आजाद है अगर तू उस घर में गया। तो यहां पर इस अंत हुर्रुन को सबब न बनाओ, इसको मुअख्खर कर दो, जब वो उस घर में जाएगा तब अंतहुर्रुन आएगा और गुलाम आजाद हो जाएगा। तो बाकी तालीकात उनने सबबियत को मुअख्खर किया जा सकता है, क्योंकि तालीक करने वाले में फिलहाल भी अहलियत है, और जब शर्त पाई जाएगी उस वक्त भी उसमें अहलियत होगी, तो वहां सबबियत को मुअख्खर करना मुमकिन है। लेकिन तदबीर में सबबियत को मुअख्खर नहीं कर सकते, क्योंकि तदबीर के अंदर मरने के बाद जो अंत हुर्रुन आएगा, तो वो शख्स जिसने अंत हुर्रुन कहा था वो तो मर चुका है भाई, उसमें तो अहलियत ही नहीं है भाई। तो कहते हैं वह अम कना ताखीर उस सबबियती, और सबब होने को मुअख्खर करना मुमकिन है, इला जमानी शर्ती शर्त के जमाने तक, लिकियामिल अहलियती इंदहू, अहलियत के पाए जाने की वजह से, इंदहू उस वक्त भाई। फफ्तरका, तो दोनों जुदा हो गए, आम तालीक तदबीर से जुदा हो गई। बात समझ में आ गई? तदबीर में सबबियत को मुअख्खर नहीं कर सकते, और आम तालीकात में सबबियत को मौखर कर सकते हैं। वली अन्नहु वसीयतुन, अब और फर्क बयान कर रहे हैं, कहते हैं वली अन्नहु वसीयतुन, और इसलिए क्योंकि तदबीर जो है ये तो वसीयत है, वल वसीयतु खिलाफतुन फिलहाल कल वरासती, और वसीयत जो है ये तो फिलहाल खलीफा बनाना है जैसे कि वरासत में। भाई देखिए देखिए, वसीयत मसलन एक आदमी कहता है मेरे मरने के बाद जैद को मेरे माल में से 10 लाख रुपए दे देना, तो ये वसीयत करने वाला जैद को अपना खलीफा बना रहा है 10 लाख रुपए में जी। ये वसीयत करने वाला जैद को 10 लाख रुपए में नाइब बना रहा है, और फिलहाल नाइब बना रहा है जी। और कब मिलेंगे उसको? मरने के बाद। जैसे वारिस होना, जैसे वारिस जो है मैयत का नाइब होता है उसके माल में, जिंदगी में ही उसका नाइब है, लेकिन माल मिलेगा कब? मौत के बाद। भाई नाइब कब आता है? जब असल ना रहे भाई। तो वसीयत में भी नाइब जो बनाया वो फिलहाल नाइब बन गया, लेकिन माल नहीं मिलेगा क्योंकि असल खुद अभी मौजूद है, और वारिस को भी माल मिलेगा लेकिन असल अभी मौजूद है, अभी नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। तो मालूम हुआ वसीयत जो है वो भी फिलहाल सबब खिलाफत है जी। वसीयत की वजह से भी फिलहाल कोई किसी का नाइब बन जाता है, जैसे वारिस होने की वजह से कोई फिलहाल ही किसी का नाइब होता है भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु वसीयतुन, और इसलिए क्योंकि तदबीर जो है वो वसीयत है, वल वसीयतु खिलाफतुन फिलहाल, और वसीयत जो है वो नाइब बनाना है फिलहाल कल वरासती, जैसे कि वरासत है उसमें भी फिलहाल ही नाइब होता है, लेकिन माल नहीं मिलेगा क्योंकि अभी असल मौजूद है भाई। वह इब्तालु सबब ला यजूजू, और सबब को बातिल करना जायज नहीं भाई। इसको जोड़ें, वह इब्तालु सबब, ये जहां से अकली दलील शुरू हुई थी हदीस के बाद, वली अन्नहु सबबुल हुर्रियती, ये तदबीर क्या है? सबब हुर्रियत है। ये जो आका ने गुलाम से कहा अंत हुर्रुन बाद मौती, तो ये अंत हुर्रुन इसने सबब बनना है, और इसको हम मौत तक मौखर नहीं कर सकते, और नीज इसको बातिल भी नहीं कर सकते, तो फिर इसको फिलहाल ही सबब करार देना पड़ेगा। यह माना है वह इब्तालु सबब ला यजूजू, और सबब को बातिल करना भी जायज नहीं है। वह फिल बैउ वमा युजाही ही जालिका, जाहा युजाही मुजाहातन का माना है मुशाबे होना। वह फिल बैउ वमा युजाही ही, और बैउ और जो इसके मुशाबे है उनमें जालिका वो चीज है, यानी सबबियत को बातिल करना है। सबबियत को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। ये जवाब दे रहे इमाम शाफी रहमतुल्लाह को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे मुदब्बर को बेचना भी जायज और हिबा भी जायज। हमने कहा नहीं, अगर बेचने और हिबा को आप जायज करार देंगे तो आपने सबबियत को बातिल कर दिया, और सबबियत को तो बातिल नहीं किया जा सकता भाई। तो कहते हैं वह इब्ताल उस सबब ला यजूजू, और सबब को बातिल करना जायज नहीं है। वह फिल बैउ वमा युजाही हिजालिका, और बैउ और इसके जो मुशाबे चीजें हैं यानी हिबा वगैरह उनमें ये चीज है, यानी सबबियत को बातिल करना है, इसलिए बैउ और हिबा जायज नहीं होगा भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, काला, इस काला से मुरा साहिब खुदूरी हैं। काला साहिब खुदूरी फरमाते हैं वलिल मौला अयस्तखदिमहु व युआजिरहु व इनकानत अमतन वति आहा वलहु अयुजव्विजहा। भाई मुदब्बर को बेचा भी नहीं जा सकता और हिबा भी नहीं किया जा सकता, तो फिर कौन कौन से तसरुफात जायज हैं? तो आपको बताएंगे बाकी गुलामों वाले तमाम तसरुफात इसमें जायज हैं भाई। वो मुदब्बर से खिदमत भी ली जा सकती है, उसे उजरत पर काम भी करवाया जा सकता है, और अगर वो बांदी है तो उसे आका के लिए सोहबत भी जायज है, और अगर आका उसका किसी और से निकाह करवाना चाहे तो निकाह भी करवा सकता है। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वलील मौला अयस्तखदिमहू, कि आका के लिए जायज है कि वो मुदब्बर से खिदमत ले, वह युआ जी रहू और इससे उजरत पर काम करवाए, यानी इसे इजारे पर दे। वह इन कानत अमतन वती आहा, और अगर वो मुदब्बरा बांधी है तो उसे वती भी आका कर सकता है। वह लहू अयुसव भी जहा, और आका के लिए जायज है कि वो इसका निकाह करवा सकता है। लिअन नलमील का फी हिसाबित उन लहू, इसलिए क्योंकि मुदब्बर के अंदर आका की मिल्कियत साबित है। वह बिही तुस्तफाद विलायतु हाज ही तसरुफाती, और मिल्कियत के जरिए ही इन तसरुफात की विलायत हासिल होती है। फैदा मातल मौला अतकल मुदब्बर मिन सुलुसी माली ही, जब आका मर जाए तो मुदब्बर आजाद होता है उसके माल के तीसरे हिस्से में से। लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत की। उस हदीस में क्या आया था? वह हुआ हुर्रुम मिन सुलुसी, के मुदब्बर आजाद होगा सुलुस में से। यह माना है लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत की। वली अन्न तदबीर वसीयतुन, और इसलिए क्योंकि मुदब्बर बनाना यह वसीयत है। लिअन्नहु तबर्रुउन मुज़ाफ़ुन इला वक्तिल मौती, क्योंकि यह तबर्रु है जिसकी निस्बत की गई है मौत के वक्त की तरफ। मैंने आपको बतलाया था तबर्रु, भाई तबर्रु कहते हैं अपनी तरफ से एक चीज देना जो आपके जिम्मे लाजिम ना हो। मसलन आप किसी को वैसे ही पैसे दे देते हैं तो ये इसको कहेंगे तबर्रु, जो आप वैसे ही नफली सदका करते हैं। ज़कात देते हैं, ज़कात तो आप पर वाजिब है, वो तबर्रु नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से वैसे ही नफली सदका करते हैं, वैसे ही खैरात करते हैं, किसी को पैसे देते हैं, तो ये है तबर्रु। या इसी तरह आप नफली नमाज पढ़ते हैं, भाई फर्ज आप पढ़ते हैं वो तो आपके जिम्मे लाजिम है, लेकिन अगर आप नफल पढ़ते हैं तो ये तबर्रु है, यानी आप अपनी तरफ से ये अदा कर रहे हैं, आप पर लाजिम नहीं। या इसी तरह आप रोजे रखते हैं, रमजान का रोजा वो तो आप पर लाजिम है, वो तबर्रु नहीं, लेकिन अगर आप नफली रोजे रखते हैं तो ये अपनी तरफ से अदा कर रहे हैं, तो इन सब को क्या कहते हैं? तबर्रु। और वसीयत भी क्या होती है? तबर्रु ही है कि मेरे मरने के बाद फलां को इतना माल दे देना, तो ये वैसे ही माल दिया जा रहा है, ये वसीयत करने वाले पर कोई लाजिम नहीं था भाई। तो कहते हैं वली अन्न तदबीर वसीयत, और इसलिए क्योंकि तदबीर वसीयत है। लिअन्नहु तबर्रु मुज़ाफ़ुन इला वक्तिल मौती, इसलिए क्योंकि तदबीर जो है वो ऐसा तबर्रु है जिसकी निस्बत की गई है मौत के वक्त की तरफ। वल हुक्म गैरु साबितिन फिल हाली, और ये हुक्म जो है यानी आजादी फिलहाल साबित नहीं है। फयान फुजुम मिनस सुलुसी, तो लिहाजा ये नाफिस होगी सुलुस में से। हत्ता लम यकुन लहू मालुन गैरुहू या साफी सुलुसे ही, यहां तक कि अगर आका का इस मुदब्बर के अलावा और कोई माल ना हुआ। या साफी सुलुसे ही, तो ये मुदब्बर अपने दो सुलुस में सही करेगा। आका ने एक गुलाम को मुदब्बर बनाया, और जब आका का इंतकाल हुआ तो और कोई माल नहीं, सिर्फ मुदब्बर मौजूद है, तो इस मुदब्बर का सुलुस जो है वो तो आजाद हो जाएगा, और दो सुलुस वारिसों का हक है, तो लिहाजा वो दो सुलुस की कीमत जो बनती है वो मुदब्बर जाकर कमा कर लाकर देगा और वारिसों के हवाले करेगा। ये माना है हत्ता लौ लम यकुन लहू मालुन गैरुहू, यहां तक कि अगर आका का इस मुदब्बर के अलावा और कोई माल ना हुआ। या साफी सुलुसे ही, तो मुदब्बर सही करेगा अपने दो सुलुस में। वह इन काना अलल मौला दैनुन, और अगर आका पर दैन हुआ। या साफी कुल्ली कीमती ही, तो फिर मुदब्बर सही करेगा अपनी सारी कीमत में, यानी अगर आका पर इतना दैन है जिसने सारी मुदब्बर की कीमत का इहाता कर लिया है, तो आपने पढ़ा है कि दैन वो वसीयत पर मुकदम होता है, पहले दैन अदा किया जाता है फिर वसीयत नाफिज की जाती है, और यहां तो दैन में ही सारा माल खत्म हो रहा है, तो मुदब्बर सारी कीमत में अपनी सही करेगा, वो कमा कर लाकर उन कर्जदारों को अदा करेगा और फिर आजाद हो जाएगा। और अगर दैन कम हुआ, दैन कम हुआ, तो उसी के बकदर मसलन गुलाम की कीमत है 10 लाख और देन है 5 लाख, तो ये 5 लाख तो गुलाम सही करेगा, ये उन कर्जखाहों को अदा करेगा, और बाकी 5 लाख माल बच गया, इसके अंदर सुलुस के अंदर ये वैसे ही आजाद हो जाएगा जी। और बाकी 2 सुलुस जो है 5 लाख में से वो वारिसों को लाकर अदा करेगा भाई। तो कहते हैं वह इन कान अलल मौला दैनुन, और अगर आका पर दैन हुआ। या साफी कुल्ली कीमती ही, तो मुदब्बर सही करेगा अपनी सारी कीमत में। लितकद्दुमी दैन अलल वसीयती, बवजह दैन के वसीयत पर मुकदम होने के। वला यमकिन नक्ज़ुल इत्क़, और आजादी को तोड़ना मुमकिन नहीं है। आजादी को तोड़ना मुमकिन नहीं है। फयजिबुरा दुखीमती ही, तो लिहाजा उसकी कीमत का लौटाना वाजिब है कि मुदब्बर अपनी कीमत लौटाए। आजाद तो इसने हर हाल में होना है। वलदुल मुदब्बरती मुदब्बरुन, मुदब्बरा की औलाद भी मुदब्बर है। आका ने एक बांदी को मुदब्बरा बनाया और फिर इस बांदी ने जिस औलाद को भी जन्म दिया वो सारी भी उसी मां के हुक्म में है, तो वो भी मुदब्बर भाई। तो कहते हैं वलदुल मुदब्बरती मुदब्बरुन, और मुदब्बरा की औलाद भी मुदब्बर है। वह अला जालिका नुकिला इजमा उस सहाबती रजी अल्लाह ताला अन्हुम, और इसी पर सहाबा का इजमा नकल किया गया है कि मुदब्बरा की औलाद मुदब्बर होती है भाई, इस पर सहाबा का इजमा है भाई। वह इन अल्लकत तदबीर अभी मौती ही अला सिफतिन, अब वो तदबीर मुकैद का जिक्र आ गया। आका ने कहा अगर मैं इस सफर में मर गया या इस मरज में मर गया तो यह मुदब्बर मुकैद है और इसको बेचना भी जायज और इसको हिबा करना भी जायज क्योंकि इसकी आजादी यकीनी नहीं। कहते हैं वह इन अल्लकत तदबीर अभी मौती ही अला सिफतिन, और अगर आका ने तदबीर को मुअल्लक किया अपनी मौत के साथ अला सिफतिन किसी खास सिफत पर, कि इस सिफत पर यह इस तरीके से मैं मर जाऊं। मिसलुअ यकूला, मिसाल के तौर पर आका यूं कहता है इन मुत्तु मिन मरजी हाजा, मैं अगर अपने इस मरज से मर गया, और सफरी हाजा या मैं अपने इस सफर से मर गया, और मिन मरजी कजा या मैं फला मरज से मर गया, फलैसा भी मुदब्बरीन, तो यह मुदब्बर नहीं है, यह मुदब्बर मुकैद है। तो फलैसा भी मुदब्बरीन, तो यह मुदब्बर मुतलक नहीं है। वह यजूजु बैउहु, और इसको बेचना जायज है। लियान सबब लम यनाकिद फिल हाल, इसलिए क्योंकि सबब फिलहाल मुनाकिद नहीं हुआ, ये आजादी का सबब फिलहाल मुनक़िद नहीं हुआ। लितरद्दुदिन फी तिल्क सिफ़ति, बवजह तरद्दुद होने के उस सिफत में, उस सिफत में तरद्दुद है, शक है, पता नहीं होती है या नहीं होती। बिखिलाफ इल मुदब्बर इल मुतलकी, बखिलाफ मुदब्बर मुतलक के। लियान्नहु तअल्लक़ा इत्कुहु बिमुतलक इल मौती, इसलिए क्योंकि उस मुदब्बर की आजादी तो मुतअल्लिक है मुतलक मौत के साथ। वह काइनुन ला महाला, और वो साबित है कतई तौर पर, काइनुन ऐ साबितुन, वह हुआ काइनुन ऐ साबितुन ला महालता, और वो मौत जो है वो तो साबित है कतई तौर पर, मौत ने तो हर हाल में आना है, लिहाजा मुदब्बर मुतलक ने तो हर हाल में आजाद होना है, लेकिन मुदब्बर मुकैद का आजाद होना यकीनी नहीं, लिहाजा उस वो मुदब्बर नहीं बनेगा भाई। बात समझ में आ गई, तो मुदब्बर मुकैद उसको वैसे ही मुदब्बर कह रहे हैं, हकीकत में वो मुदब्बर नहीं है भाई। कहते हैं फइन मातल मौला अला सिफतिल लती ज़करहा, अगर आका उसी सिफत पर मर गया जिसको उसने जिक्र किया था, आताका कमा यातिकुल मुदब्बरु, तो ये मुदब्बर मुकय्यद भी आजाद हो जाएगा जैसे मुदब्बर मुतलक आजाद होता है भाई। क्या माना साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं माना हूं मिनस सुलूसी, कि इसका माना यह है कि सुलूस में से आजाद होगा, मुदब्बर मुतलक सुलूस से आजाद होता है, तो यह मुदब्बर मुकैद भी सुलूस से ही आजाद होगा। तो कहते हैं माना हूं मिनस सुलूसी, साहिब कुदूरी के कौल का माना यह है कि यह सुलूस में से आजाद होगा। लियान्नहु सबत हुक्म तदबीरी फी आखिरी जुज मिन अज्जा हयाती ही, इसलिए क्योंकि इसके मुदब्बर होने का हुक्म साबित हो जाएगा फी आखिरी जुज मिन अज्जा हयाती ही, आका की जिंदगी के अज्जा में से आखिरी जुज के अंदर, आका जब बिल्कुल मरने वाला है तो उस आखिरी जुज के अंदर अब ये मुदब्बर बन जाएगा, इसका हुक्म साबित हो जाएगा। तो कहते हैं लिया नहुसा बता हुक्म तदबीरी, इसलिए क्योंकि तदबीर का हुक्म साबित हो जाएगा फी आखिरी जुज मिन अज्जा हयाती ही, आका की जिंदगी के अज्जा में से आखिरी जुज के अंदर, लितहक्कुकी तिल्क सिफति फी ही, बवजह पाए जाने उस सिफत के आका के अंदर, कि वो सिफत जो आका ने जिक्र की थी कि अगर मैं इस मरज में मर गया या इस सफर में मर गया, वो सिफत आका में पाई गई, लितहक्कुकी तिल्क सिफति फी ही, बवजह उस सिफत के आका में पाए जाने के, फलिहादा युअतबरु मिनस सुलूसी, तो इसीलिए यह भी सुलूस में से मुअतबर होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि आखिरी जुज में मुदब्बर वाला हुक्म आ जाएगा तो यह सुलूस में मुअतबर होगा। वह मिनल मुकय्यदी अन यकूला, और तदबीर मुकय्यद में से ही है आका का यह कहना इन मुत्तु इला सनतिन औ अशरी सिनीना, कि अगर मैं मर गया एक साल तक, او عشری سینینا, اگر میں مر گیا 10 سال تک, یہ بھی کس میں سے ہے؟ تدبیر مقید میں سے ہے. لما ذکرنا, اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس عرصے میں آقا کا مرنا یقینی نہیں, تو یہ تدبیر مقید ہے. بخلاف ما اذا قال, بخلاف اس کے کہ جب آقا نے کہا الا 100 سنتین, 100 سال تک, اگر میں 100 سال تک مر گیا تو تم آزاد ہو. اور حال یہ ہے کہ اس جیسا آدمی 100 سال تک زندہ نہیں رہتا, تو پھر اس صورت میں یہ تدبیر مطلق ہی شمار ہوگی, کیونکہ اس نے 100 سال ذکر کیا ہے اور 100 سال میں تو اس کا مرنا یقینی ہے, لہذا یہ تدبیر مقید نہیں ہے بلکہ تدبیر مطلق ہی ہے. بھائی تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا قال, بخلاف اس کے جب آقا نے کہا الا 100 سنتین, کہ اگر میں 100 سال تک مر گیا, وہ مسلح لا یعیش الیہ فی الغالبی, اور حال یہ ہے کہ اس جیسا آدمی زندہ نہیں رہتا 100 سال تک, فی الغالبی اکثر, اکثر اس جیسا آدمی 100 سال تک زندہ نہیں رہتا, لانہ کل کا انی لا محالتا, اس لیے کیونکہ یہ بھی اسی کی طرح ہے جو ثابت ہو, لا محالتا قطعی طور پر. بھئی دیکھو آقا نے کہا اگر میں 100 سال تک مر گیا تو تم آزاد ہو, اور اس جیسا آدمی تو 100 سال تک زندہ نہیں رہتا, معلوم ہوا اس 100 سال کے اندر اس کی موت یقینی تو نہیں لیکن غالب ہے. کیا ہے؟ اور غالب کو بھی کس کی طرح سمجھا جاتا ہے؟ جیسے ایک چیز واقع ہے اور یقینی ہے, جب یقینی ہے معلوم ہو 100 سال میں اس کا مرنا یقینی, جب مرنا یقینی تو معلوم ہو اس کا آزاد ہونا بھی یقینی, لہذا اب یہ مدبر مطلق کے حکم میں ہوگا. یہ معنی ہے. وَمِثْلُهُ لَا يَعِيشُ إِلَيْهِ فِي الْغَالِبِ, اور غالب جو ہے یعنی اکثر اس جیسا آدمی اتنی مدت تک زندہ نہیں رہتا, لِأَنَّهُ كَالْكَائِنِ, اس لیے کیونکہ یہ بھی ثابت کی طرح ہے, لِأَنَّهُ كَالْكَائِنِ لَا مَحَالَتَ, تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ ثابت ہو لا محالت قطعی طور پر. بھئی جیسے آقا کہتا تھا اگر میں مر گیا تو آزاد ہے, تو آقا کا مرنا یقینی, تو یہاں پر بھی 100 سال کی بات کی ہے, اس میں آقا کا مرنا غالب ہے, اور غالب بھی کس کی طرح یقینی, تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کائن یعنی ثابت ہوتا ہے, وہ چیز جو قطعی طور پر ثابت ہو یہ بھی اسی کی طرح ہے, کیونکہ اس جیسا آدمی تو 100 سال تک نہیں جیتا, تو اس صورت میں بھی آقا کا مرنا یقینی ہو گیا تو یہ بھی مطلق موت کے درجے میں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ مدبر مطلق ہے. تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ كَالْكَائِنِ لَا مَحَالَتَ, تو یہ بھی اسی چیز کی طرح ہے جو ثابت ہو قطعی طور پر, یعنی جس کے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.